मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए जो कायदा बनाने का तय किया है और अंधश्रद्धा के नाम पर इस देश में एक नए तरह की अंधश्रद्धा पैदा करने का एक अभिक्रम शुरू किया है, इन दो विषयों पर हम सब बात करने के लिए यहाँ आए हैं। हम सब बैठकर इस पर विचार करें और क्या हो सकता है इस दृष्टि से कुछ इसमें से मार्ग निकले, वो आज की इस बैठक का उद्देश्य है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। उनके घर में रहकर मैंने कई बार उनसे संवाद किया है, आमने सामने कई बार मेरी उनसे बात हुई है और इस संवाद में से मैंने जानने की कोशिश की है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो बनाई आपने, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर यह संस्था चलती है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहाँ है, किस बात को आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या। तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। फिर मैंने एक दिन थोड़ा आगे उनसे संवाद किया कि वैज्ञानिक है कि नहीं इसकी परिभाषा क्या है, किस कार्य को आप बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक है और किस कार्य को आप बोलते हैं ये अवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। तो मैंने उनसे कहा कि आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया, अमेरिका से आया, इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है, यही मतलब है। तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब है। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं उसके आधार पर भारत में काम करते हैं तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का तो पैसा कहां से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है, FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा। भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा। इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे कि उसमें दया प्रेम करुणा का भाव है। अगर अमेरिका में रहने वाले को दया प्रेम करुणा का भाव है तो सबसे पहले उसके अपने पड़ोसी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भयंकर अंधश्रद्धा है, यूरोप में उससे भी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप में जितनी अंधश्रद्धा है उसकी कल्पना आप यहां बैठकर नहीं कर सकते। आपको मालूम है अमेरिका में कैसी अंधश्रद्धा है, यूरोप में कैसी अंधश्रद्धा है? वहां कोई चर्च का व्यक्ति कोई बड़ी सभा करता है और उस बड़ी सभा में एक एक करके लोगों को मंच पर बुलाया जाता है और उन लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब से आपने ईसाई धर्म का पालन शुरू किया है आपको क्या लाभ हुआ है। तो लोग टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि मैंने जब ईसाई धर्म का पालन किया उसके पहले मैं लंगड़ा था, मेरा पांव नहीं चलता था। जिस दिन मैंने ईसाई धर्म का पालन किया और वो चर्च से लाया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला गया उसी दिन से मेरा पांव ठीक हो गया। फिर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था, भयंकर ट्यूमर था, डॉक्टर ने मरने के लिए बोल दिया था, मैं जिस दिन चर्च में आया और पहली बार मैंने चर्च का पानी पिया उसी दिन से मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। फिर तीसरा कोई खड़ा हो जाएगा कि मैं 20 साल से नपुंसक था, मुझे बच्चा ही पैदा नहीं होता था, मैं चर्च में आया, मैंने पानी पिया, मुझे बच्चा पैदा हो गया। फिर एक चौथा खड़ा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये सिलसिला घंटों घंटों अमेरिका में चलता रहता है और अमेरिका से ज्यादा ये यूरोप में चलता रहता है। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, कोई कहता है मैं लंगड़ा था मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया, कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए, कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया, कोई कहता है कि मैं मरने वाला था यीशु ने मुझे बचा लिया, इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है। और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है, तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए उसको वो तावीज देता है और वो तावीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगे नहीं चलती है वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जवान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है, हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है और उसी को गाली देना, उसी के बारे में FIR कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की संस्था को जो पैसा अमेरिका से आता है, ऐसे ही भारत में सैकड़ों संस्थाओं को अमेरिका से पैसा आता है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है, 18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है, 18 से 20 हजार करोड़ हर साल आता है, यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, और इस काम के लिए खर्च किया जाता है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज जो कुछ करे उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि ये अंधश्रद्धा है। इस्लाम और ईसाइयत वाले कुछ भी करें तो वो सब श्रद्धा है। आपको मैं एक छोटी घटना सुनाता हूं कि थोड़े दिन पहले ईसाइयत का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति आया, बेनी हिन। आपने नाम सुना बेनी हिन, अमेरिका से आया था। भारत की सरकार ने उसको बेंगलोर में एक बड़ी सभा करने की अनुमति दी। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा, और बेनी हिन की एक दूसरी सभा करने की अनुमति मिली वो दिल्ली में। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने दिल्ली में और देवेगौड़ा ने बेंगलोर में बेनी हिन के 2 व्याख्यान आयोजित किए। सरकारी तंत्र ने इतना प्रचार किया बेनी हिन का, टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में, विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और हर बार एक ही बात कही गई कि बेनी हिन चमत्कारी आदमी है, जिसके सिर पर हाथ रख दे वही ठीक हो जाता है। एक अखबार में तो मैंने विज्ञापन में देखा कि बेनी हिन ईसा मसीह का दूत है, मैसेंजर है, वो जिसके शरीर पर हाथ फिरा दे उसका सब ठीक हो जाता है। अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा, अगर पांव चल नहीं सकते हैं, अर्थराइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह का विज्ञापन पूरे देश में अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो में किए जा रहे थे और सरकार के पैसे से किए जा रहे थे। उस समय नरसिम्हा राव को मैंने एक पत्र लिखा था। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर बेनी हिन ईसाइयत का प्रचार करने आए और भारत देश में सरकार के पैसे से उसका प्रचार तंत्र चलाया जाए तो ये सेक्युलरिज्म है, और भारत का हिंदू धर्म का या भारतीयता को मानने वाला कोई शंकराचार्य कुछ काम करे तो सरकार चिल्लाने लगे कि ये सेक्युलरिज्म का उल्लंघन है। तो ये सरकार बेनी हिन के लिए चल रही है या भारत के 110 करोड़ लोगों के लिए? तो उनका उत्तर इतना ही आया कि आपका पत्र मिला, बस बात खत्म हो गई। मुख्यमंत्री देवेगौड़ा को भी इसकी एक कॉपी मैंने भेजी, देवेगौड़ा के यहां से भी इतना ही उत्तर आया, पत्र मिला। जिस दिन बेनी हिन आया दिल्ली में उस दिन नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे लाइन लगा के, और जब वो बेंगलोर गया तो बेंगलोर की पूरी मंत्रिमंडल, देवेगौड़ा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, सारे के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देवेगौड़ा वो सीधे बेनी हिन के पैरों में ही गिर गया, मंच पर ही उसने उसके पांव छू लिए। और जैसे हिंदू पद्धति में पांव छूने का होता है ना साष्टांग दंडवत, देवेगौड़ा ने वही किया। उस सभा में बेनी हिन ने बोलना शुरू किया कि ईसा मसीह की शरण में जो भी मैं उस सभा में था तो वो बोल रहा है कि ईसा मसीह की शरण में जो आएगा वो सब ठीक हो जाएगा, और ईसा मसीह ने आप सबके लिए भेजा है संदेश, और ऐसे ऐसे ये सब वो बोलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि व्याख्यान पूरा हुआ तो फिर उसने कहा कि जो लोगों को कुछ संदेश इसमें डाउट है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और एक प्रश्न पूछा कि मिस्टर बेनी हिन, आपके ईसा मसीह में बहुत ताकत है और आप में उससे भी ज्यादा ताकत है, आप जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वही ठीक हो जाता है, तो तुरंत आप अगली फ्लाइट से वेटिकन सिटी जाइए और आपका जो पोप है उसको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको पार्किंसन कहते हैं उसके सिर पर हाथ रख दीजिए, वो तो पहले ठीक हो जाए। आपको मालूम है कि पुराना जो पोप था ना वो पार्किंसन से मरा है, उसके हाथ पर ऐसे ऐसे कांपते रहते थे, दोनों हाथ ऐसे कांपते थे, पांव ऐसे कांपते थे, सिर भी हिलना शुरू हो गया था। दुनिया भर के सभी डॉक्टर उसका इलाज करते करते थक गए, फिर अंत में एलोपैथी के डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि जी पार्किंसन का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मिस्टर बेनेहिन, आप सबके सिर पर हाथ रख के सब बीमारी ठीक कर देते हैं, अपने पोप को क्यों नहीं ठीक कर लेते आप, जिसकी आपको जरूरत है ये ईसाइयत फैलाने के लिए। तो उसने कहा दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा यस, फॉर यू नॉट फॉर मी, ये एब्सर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। तो उसमें मजा क्या आया कि सभा जो है ना ये एक ही क्वेश्चन में तितर बितर हो गई, क्योंकि लोगों को सीधे समझ में आ गया कि ये सब बोगस ढपोर शंकी आदमी है। बड़ी बड़ी बातें, लोगों को ये नहीं मालूम था कि पोप जॉन पॉल वो खुद पार्किंसन का मरीज है और उसके हाथ पैर सब हिलते हैं, वो खुद इसी से मरा है अभी थोड़े दिन पहले। मुझे मालूम था तो मैंने बोल दिया, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो वो इधर उधर हो गए, तो बेनेहिन की वो सभा डिस्टर्ब हो गई, वरना उस सभा में वो हजारों लोगों को ईसाई बनाने का तैयारी करके आया था। यही घटना मैंने नरेंद्र दाभोलकर को बताई। मैंने कहा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, किसी गांव में कोई छोटा मोटा साधु संत कुछ करता है तो आप पूरी टीम लेके पहुंच जाते हैं। बेनेहिन घोषित रूप से आया और ये बकवास कर रहा था बेंगलोर में, दिल्ली में, आपकी टीम कहां थी उस समय, आप तो नहीं थे बेंगलोर में, मैंने तो आपका ही काम किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया, आपसे अच्छा कार्यकर्ता तो मैं हूं अंधश्रद्धा का। तो नरेंद्र दाभोलकर उसका कोई जवाब नहीं देते। मैं आपके ध्यान में लाना ये चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है, भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं, ईसाइयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से कहता हूं कि ये आपकी बौखलाहट इसलिए है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। जिस दिन आप अमेरिका से पैसा लेना बंद कर देंगे और भारत के पैसे से भारत की अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करेंगे, उस दिन आपको बौखलाहट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती। तो हमारे सबके ध्यान में लाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कैसी संस्था है। अब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र में लगी हुई है इस काम के लिए कि किसी तरह एक कानून बने और उस कानून के आधार पर ये काम महाराष्ट्र में चले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नई सरकार महाराष्ट्र में आती है, नरेंद्र दाभोलकर और उनके मित्र वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं, श्याम मानव। तो एक श्याम मानव और एक नरेंद्र दाभोलकर, ये दोनों मिलकर हर नई सरकार के पास जाते हैं और उनके सामने यही दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि भारत समाज में बहुत अंधश्रद्धा है, इसको मिटाना ही चाहिए और भारत को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, इसके लिए कानून की जरूरत है। ये वो पिछले 20 साल से रोना गाना कर रहे हैं, हर नए मुख्यमंत्री हर नई सरकार के पास जाना, और हर बार उनको कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है मुख्यमंत्रियों को कि नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। अभी उन्होंने ये बिलासराव देशमुख और आरआर पाटिल की सरकार में यही पिछले 2-3 सालों से किया हुआ है और दुर्भाग्य से दोनों ने उनको हां बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी ये कानून पास कर देंगे। तो अब आप जानते हैं हुआ क्या कि आरआर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को कहा कि अच्छा ऐसा करिए, आप ही ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, हम उसी को कानून बना देंगे। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि हम जो अपने को हिंदू मानते हैं, हमारी तरफ से अभी तक आरआर पाटिल और बिलासराव देशमुख को कोई नहीं मिला। तो वो क्या मानते हैं बिलासराव देशमुख और आरआर पाटिल, वो ये मानते हैं कि अच्छा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया नरेंद्र दाभोलकर और उनसे, अब उसको कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने प्रावधान के रूप में डाली हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा लगेगा जब ये कानून बन जाएगा कि क्या तकलीफ आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है भारत के उन साधु संतों को जो गांव-गांव विचरण करते हैं और लोगों को कुछ धर्म के बारे में सिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं या कुछ ज्ञान देते रहते हैं। उनका अपनी आजीविका भिक्षा पर चलती है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन में सबसे खतरनाक जो प्रावधान है वो ये कि इस कानून के बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा में कोई भी साधु संत अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको भिखारी माना जाएगा, और जैसे भिखारियों के प्रति पुलिस का व्यवहार है वही साधु संतों के लिए किया जाएगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह कानून है कि आप भीख नहीं मांग सकते, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप भीख मांगेंगे पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। तो हमारे यहाँ ये जो हजारों साधु संत अब गांव गांव घूमते भीख मांगते अपना जीवन चलाते हैं भिक्षा के आधार पर, वो अब अंधश्रद्धा होगा इस कानून के हिसाब से। आरआर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो कुछ खास अकल नहीं है, ये मैं आपको अभी कहता हूं और पब्लिकली भी कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो विदेशी पैसे पर काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके दिमाग में भिक्षावृत्ति और भिखारीपन इन दोनों का अंतर ही नहीं है। हमारे यहां भिक्षावृत्ति सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। जब आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं और भिक्षा पर आधारित जीवन चलाने लगते हैं तो ये सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है इस देश में। आप में से अगर कोई जैन समाज के हों तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ स्वामी से लेकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, और तब माना गया कि वो सबसे ऊंचे उठे। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो अपना जीवन चलाने के लिए उनको भिक्षा चाहिए और भिक्षा पर ही अपना पूरा जीवन उनको बिताना है। तो 24 के 24 तीर्थांकर पूरे समय भिक्षा पर जीवन बिताते रहे। अब उसी जैन समाज के जो आदर्श साधु संत हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनका पूरा जीवन भिक्षा पर ही चलता है। तो इस कानून के बनते ही सबसे पहली मार पड़ेगी वो जैन समाज के साधु संतों पर, क्योंकि वो जहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। फिर क्या होगा? बवाल होगा, थोड़ा बवाल होगा तो मुख्यमंत्री कहेगा कि अच्छा चलो इसमें संशोधन करें। तो संशोधन की उनकी तैयारी क्या है कि सरकार हरेक साधु संत को एक सर्टिफिकेट देगी, अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो भिक्षा मांग सकते हैं, नहीं है तो जेल जा सकते हैं। मूर्खों के मूर्ख इस देश में शासन कर रहे हैं, माने साधु संतों को सरकार एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे ये हमारे गले में लटका हुआ है ना, ऐसा ही साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, ये उसमें संशोधन आ जाएगा और वो संशोधन तैयार रखा है उनका। ये उनको मालूम है कि कानून पारित होते ही जैन समाज बवंडर करेगा इस पे, और जैन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज से ही मिलता है और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज से मिलता है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज देता है, महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज देता है। सरकार को अंदाजा है कि ये कानून घोषित होते ही जैसे ही लागू होगा तो जैन समाज तो तिल मिलाने वाला है। तो संशोधन क्या करना है कि एक एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे सरकार की तरफ से कि ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास, इसलिए ये भीख मांग सकते हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मूर्खता का कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। दूसरा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके दुख दर्द दूर करने की थोड़ी भी मदद करता है तो ये अंधश्रद्धा है। आप मोहन महाराज के पास आए और कहा महाराज मुझे पेट में दर्द होता है, मोहन महाराज ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसा करो त्रिफला चूर्ण खा लो, नहीं तो जीरे का पानी पी लो, या कुछ बता दिया, तो ये अब अंधश्रद्धा हो जाएगी इस कानून के बाद। क्यों? इसलिए कि मोहन महाराज कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, तो ये बता नहीं सकते, बताएंगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, तो मोहन महाराज को भी जेल और वो पूछने वाले को भी जेल। ये दूसरा प्रोविजन है। तो अब आप अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून आने के बाद किसी साधु संत के पास जाके गलती से भी मत पूछ लेना कि महाराज मेरी ये समस्या का समाधान क्या। आपको पूछना है उसी व्यक्ति से जिसको लाइसेंस है सरकार का कि भले वो आपकी गर्दन काट ले, फिर भी पूछिए उसी को जाके, क्योंकि वो MBBS MD डॉक्टर है और उसको रजिस्टर्ड लाइसेंस है कत्ल करने का या किसी की जान ले लेने का। कल मुझे अतुल भाई ने बताया कि यहां एक गेटवेल नाम का हॉस्पिटल है, वहां कोई डॉक्टर चांडक है, उसने मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर डाला था, मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर दिया सिर्फ पैसे के लालच में। वो तो जिनके घर का आदमी मरा वो थोड़े होशियार थे, चालाक थे, तो डॉक्टर को पकड़ लिया और 14 लाख में उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, नहीं तो डॉक्टर चांडक को जेल होने वाली थी। तो ये धंधा करने वाले MBBS MD डॉक्टर चलेंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून उनको सर्टिफिकेट देता है, मोहन महाराज नहीं चलेंगे या कोई साधु संत नहीं चलेगा इस काम के लिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून अगर सख्ती से लागू किया जाए तो हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी रहेगी। आप मंदिर में आए और यहां आपने प्रसाद लिया तो वो अंधश्रद्धा है। ऐसी ऐसी धाराओं के साथ ये कानून बनाया जा रहा है, अभी पास नहीं हुआ है, असेंबली में आया है, बहस की होने के बाद उस पर पास करने की तैयारी है। ये सब क्यों हो रहा है समझने की बात है। सरकार तो मुख्यमंत्री देशमुख हो या RR पाटिल, या ये अभी चला जाए कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो या दूसरा उप मुख्यमंत्री, सरकार तो निमित्त मात्र है। ये कानून भारत में आए इसके लिए अमेरिका का आदेश है। अमेरिका को क्या समस्या है भाई? अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के समाज को अमेरिकी बनाना है, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये मंदिर है। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को अमेरिकी बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मंदिर, और फिर उसके साधु संत जो गांव-गांव घूम रहे हैं मुफ्त में काम कर रहे हैं। इस देश में आपको मालूम है 23,80,000 साधु संत हैं, 23,80,000 से ज्यादा हैं, और ये सब बिना सरकार के कहने पर गांव-गांव घूमते रहते हैं, किसी को व्यसन मुक्त कराते रहते हैं, शराबबंदी कराते रहते हैं, मांस खाना छुड़वाते रहते हैं, अंडा मत खाओ ये बताते रहते हैं, भगवान की पूजा करो, धर्म ध्यान करो ये समझाते रहते हैं। तो ये जो साधु संत हैं 23,80,000, ये बहुत बड़े प्रचारक हैं भारतीयता के और भारतीय संस्कृति के। अमरीका को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये भारत में रहेंगे अमरीका सफल नहीं होने वाला। अमेरिका का टारगेट क्या है? वही जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत देश को ईसाई बनाना, ये अंग्रेजों का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया था। 23 जून 1813 को अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को पूरी तरह से ईसाई बनाना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, व्यापार और धंधा करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। और ये प्रस्ताव अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, किसी चर्च में नहीं, ध्यान दीजिए इस बात को। अगर ये प्रस्ताव किसी चर्च में होता तो मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना है, वही मुख्य उद्देश्य है। व्यापार करना तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से भारत को ईसाई बनाएंगे, तो मुख्य काम ईसाई बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई थी, ये अभी कहना आप बंद कर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को ईसाई बनाने आई थी, ये कहना अभी महत्वपूर्ण। और भारत को ईसाई बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। अंग्रेजों की संसद में इस विषय पर 13 साल बहस चली, 13 साल। और उस बहस का मुख्य बिंदु था कि भारत को ईसाई कैसे बनाएं। तो एक अंग्रेजी सांसद था, उसका नाम था विलियम विल्वर फोर्स। उसने कहा कि 3 काम करो भारत में तो भारत ईसाई हो जाएगा। पहला काम कि भारत की आर्थिक शक्ति को खत्म कर दो। दूसरा काम, भारत की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त कर दो। और तीसरा काम, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को खत्म कर दो। के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आया तो नहीं कभी यहां, लेकिन स्टडी उसकी पूरी है। तो वो कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। यह आप जानते हैं चाणक्य का सूत्र है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म के मूल में अर्थ है, माने अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म अपने आप कमजोर होता है। और ये दुनिया भर में देखा जाता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है उन देशों का धर्म कमजोर ही होता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है उनका धर्म भी मजबूत होता है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ईसाइयत पूरी ताकत से लगी हुई है सारी दुनिया में। अरब देशों की अर्थव्यवस्था पिछले 30 साल में मजबूत हुई है, 30 साल पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था, 30 साल में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो इस्लाम को देख लो आप, कैसी ताकत से दुनिया के सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज का अखबार आप पढ़ो तो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है अल जवाहिरी, एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है, उसको मालूम है कि उसके देश में से कितना पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में बिक रहा है और कितनी इनकम उसको आ रही है, उसकी ताकत पर वो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो दम निकल जाता है हिंदू भारतीय शब्दों का उपयोग करने में। क्यों? आपकी आर्थिक शक्ति कमजोर है तो धर्म तो कमजोर होने ही वाला है। हमारी आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर है कि अमेरिका अगर हमको कर्ज देना बंद कर दे तो यहां बजट नहीं बन सकता इस देश का। महाराष्ट्र सरकार अगर कल से संकल्प ले ले कि कर्ज नहीं लेंगे तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को पगार नहीं मिल सकती, इतना कमजोर है महाराष्ट्र। 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर, और एक साल की जो आमदनी है महाराष्ट्र की उसका 50% कर्जे के ब्याज में खर्च हो रहा है महाराष्ट्र पर। तो हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलाते हैं और जो कर्जदार होता है वो सबसे कमजोर होता है, साहूकार के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है इसलिए धर्म भी कमजोर है, और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्षता का उच्चारण करते हैं ना सवेरे से शाम तक, दुनिया में कोई देश में नहीं होता ये उच्चारण। सऊदी अरब बहुत छोटा सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा सा देश है, बहरीन कुवैत ओमान बिल्कुल शहर के बराबर के देश है, फिर भी डंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम हम धर्म मानते हैं और इस्लामिक राज्य हमारा है। और आप संयुक्त अरब अमीरात या जैसे किसी भी देश में चले जाइए, मस्जिद में अजान जब होगी तो सारी दुकानें बंद करनी ही पड़ती हैं, भले आप हिंदू हों या ईसाई हों। दुबई चले जाइए आप, अबू धाबी चले जाइए, दोपहर की नमाज जब पढ़ी जाती है तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाते हैं जितनी देर अजान चलती है, और लाउड स्पीकर इतना तेज तेज बोलते हैं कि आपका कान फट जाए। आप हिंदू हैं, 37 लाख हिंदू रहते हैं वहां, उन सबको काम छोड़ के बैठ जाना पड़ता है जितनी देर अजान चलती है। यूरोप में चले जाइए, कहीं भी आप देख सकते हैं इस बात को कि ईसाइयत का कोई पर्व आ गया बड़े से बड़ा, तो सरकार क्या, सरकार के ऊपर की सरकारें सब बंद करके उस पर्व में लग जाती है। ईस्टर आता है ना, ईस्टर, तो ईस्टर के समय अगर आप यूरोप में रहते हैं, भले हिंदू हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा उस छुट्टी के साथ जो ईसा मसीह के लिए तय की गई है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, ये धर्म निरपेक्ष तो कमजोर लोगों का शब्द है। और भारत में परिभाषा माने तो धर्म के निरपेक्ष कुछ होता नहीं है, ना आप ना मैं। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां धर्म के 10 लक्षण हैं, जो धारण करे वो धार्मिक है। यहां मंदिर में आके घंटा बजाना ये कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारण करने वाले 10 लक्षणों के आधार पर चलता है, मनुस्मृति में वो लक्षण दिए गए हैं। धर्म क्या है, जो व्यक्ति उसको धारण करे उसके 10 लक्षण हैं, वही धार्मिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो उन लक्षणों को धारण करे वो धार्मिक है, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन संविधान में बिल्कुल उल्टा है कि जो मंदिर में जाए घंटा बजाए वो धार्मिक है, कोई तिलक चंदन ऐसे लगाए, कोई ऐसे लगाए, वो धार्मिक। ये सब कर्म कांड है, और कर्म कांड करना इसलिए पड़ता है कि धर्म के साथ आप जुड़े रहें। अगर कर्मकांड नहीं होगा तो छूट जाता है सब कुछ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर धर्म को अलग किया, कर्मकांड को अलग किया, कर्मकांड जिंदगी का हिस्सा बना दिया ताकि आप उससे अलग ना हो जाएं, और धर्म बता दिया कि ये लक्षण हैं, इनको आप धारण करो। मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है, और इतनी सुंदर परिभाषा है कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता उसको, पूरे ब्रह्मांड के लिए वही है, और वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी वही परिभाषा है। पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, सबके लिए वही है। तो हमारे यहां तो अगर धर्म के निरपेक्ष आप चले जाएं तो ये ब्रह्मांड ही रसातल में चला जाए, दुनिया ही नहीं चलेगी। तो भारत में तो धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं हो सकता, यहां कुछ हो सकता है तो पंथ निरपेक्ष हो सकता है कि सरकार पंथ निरपेक्ष है, इस पंथ का भी नहीं मानती, उसका भी नहीं मानती, इस संप्रदाय का भी नहीं मानती, उस संप्रदाय का भी नहीं मानती। तो धर्म निरपेक्ष होना तो संभव ही नहीं है, भारत के ही लिए नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी। ईसाइयत भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकती, नहीं तो डूब जाएगा सब कुछ। इस्लाम भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सब डूब जाएगा। धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जो है वो धर्म के सापेक्ष ही हो सकता है, निरपेक्ष तो कुछ नहीं हो सकता। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे नेताओं को तो ये बात करने में भी डर लगता है। या तो वो बहुत कमजोर हैं या मूर्ख हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें मूर्खता की पराकाष्ठा है नेताओं में, कमजोरी तो है थोड़ी बहुत है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा। और ये जो डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सच में जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र है, बंच ऑफ जोकर्स कहा था एक बार महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ये संसद में बैठे हुए लोग जोकरों का समूह है। विचित्र विचित्र तरह के जोकर होते हैं ना सर्कस में, वैसे ही बैठे हैं संसद में, देखा नहीं, एक खड़ा हो जाता माँ बहन की गाली देने लगता, दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसकी माँ बहन की गाली देने लगता, ये जोकर हैं कि नहीं? हमारे देश की संसद का हाल गली चौराहे से ज्यादा खराब है। गली चौराहे के नुक्कड़ों पर जैसे गुंडागर्दी और दादागिरी होती है और माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, वैसे संसद में रोज होता है। और संसद का आधे से ज्यादा समय इसी में खर्च होता है, माँ बहन की गाली देने में, एक दूसरे की टांग खींचने में। तो बंच ऑफ जोकर्स तो है, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि लोगों के चुने गए पैसे से आप बैठे हैं यहां पर, तो कुछ तो शर्म करो। उनके खून पसीने की कमाई के पैसे को ऐसे तो बर्बाद मत करो संसद का समय खराब करके। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी माने जोकरों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र। और ऐसे ऐसे जोकर कि विचित्र विचित्र, जो जिंदगी में है किसी के साथ बलात्कार करते रहे, जिन्होंने किसी के मर्डर किए हैं, किसी के घर लूटे हैं, तबाही मचाई है, वो सब चुनकर संसद में बैठे हैं। और हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस समय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 380 ऐसे खासदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए शिबू सोरेन की तरह, लेकिन संसद में बैठे। और शिबू सोरेन ने तो सारी लिमिट तोड़ दी, मंत्री पद पर रहते हुए वो आदमी तिहाड़ जेल गया है, आप जरा सोच लो। मंत्री पद पर रहते हुए हिंदुस्तान के आजादी के 60 साल के इतिहास में कोई सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और वो भी छोटा मोटा आरोप नहीं है, मर्डर का, हत्या कराने। तो कमिश्नर बोलता है कि ऐसे हत्यारे तो बहुत बैठे हैं लोकसभा राज्यसभा, और विधानसभाओं की सूची बना दो तो आधे से ज्यादा विधानसभा में चोर उचक्के लुच्चे लफंगे लंपट यही सब है। और नगर पालिकाओं की सूची बना लो तो शायद 75% ऐसे ही निकलेंगे, चोर उचक्के लुच्चे लफंगे लंपट। पार्टियां टिकट बांटती हैं तो वो कहती हैं जी क्या करें, चोर के सामने चोर को ही तो खड़ा कर सकते हैं। माने पार्टियों में कंपटीशन है, एक के पास चोर है 80 पैसे वाला तो दूसरा 100 पैसे वाला खड़ा कर देता है उसके सामने कि चोर को टक्कर चोर देगा, गुंडे को टक्कर गुंडा देगा, मवाली को टक्कर मवाली देगा, तो पार्टी क्या करे। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अबू सलेम को टिकट देने के लिए परेशान है कि हम अबू सलेम को लड़ाएंगे, दूसरी कहती है हम लड़ाएंगे अबू सलेम। एक पार्टी कहती है अबू सलेम को हम टिकट देंगे, दूसरी कहती है हम देंगे, कंपटीशन चल रहा है। और अबू सलेम कह रहा है कि मैं तो अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा। है नहीं ये जोकरों का खेल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैंने जो आदमी भारत माता का दुश्मन है, देशद्रोही है, जिसके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, मुकदमा चल रहा है, सजा होने की तैयारी आ रही है, वो चुनाव लड़ने को तैयार है। और अबू सलीम ताल ठोक के कह रहा है कि देखें कौन रोकता है मुझे चुनाव लड़ने से, क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी चुनाव लड़ सकता है। आज आपने अखबार पढ़ा सिद्धू को जमानत मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हाई कोर्ट ने 3 साल का जेल भेज दिया, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं 2-2.5 साल तो तुम चुनाव लड़के बैठ ही सकते हो संसद में, फिर जब फैसला आएगा तो फिर जेल चले जाना। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं ना, बंच ऑफ जोकर्स हैं जो इस देश को चला रहे हैं, वो आपको रोज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग संसद में और विधानसभाओं में बैठ जाएं तो इस तरह के कायदे ही बनते हैं। अंधश्रद्धा का कायदा भी ऐसे ही कुछ जोकरों के द्वारा बनाया जाएगा। तकलीफ आपको आएगी, मुझे आएगी, सबसे बड़ी तकलीफ ये आएगी कि आप जो भी क्रियाएं करेंगे वो सब हो जाएंगी अंधश्रद्धा, और मुसलमान और ईसाई जो कुछ करेंगे वो हो जाएगी श्रद्धा। क्योंकि कायदा आ रहा है वो हिंदुओं के लिए आ रहा है, ये आप ध्यान रखिए, मुसलमान और ईसाइयों को उसमें से निकाला हुआ है। कारण वो कहते हैं ये माइनॉरिटी वाले लोग हैं तो ये अंधश्रद्धा करने के अधिकारी हैं, आप मेजॉरिटी वाले हैं इसलिए आप अधिकारी नहीं हैं। तो जब ये कायदा पास हो जाएगा आपको छोटे छोटे काम तकलीफ में डालेंगे। फिर होगा क्या मैं आपको अभी बता देता हूं, ये कानून का पालन तो कभी नहीं होने वाला, ये आप लिख लीजिए स्टाम्प पेपर। कितनी ही ताकत आ जाए देशमुख की, विलासराव देशमुख की, और कितनी ही ताकत आ जाए आरआर पाटिल की, ये कानून का पालन तो वो कभी नहीं कराएंगे, करा नहीं सकते। लेकिन होगा क्या, कानून का पालन तो नहीं होगा, पुलिस को हफ्ता खाने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अब यहां पुलिस आके बैठ जाएगी आपके मंदिर पे, अंदर वो देखेगा तीर्थ ले रहे हो, हां ले रहे हो तो दे दो भैया, नहीं तो अभी एफआईआर करो, चलो अदालत में आपके खिलाफ रिपोर्ट करता हूं और इस कायदे में आपको जेल भेजता हूं। आप क्या करोगे, अरे छोड़ना यार 10 रुपए ले तो 10 रुपए में चुप, फिर दूसरा कोई आएगा उससे 10 रुपया, जैसे वो ट्रक वालों से वसूलते रहते ना वैसे ही धंधा अब यहां चलेगा। और पुलिस जो है ना वो पंथ निरपेक्ष है, ये तो आप जानते ही है, वो संप्रदाय निरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है, उसमें मुसलमान भी पुलिस वाला है, ईसाई भी पुलिस वाला है, तो चुन चुन के मुसलमान और ईसाइयों की ड्यूटी लगाई जाएगी मंदिर के सामने कि हफ्ता वसूली करो। तो कानून तो पालन वो नहीं करा पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है इतनी। 10 करोड़ 11 करोड़ महाराष्ट्र वासियों को वो अपनी ताकत से अपने डंडे से हांक नहीं पाएंगे, ये तो होने वाला है। लेकिन इस कानून के बहाने एक नए तरह का भ्रष्टाचार और धंधाखोरी पुलिस को मिल जाएगा करने के लिए। अंत में इसमें क्या होगा कि सरकार की नजर है अगर आपके मंदिर पर कि इस मंदिर में चढ़ावा बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, तो वो उस कानून का दुरुपयोग करेंगे मंदिर को हैरान परेशान करने में, ट्रस्टियों को हैरान परेशान करेंगे, मंदिर के पुजारियों को हैरान परेशान करेंगे, मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों को इतना हैरान परेशान करेंगे कि पुजारी छोड़कर भागे या ट्रस्टी वो मंदिर को छोड़े तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसके लिए मंदिर अधिग्रहण कानून दूसरा बना रहे हैं, हैरान परेशान करने के लिए ये कानून अंधश्रद्धा निर्मूलन का। और जब आप हैरान परेशान हो जाएं तो क्या करेंगे अंत में, छोड़ो भाई ये मंदिर का झंझट, कोई ट्रस्टी बनने को तैयार नहीं है, कोई रखवाल करने को तैयार नहीं है, तो सरकार कहेगी आपके ट्रस्टी तो संभाल नहीं सकते मंदिर, हमको दे दो। तो उसके लिए वो दूसरा कायदा ला रहे हैं, मंदिर अधिग्रहण कानून। और इस कायदे में अल्टीमेट व्यवस्था ये है कि सारे मंदिर आपके सरकार के हाथ में चले जाएं तो 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि सरकार को पैसे मिलेंगे, मंदिर का चढ़ावा सरकार के हाथ में, सरकार क्या करेगी हरेक मंदिर में एक पालक मंत्री को बिठा के रखेगी। क्या करती है सरकार, पालक मंत्री बना रखे हैं कि नहीं धंधा करने के लिए, तो हरेक मंदिर पे एक पालक मंत्री बिठा दिया जाएगा, मंदिर हिंदुओं का है पालक मंत्री मुसलमान बैठा है, क्योंकि सरकार तो पंथ निरपेक्ष है धर्म निरपेक्ष है, मंदिर हिंदुओं का है पालक मंत्री ईसाई बैठा है, तो क्या क्या घूसनखोरी करेगा, वो कहेगा जी इस मंदिर में दीपक जल रहा है, तो हां जल रहा है, तो किसका, गाय के घी का, भाई गाय का घी तो अंधश्रद्धा है, सुअर की चर्बी जलाओ ना इसमें तो श्रद्धा है क्योंकि वो साइंटिफिक है। तो पालक मंत्री आदेश देगा कि हिंदू मंदिर में सुअर की चर्बी का दीपक जलाओ, फिर आप बोलोगे भगवान को प्रसाद हम चढ़ाते हैं किसका है, तो देशी घी का है, तो ये क्या है, ये तो अंधश्रद्धा है, देशी घी, सुअर की चर्बी से बहुत अच्छा तेल निकलता है, उसका लड्डू बना के चढ़ाओ, सरकार ये कराएगी। क्योंकि मंत्री पालक मंत्री अगर मुसलमान बैठ गया या ईसाई बैठ गया तो उसको आपसे क्या लेना देना, वो तो सोचेगा कि अभी पीटने का सबसे अच्छा समय यही है हिंदुओं को। तो इस तरह की परेशानियां अब खड़ी होंगी और इन परेशानियों में अंतिम यही होगा कि वो पालक मंत्री मंदिर को लूटेगा, सरकार लूटेगी, फिर उसके साथ के लोग लूटेंगे और लोग बेचारे अपनी श्रद्धा से दान पेटी में डालते ही रहेंगे, उनको मालूम नहीं ये दान पेटी अब सरकार के हाथ में है, मंदिर का भला तो नहीं होगा सरकार का भला होगा। और अब सरकार क्या करने वाली है, विलासराव देशमुख ने एक दिन कहा कि मंदिर का अधिग्रहण करके जो पैसे हमारे पास आएंगे हम उससे मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, तो पैसे मंदिर के आए बनेगी मस्जिद, या मस्जिद की सुविधाएं बढ़ाएंगे, या ईसाई गिरजाघर की सुविधाएं बढ़ाएंगे, मंदिरों के पैसे से मस्जिदों का काम और ईसाइयों का काम चले, क्योंकि उनकी विशेष सुरक्षा करनी है। ऐसे लोग इस देश में हैं, सरकार चलाने वाले और सरकार में बैठे। तो ये अंधश्रद्धा और दोनों कानून साथ में इसलिए लाए जा रहे हैं कि अंधश्रद्धा कानून के नाम पर आपको परेशान कर दें, आप इतने परेशान हो जाएं कि मंदिर छोड़ने लगें, छूटे हुए मंदिरों को सरकार अपने हाथ में ले ले, मंदिरों का सारा धन सरकार के हाथ में जाए, उस धन को सरकार जहां बंदर बांट करे वो करे। और अमेरिका के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। अगर मंदिर भारत सरकार के हाथ में जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार माने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार पर अंकुश है भारत सरकार का, भारत सरकार पर अंकुश है अमेरिका का, तो अमेरिका के ताबे में चले गए ना सारे मंदिर, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम है, आपके प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गुलाम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ताबे में मंदिर है तो प्रधानमंत्री के ताबे में मंदिर है, प्रधानमंत्री जॉर्ज बुश का गुलाम है तो सारे मंदिर जॉर्ज बुश के ताबे में। और उसको यही करना है, उसको क्या करना है, जो अंग्रेजों को करना था वही अमेरिका को करना है। भारत के धर्म और संस्कृति को खत्म करो, तभी भारतवासी अमेरिका के गुलाम बनेंगे। और धर्म संस्कृति का आधार होता है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को खत्म करने में तो वो लगे हुए हैं, उनकी हजारों हजारों कंपनियां भारत में आ चुकी हैं, पैसे लूट लूट कर इस देश से अमेरिका ले जा रही हैं, आर्थिक रूप से हर दिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो अब वो चोट मारना चाहते हैं हमारे धर्म और संस्कृति पर। और ये विज्ञान के नाम पर करना सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे आजकल के पढ़े लिखे लोग ना विज्ञान को समझते हैं ना धर्म को समझते हैं, अधकचरा ज्ञान उनके पास है, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख हैं इस देश में, ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है। हाईली एजुकेटेड मोस्ट इडियट है, और जो अनएजुकेटेड है बिना पढ़े लिखे वो थोड़े होशियार हैं, उनको अकल है, और इतनी अकल है कि कभी बार हमको आश्चर्य लगता है कि ये साधारण आदमी को इतनी अकल है। साधारण लोगों को आप देखेंगे तो धर्म ध्यान का पालन वो रोज करते हैं, धर्म के जो 10 लक्षण है ना वो रोज उनकी जिंदगी में सवेरे से शाम तक आप देख सकते हैं, मजदूर हो किसान हो, जो कभी स्कूल नहीं गया कॉलेज नहीं गया वो सब धार्मिक हैं, और जो स्कूल कॉलेज में मेरे जैसे मूर्ख पढ़कर निकले हैं वो सब पंथ निरपेक्ष हो गए हैं, सेक्युलर हो गए, ना सेक्युलरिज्म समझती है ना रिलीजन समझता है। ये पढ़े लिखे लोगों को मैं कभी बार कहता हूं कि सेक्युलरिज्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन अंग्रेजों का शब्द है, रिलीजन का मतलब होता है लॉ, कानून, वो रिलीजन है। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी अगर आप पढ़ोगे ना, वेबस्टर पढ़ो या चैम्बर्स पढ़ो, ऑक्सफोर्ड पढ़ो, कोई डिक्शनरी पढ़ो, रिलीजन का अर्थ है लॉ। और यहां मूर्ख पढ़े लिखे लोगों ने रिलीजन का अर्थ कर दिया है धर्म, सत्यानाश उसी में हो गया। जो रिलीजन है वो सेक्युलर होता है, क्योंकि लॉ सेक्युलर होता है, लॉ सभी के लिए एक जैसा होता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई क्या पारसी, सबके लिए कानून बराबर है, तो वो रिलीजन है लॉ। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी उल्टी परिभाषा कर दी इस देश में, उसी में से सारी तकलीफें शुरू हो गई। खुद इंग्लैंड वाले कहते हैं रिलीजन इज लॉ, प्लेटो बोल कर गया रिलीजन इज लॉ। प्लेटो जो उनका सबसे बड़ा दार्शनिक था ना, उसने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक, रिपब्लिक में रिलीजन का डेफिनेशन दिया है बाई लॉ, कानून है वो धर्म है उनके लिए, क्योंकि वो कानून को ही धर्म मानते हैं। भारत में धर्म बिल्कुल अलग है, कानून धर्म नहीं है हमारे। तो हमने नकल कर लिया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट बनाई है, अंग्रेजों की नकल से उसी को चलाते हैं और उन्हीं की नकल के कानून बनाए हैं, तो सारे देश में खड्ड मड्ड हो रहा है, खिचड़ी जैसा बन गया है, ना पूरा भारतीय रह पाए ना पूरे अंग्रेज बन पाए, बीच में खिचड़ी बन के हम रह गए। अब खिचड़ी इतनी है कि हमारी जिंदगी चलती है धर्म के लक्षणों से, ठीक है, कानून बनता है सांप्रदायिकता से, पंथ निरपेक्षता से, जिंदगी हमारी धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन देश चल रहा है वो संविधान के आधार पर जिसमें सेक्युलरिज्म की बात की गई। तो ये झगड़ा हमेशा चलता है। अब इस झगड़े का या तो एक बार आप निपटारा कर लो और या तो अपने को सरेंडर कर दो, दो ही रास्ते। ये जो कुछ सरकार करने जा रही है, या तो इसके सामने हम सरेंडर कर दें, हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि ये सरकार बहुत अच्छी है, मान लें बहुत अच्छा है, और या एक बार दो दो हाथ कर लो सरकार से कि ये सरकार होती कौन है, हमको बताने वाली कि क्या श्रद्धा है और क्या अंधश्रद्धा है। विलासराव देशमुख की हैसियत क्या है? तो कहेंगे मुख्यमंत्री है, तो नौकरी तो है आपका, राजा तो नहीं है, मालिक तो नहीं हो गया महाराष्ट्र का, नौकर है। तो नौकर मालिक के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है तो मालिक को झटका देके गिरा देने की बात है, इतनी सी बात है बस। आपके घर में कोई नौकर आपकी इच्छा के विपरीत काम करना शुरू करे, आप क्या करते हैं? कान पकड़ के निकाल देते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य का सबसे पहला नौकर महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, कान पकड़ के उतारिए इसको, दूसरा कोई नौकर बिठाइए जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करे, यही करना पड़ेगा ना, और तो कोई रास्ता नहीं है डेमोक्रेसी में आपके पास। तो महाराष्ट्र के लोगों के बीच में इस जन जागृति को फैलाना कि ये कानून क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। अभी लोगों को क्या लगता है कि अंधश्रद्धा कुछ इसी तरह की है जैसे कोई डमरू बजा के बाबा जी आता है, वो सड़क पे मजमा लगा लेता है, तो लोगों के ख्याल में ये है कि इनको पकड़ना अंधश्रद्धा है। लोगों के ख्याल में ऐसा बैठा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे कुछ डमरू वाले बाबा जी आ जाते हैं, लोगों को उल्लू बना के पैसे लूट के ले जाते हैं, तो ये अंधश्रद्धा। उनको मालूम नहीं है कि परिभाषा कानून में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मंदिर में आके प्रसाद खाना भी अंधश्रद्धा है। मंदिर में साधु संत अगर भिक्षा मांग के जीवन चलाएं तो वो भी अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो इसलिए समाज में जागरूकता आए इस विषय पर, इस दृष्टि से आज की ये बैठक है। आप बोलेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा आप पहले तय कर लो करना क्या है, या तो लड़ना है या तो खत्म होना है, दोनों में से कोई एक रास्ता चुन लो। या तो सरकार के गलत कायदे कानून के खिलाफ हमको लड़ना है जैसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम लड़ते थे, अंग्रेजों की सरकार भी यही सब किया करती थी, गलत कायदे गलत कानून बना के भारतवासियों का शोषण, नमक पर टैक्स लगाने का कानून बना दिया, तो गांधी जी ने कहा लड़ो अंग्रेजों से, जेल में चलो उनके, तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया फिर वो कानून। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया, लोगों ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो गया, अंग्रेजों ने कानून वापस लिया। तो अंग्रेजों का तरीका यही था कि गलत गलत कानून बना के लोगों का शोषण करना। अब हमारे देश में ये जो काले अंग्रेज हैं विलासराव देशमुख और मनमोहन सिंह जैसे, इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है, गलत गलत कानून बना के लोगों को लूटना और चूसना, और रोज गलत कानून बना रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं ध्यान से, अभी एक कानून बना लिया कि किसानों की जमीन सब छीनो और कंपनियों को बेचो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, 5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी जा रही है, किसान बेचारे दुखी परेशान कहां जाएं, पुलिस आती है डंडे मार के गांव से निकाल देती है, डीएम आता है गोली चलाने का आदेश देता है, किसान गांव छोड़ के चले जाते हैं, जमीन सरकार के हाथ में आती है, सरकार विदेशियों को बेच देती है उस जमीन को। ये धंधा कभी डलहौजी ने इस देश में किया था जमीन हड़पने का, आपको मालूम है झांसी की जमीन उसने हड़पी थी इसी तरह से, तब झांसी रानी ने कहा था कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, तो लड़ाई वो यही थी कि अंग्रेजों ने एक गलत कानून बना दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें सभी राजाओं की जमीनें अंग्रेजों के सरकार के पास जाएगी, तो झांसी की रानी ने विद्रोह किया और उसको देखकर भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को फिर पीछे कदम हटाने पड़े। तो जैसी लड़ाई उस समय थी वो लड़ाई आज भी है। बस अंतर इतना है कि पहले गोरी चमड़ी वाले वो ये सब करते थे, अब इसी देश में हरामखोर काली चमड़ी वाले अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो गए। हमको कई बार लगता है अरे इसको तो हमने वोट दिया, हमने चुनकर भेजा, वही हरामखोरी कर रहा है जो आपका वोट लेकर गया। तो ऐसे हरामखोर लोगों को जो काले अंग्रेज बनकर इस देश में काम कर रहे हैं, अब कुर्सी से उतारो और इनको हिंदुस्तान से बाहर भगाओ। कई बार लोग कहते हैं ना आतंकवादियों को भारत से भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ, मैं कहता हूं उनके साथ इन नेताओं को भी भगाओ कि जाओ पाकिस्तान या जाओ बांग्लादेश। उनको लगता है पाकिस्तान से दोस्ती हो सकती है, तो मनमोहन सिंह रहे पाकिस्तान में, जन्म स्थान भी उनका वही है, रहे वहीं जाके, बहुत अच्छा पाकिस्तान है, रहो वहीं पे, अच्छा बनाओ पाकिस्तान को। कुछ को बांग्लादेश भेजो, कुछ को अमेरिका भेजो, इनकी जरूरत क्या है इस देश में? जब देश के किसान का दुख दर्द ये महसूस नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, कंपनियों के लिए ही कर रहे हैं, तो जहां से कंपनी आई है उन्हीं देशों में भेजो इनको। नए नेता अब इस देश में तैयार करो। अब समय आया है इस देश में कि एक नया नेतृत्व इस देश में निकले। ये जो पार्टियां हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, सब खत्म हो गई, क्योंकि इन सबके नेता अमरीका के दुम छल्ले हो गए। हमने हर राजनीतिक पार्टी का शासन पिछले 10-12 साल में देखा है, सब अमेरिका से डरते हैं, सब डरते हैं, क्या बीजेपी वाले, क्या कांग्रेस वाले, क्या जनता दल, क्या सीपीएम। पहले सीपीएम सीपीआई वाले चिल्लाते थे कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, अभी बंगाल में 2-3 महीने से जो हो रहा है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है कि बंगाल का मुख्यमंत्री अमरीका के साथ है, किसानों के खिलाफ, नंदीग्राम की जमीन जबरदस्ती छीन कर वो अमेरिका की कंपनी को बेच रहा है। बीजेपी धीरे धीरे छीनो, बस इतना ही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस वाले डंडा मार के गोली चला के कह रहे हैं, वो कहते हैं इनकी पीठ सहला के ही छीन लो, छीनो जरूर, बनाओ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, सीपीएम सीपीआई भी कह रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से किसी का विरोध नहीं है, बस विरोध इतना है कि किसानों की जमीन कैसे छीनी जाए। एक कहता है मीठी छुरी से काटो, एक कहता हलाल कर दो, एक झटका वाला एक हलाल वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इस देश में कोई नया नेतृत्व तो निकलना चाहिए, नई लीडरशिप आनी चाहिए, जिसको धर्म की समझ हो, देश की समझ हो, संस्कृति का ज्ञान हो, वो सही फैसले करे। और ये आपके बीच में से ही आएगी, पार्टियों में तो गुंडे, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे जमा हैं सब पार्टियों। हर एक पार्टी में टिकट लेने वाले कैंडिडेट्स आप देख लो लाइन लगा के खड़े हैं, पैसे की ताकत पे टिकट बेचे जाते हैं, जो जितना ज्यादा पैसा दे उसको टिकट मिले। तो पैसा देने की ताकत तो गुंडों में, चोरों में, लुच्चों में है, तो वो दे रहे हैं, तो पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं। आप अभी नागपुर का ही चुनाव देख लो या कोई भी चुनाव देख लो आप, तो इन पार्टियों के भरोसे अब ये देश नहीं बच सकता। अब इस देश को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को, साधु संतों को, महंतों को निकलना ही पड़ेगा, वही देश को बचाएंगे। फकीरी जो धारण करेगा वो देश को अब बचाएगा, अमीरी में रहने वाला कोई आदमी देश को डुबोएगा। तो अपनी थोड़ी थोड़ी सुख सुविधाएं छोड़कर अगर कुछ समय हम निकाल लें इस देश के लिए, तो ये मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इतना आसान काम है कि आप दुनिया जहान की बात छोड़ दो, महाराष्ट्र में 2 शहर, एक बंबई और एक नागपुर, इन्हीं को जागरूक कर दो तो बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री डूब जाएगा। ये 2 ही शहर को अगर आप जागरूक कर दो तो पूरे महाराष्ट्र में आप जागरूकता ला सकते हैं, नहीं ला सकते छोड़ दो, खाली नागपुर और मुंबई, ये 2 शहर में जागरूकता आ गई तो डूब जाएगी ये सरकार। और जागरूकता कैसे आएगी? जिन समाजों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है उनको ये समझाओ आप। मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले मार पड़ेगी जैन समाज वालों पर, क्योंकि उनके साधु संत भिक्षा मांगकर ही खा सकते हैं, ये उनका धर्म का नियम है। हमारे बाकी जो हिंदू समाज के साधु संत हैं वो तो दूसरे तरीके से भी रास्ता निकाल लेते हैं। सबने अपने मठ बना रखे हैं, मठों के पास संपत्ति है और हर मठ के पास अपनी जमीन है, तो आवक भी हो सकती है। लेकिन जैन समाज का एक भी संत संपत्ति नहीं रख सकता, कपड़े भी नहीं रख सकता, उन पर सबसे पहले मार पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा कि ये जैन समाज इतना ताकतवर है कि महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा टैक्स यही देता है, तो जो सरकार को धन दे रहा है वो सरकार को नचा लेगा अगर आप उस तक ये बात पहुंचाओ तो। ये मुंबई में 1,22,25,00,000 की आबादी है, उसमें लगभग 35 से 40 लाख जैन रहते हैं। इस नागपुर में भी यही हाल है। और फिर दूसरे साधु संतों को, दूसरे समाजों को समझाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे सब समाज साधु संत एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो मुख्यमंत्री की क्या ताकत है, क्या औकात है? उसको भी साधुओं के पास आना ही पड़ता है आशीर्वाद लेने के लिए। किसी ने भी उसको बोल दिया तथास्तु, भस्मासुर हो जा, खत्म हो जाए, कुछ ताकत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब ये पद से उतर जाते हैं ना, मंत्री और मुख्यमंत्री, तो उनके ऑफिस का नौकर भी सलाम नहीं करता उनको, इतनी बुरी हालत होती है। इसका माने उनकी नैतिक ताकत कुछ भी नहीं है, कुर्सी की ताकत है, कुर्सी तो कभी है कभी नहीं, पानी के बुलबुले जैसे हैं सभी नेता। समाज की ताकत बड़ी है, तो ये समाज की ताकत बड़ी हो जाए, है संगठित हो जाए किसी एक विषय पर, तो कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री हिला नहीं सकता इस देश को। हमारे समाज में बहुत ताकत है। ये ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाओ, 1,000 साल इस समाज पर विदेशी हमले हुए हैं फिर भी ये जीवित है, सोचो जरा इस पर कितनी ताकत है। दुनिया में दूसरे कई देश हैं ना जहां विदेशी हमले हुए, सभ्यता ही खत्म हो गई और संस्कृति डूब गई, पता ही नहीं कि वो देश कहां है। एक देश हुआ करता था यूनान, आज नक्शे में ढूंढो तो दिखाई नहीं देता यूनान कहां है। नक्शे में ढूंढो तो विश्व के मानचित्र में यूनान कहीं नहीं है। इतनी बड़ी सभ्यता का देश, लेकिन थोड़े से विदेशी हमले हुए तो देश डूब गया, सभ्यता डूब गई। इसलिए वो कहते हैं ना, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। सारी दुनिया दुश्मन थी तो भी हमारी हस्ती जीवित है, भारत जीवित है, भारत के लोग जीवित हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों की आबादी है भारत वालों की, साधु संत जीवित हैं, मंदिर मठ जीवित हैं, सारे प्रयास हुए विदेशियों के द्वारा फिर भी है। इसका माने लोगों में बहुत ताकत है, आंतरिक और मानसिक। हाँ, ये जरूर है कि उस ताकत को अगर हम संगठित कर दें किसी एक विषय पर तो बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। अब ये संगठन करने के लिए आप निकलें, मोहन महाराज जी जैसे संत निकलें, और मैं मानता हूं कि कम से कम वारकरी समाज के हजारों हजारों कीर्तनकार हैं, प्रवचनकार हैं इस महाराष्ट्र में, वो निकल पड़े, तो ज्यादा नहीं 3-4 महीने में ये सब कानून उलट जाएगा और सरकार इसको पीछे ले लेगी और क्षमा भी मांगेगी समाज से। एक निकलने की देर है, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि लोग निकलें अपने अपने घर से इस बात के लिए। तो क्या कर सकते हैं, पत्रक छपा सकते हैं, पेम्पलेट बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट बना सकते हैं, इस विषय पर लोगों को सुना सकते हैं, पत्रक बांट सकते हैं, फिर उनकी छोटी छोटी ऐसी सभाएं कर सकते हैं। आज मान लो ये एक सभा हुई, ऐसी फिर दूसरी हो, फिर तीसरी हो, एक बार जैन समाज में हो, एक बार जो जैन नहीं है उनके बीच में हो, एक बार अलग अलग मान्यताओं वालों के, तो ये होता चला जाएगा, संगठन बढ़ता जाएगा और थोड़े दिन में परिणाम भी आ जाएंगे। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी अपने बच्चे अपना परिवार अपना बिजनेस अपना धंधा इसके आगे सोचते ही नहीं, और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है, और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला, क्या करेंगे आप उसका। तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। तो हम अलग अलग संप्रदायों के पास जा सकते हैं। नागपुर में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, उनके पास जा जाके ये छोटी छोटी बातें कहना, फिर बड़ा सम्मेलन, फिर उससे बड़ा सम्मेलन, फिर एक दिन हम सब मिलके चलें विलासराव देशमुख के पास और उनको एक ही वाक्य में पूछें कि आपको भूतपूर्व होने का है या अभूतपूर्व, सीधे से पूछे। अगर भूतपूर्व होना चाहते हैं तो अच्छे से है ये कानून बना दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे भूतपूर्व कैसे होते हैं आप, और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो मत बनाइए। और हर एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने से ही डरता है, उसको मालूम है कि एक दिन ये कुर्सी जाएगी, फिर भी डरता है कि ये ना जाए ना जाए ना जाए, तो उनकी दुखती रग है उसी पे दबा दीजिए। उनको बता दीजिए कि इस देश में हिंदू समाज और भारतीयता को मानने वाले कितने करोड़ हैं, वोट तो तुम्हें उनका भी चाहिए, कैसे लोगे। अगर हिंदुओं के मंदिर को सरकार छीन लेगी तो ये हिंदू समाज तुमको वोट देगा, नोट देगा। खाली मुसलमानों के वोट से क्या कर लोगे, मुश्किल से उनके 10-12 करोड़ वोट हैं पूरे देश में, क्या करेंगे 10-12 करोड़ वोट। हिंदुओं के 60-70 करोड़ वोट हैं, ईसाइयों के तो 50 लाख से भी ज्यादा वोट नहीं है। तो ये बात समझाने की जरूरत है और कड़क भाषा में समझाने की जरूरत है। मेरा तो आज सुझाव है, महाराज जी ने बताया आरआर पाटिल यहां आया है नागपुर में, आज ही घेर लो चल के उसे, आज से शुभश शीघ्रम। और आरआर पाटिल को ये बड़े प्रेम से समझा दो भाई कि तुमको भूतपूर्व होना है या अभूतपूर्व, तुम तय कर लो, क्योंकि ये कानून अगर आपने बना दिया तो आपको महाराष्ट्र में भागते जगह नहीं मिलेगी, इस कानून के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह होगा। क्योंकि भारतीय समाज का लक्षण मैं जानता हूं, ये समाज जब तक सोया है तब तक सोया है, जिस दिन उठकर चलना शुरू कर देता है ना तो मदांध हाथी की तरह से सबको रौंद देता है। अंग्रेजों के खिलाफ जब तक हम शांत थे, एक बार खड़े हो गए तो अंग्रेजी तोपें और अंग्रेजी सैनिक भारत से भागते ही बने। तो ये हमारा शायद स्वभाव है कि हम देर में जगते हैं, लेकिन जग गए तो फिर मुश्किल होती है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। ये बार बार हमने देखा है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कोई जानता नहीं था, मानता नहीं था कि ये इंदिरा गांधी को कोई हरा भी सकता है, क्योंकि सारे देश की सत्ता उसने अपने हाथ में ले लिया था और उसके मूर्ख जो नेता थे समझाने वाले, उनको अंदाजा नहीं था भारत के लोगों का। लगा तो थी इमरजेंसी, फिर क्या हुआ, 2.25 साल के बाद इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी और जो इंदिरा गांधी सबसे मजबूत थी उसको लोगों ने चुनाव में जमानत जब्त करा दी इंदिरा गांधी की, ये आप जानते हैं। इलाहाबाद के पास के चुनाव क्षेत्र से हारी बुरी तरह से, तब इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि भारत के लोगों का स्वभाव दूसरा है, फिर माफी मांगी उसने, तब लोगों ने दोबारा उसको सुना, नहीं तो उसकी सभा में लोगों ने ही जाना बंद कर दिया था। तो मनमोहन सिंह को यह समझाना है कि तुम्हारी ताकत तो इंदिरा गांधी से छटांश भी नहीं है, इंदिरा गांधी में तो तुम से ज्यादा ताकत थी, जब इंदिरा गांधी को ये देश की जनता हिला के गिरा सकती है तो तुम किस खेत की मूली हो मनमोहन सिंह, तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि किसी चुनाव क्षेत्र से जीत कराओ, हमेशा पीछे बैकडोर से एंट्री करके राज्यसभा से आते हो, इसका माने लोगों ने कभी तुमको चुनकर नहीं दिया, क्योंकि लोगों का तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम सच्चे सरदार हो, क्योंकि सच्चा सरदार तो भगत सिंह था, ऊधम सिंह था, जो कहता था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, और ये तो नकली सरदार आ गया है जो बुलाता है कि वापस भारत में आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है विदेशियों के लिए। तो हमें थोड़ी सक्रियता की जरूरत है। आप अपने जीवन से एक दिन में रोज एक घंटे का समय निकालें, समूह बनाकर दूसरे संप्रदायों के पास जाना शुरू करें। सब नींद में सो रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये कायदा आने जा रहा है। कुछ ये भी बोलेंगे कि कायदे को आ जाने दो फिर देखेंगे, कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि कायदा तो आने दो पहले, क्योंकि भारत के लोगों की स्वभाव ऐसी है कि जब तक पानी यहां तक नहीं आएगा तब तक वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो कुछ बोलेंगे कायदे को आने दो, उनको रिजर्व में रखो, और जो आपके जैसे हैं कि कायदा आने से पहले ही ध्वस्त कर दो, उनको सक्रिय कर दो। तो ये जीत हम कर पाएंगे, ये लड़ाई जीत पर। और ये लड़ाई आप सोच लो मंदिर बचाने की ही नहीं है, अपने भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, कि मंदिर तो भारत के धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। पहले जो मंदिर होते थे ना, उनको विदेशी आके सबसे पहले हमला करते थे, क्योंकि संपत्ति बहुत होती थी और वो भारत के प्रतीक भी होते थे। तो विदेशियों को दो फायदे थे, एक तो भारत को चोट पहुंचाना मंदिर पे हमला करके, दूसरा लूट लेना। और उन मंदिरों को बचाने से ही लड़ाई शुरू हुई थी, धर्म के बचने से ही लड़ाई शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने जो बहस बनाया था मुद्दा, वो गाय की चर्बी का सवाल था। तो हमारे रक्त में जो बैठा हुआ है बहुत गहरे से धर्म, उसको बचाना, और जिस धर्म के नाम से भारत जाना जाता है दुनिया में, उस भारत को बचाना, उसकी लड़ाई है। कानून भले छोटा सा है, महाराष्ट्र सरकार ये करने जा रही है, दूसरे कुछ राज्यों की सरकारों ने कर दिया है, आंध्र प्रदेश में आ गया है, तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के हाथ में चला गया है। उस मंदिर का मुख्य पुजारी एक ईसाई है, आपको मालूम, तिरुपति बालाजी के मंदिर का मुख्य पुजारी अब ईसाई हो गया, जिसने बैप्टिज्म लिया है, और मंदिर का मालिक भी एक ईसाई है, सरकार की तरफ से बिठाया हुआ, और वो धीरे धीरे उसमें ईसाईयत घुसा रहा है। तिरुपति बालाजी जैसा ही हाल वैष्णो देवी के मंदिर का हो गया है जम्मू काश्मीर, वो भी सरकार के अपने चला गया। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी में, वो सरकार के हाथ में चला गया। तो धीरे धीरे ये काम चल रहा है, और हमारी निष्क्रियता के कारण चल रहा है, जो हमारी सक्रियता बढ़ जाए तो ये सब रुक जाए। ऐसे ही महाराष्ट्र में चलेगा कानून बनने के बाद। आपने सुनी लिया, गणपति का मंदिर तो गया, मुंबई का शिरडी साईं बाबा का मंदिर गया, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में एक मुसलमान को ट्रस्टी बना के बिठा दिया, मुसलमान है शिरडी साईं बाबा के मंदिर का भी मैनेजिंग ट्रस्टी। तो सरकार को तो अंत निरपेक्ष होना है, धर्म निरपेक्ष होना है, आपको तय करना है कि आपको क्या होना है, सरकार जैसा होना है या अपने भारत जैसा होना है, ये आप तय करेंगे तो हल होने वाला सवाल है। ऐसी ही बात कहकर मैं विश्राम लेता हूं। हम आगे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर, रणनीति बना सकते हैं। सबसे पहली रणनीति जो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा नहीं तो आप नागपुर शहर में सक्रिय हो जाओ, रोज एक घंटे का समय निकालो, हफ्ते में 7 घंटे का समय, कम से कम हम यहाँ 75 लोग बैठे हुए हैं, 75 में 7 का गुणा कर दो, इतने घंटे का समय हर हफ्ते है, और 75 घंटे तो रोज का समय है। इतने समय में यहाँ 1001 मंदिर है नागपुर में, हर मंदिर के ट्रस्टी और पुजारियों से संपर्क कर लो, कुछ उसमें सोए हुए मिलेंगे, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का स्वभाव ऐसा है, यहां सब काम हड़ू हड़ू होता है, धीरे धीरे, हड़ू हड़ू घ्या, हड़ू हड़ू जा, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे खाओ, यहां सब कुछ धीरे धीरे होता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तो वो भी बोलेगा अभी आने दो ना कानून, अभी आया कहां है। तो ऐसे लोगों को रिजर्व में रखो, छोड़ मत दो, रिजर्व में रखो, लेकिन जो आपके जैसे थोड़े हैं उनको साथ लेते जाओ। 1000 मंदिरों में अगर आपने संपर्क कर लिया, कम से कम 1 मंदिर में 2 पुजारी और हर मंदिर के ट्रस्टी, ये 5-10 हजार की संख्या तो होगी, और ये सब वो संख्या है जो करोड़ों रुपए दान देने और लेने वाली है। ये सरकार के सामने अगर आ गए तो सरकार ही हिल जाएगी, जाएगी कहां, सरकार तो हमारे पैसे से चलती है, हमारी नौकर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा सरकार करेगी। तो आप इसको बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं। नागपुर में आप करो, मुंबई में कोई करे, पूना में कोई करे, ऐसी सब जगह संस्थाएं खड़ी हो जाएं, तो दो चार महीने में बहुत बड़े परिणाम इसमें से निकल आएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। भारत में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हजार साल विदेशी कोशिश करते रहे इस देश को खत्म कर देने की, ईसाई बना देने की, फिर भी ये देश बचा। कोई तो ताकत है इस देश की, वही ताकत आगे भी बचाएगी, लेकिन हम वो सोचकर निष्क्रिय हो जाएं ये जरूरत नहीं है। ताकत का ध्यान इसलिए रहे कि हम कमजोर नहीं है और निष्क्रियता हम में ना आने पाए। नहीं तो कई बार होता है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, भले ताकतवर हैं, छोटे से दुश्मन भी हमको हरा के चला जाए। ऐसी बात कहकर मैं विश्राम लेता हूं, फिर महाराज जी कुछ कहेंगे और आप सब मिलकर उस पर कुछ अंतिम निर्णय करेंगे।
तुम्हाला धन्यवाद देणं बरोबर नाही, पण मंत्रमुग्ध करून टाकणारं मार्गदर्शन आपण मला दिलं आहे, याबद्दल व्यक्तिशः मी आपला आभारी आहे।
चढाता बद्ध म्हणाला ही सगळी मंडळी हा कंपू तयार नाही नरेंद्र दाभोळकरचा, फक्त हिंदू धर्माच्या उच्चाटनाकरताच हा सगळा उपद्रव त्यांचा चाललाय, आणि म्हणून आपण अभ्यास करून, जसं आता पंतेजींनी सांगितलं या ठिकाणी, ते एक मंदिराचे ट्रस्टी आहेत आणि फार उत्तम तऱ्हेने ते मंदिर नागपुरात चालवलं जात आहे आज दुर्गा मंदिर म्हणून, बहुसंख्य समाज तिथे आज श्रवणाला येतो, तेव्हा अशा अभ्यासू व्यक्तींनी समाजातल्या याचा पाठपुरावा करून हे सगळे समाजापुढे जर मांडलं गेलं योग्य तऱ्हेने, जसं आता त्यांनी आपल्यापुढे मांडलं, तर निश्चित आमचे डोळे उघडतील। आमचे एक सुनील महाराज आहेत चंद्रपूरला, ते डिफेन्समध्ये नोकरी करत होते, बरं, त्यांनी नोकरी सोडली आता आणि गेल्या 6-7 वर्षापासून ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, विशेषतः चंद्रपूर गडचिरोली हा जो आदिवासी भाग आहे या भागामध्ये तो एक बायबल आणि कुराणची प्रत घेऊनच फिरतो, बरं, त्याची बॅग जर तुम्ही पाहिली आपले सुनील महाराजांची, त्याच्यामध्ये बायबल पण आहे आणि कुराण पण आहे, आणि त्यांनी याचा अभ्यास केला चांगला, आणि तो सांगतो त्या सगळ्या गडचिरोली भागात जाऊन की हे बायबलमध्ये असे चमत्कार आहेत, हे सगळे खोटे आहेत। त्याचा एवढा प्रभाव आज झाला की हजारो आदिवासी बंधू आपले तिकडे वळणारे त्यांनी आज थांबवून ठेवले आहे, म्हणून त्याचा अभ्यास करणे काही नाही आहे। ही जी आपल्या डोक्यात कल्पना आहे की बाबा कुराण आपल्याला वाचलं तर दोष लागेल, नाही आहे असं। बायबलच्या अभ्यासाने आम्हाला काही नरकामध्ये जावं लागेल ही जी काही भीती वाटते असं नाही आहे, कारण दोन्ही दृष्टीने आपण विचार करा, ते एक धर्मग्रंथच आहेत की नाही, धर्मग्रंथाचे वाचन जर पाप होत असेल तर आधी ते सगळे नरकात जातील ना, जे आहे बायबल वाचून राहिले किंवा कुराण वाचून राहिले, म्हणून आम्ही ते ग्रंथ वाचले तर आम्हाला पाप लागेल हे आधी आपल्या डोक्यातून कल्पना काढून टाका, त्याचा खरोखर अभ्यास करा। असे कितीतरी त्यामध्ये मुद्दे आहेत की ते जर आज आम्ही आमच्या हिंदू समाजापुढे मांडले तर या सगळ्यांच्या प्रश्नाची सडोतोड उत्तरं तिथे दिल्या जातील। माईक माझ्या हातात आलाय त्याच्यामुळे पुढे पुन्हा बोलण्याच्या आता बोलून घेतो। आपण एक मुद्दा उपस्थित केला होता की हे सगळ्या मंत्र्यांना सांगण्याची गरज आहे, हे आपलं ऐकणार आहेत, एवढी जनशक्ती निर्माण झाली पाहिजे। आताची घटना राजीवजी आपल्याला सांगतो, इथे अधिवेशन चाललं असताना त्यातली बरीचशी मंडळी सगळी आम्ही सोबत होतो, आम्ही धरणं आंदोलन केलं, इथे अतुल देशमुखजी पण सोबत होते, सनातन प्रभातची मंडळी होती आणि गायत्री परिवार वगैरे हा सगळ्यानंतर जोडला गेला। आमच्या वारकरी संप्रदायाने पण याच्याकरता खूप प्रयत्न केले आहेत, आपण म्हणता आपण जर जागृत झाला तर बरंच होईल, हे झालंय तसं। पंढरपूरच्या सभेमध्ये मला वाटतं आपणही होता त्या ठिकाणी, आपलं भाषणही आहे, मी ती कॅसेट पाहिली आहे, तेव्हा प्रखर विरोध जर झाला या गोष्टीला तर सरकारला ते ऐकावं लागणार आहे। इथे आबा देशमुख आबा जेव्हा मला भेटायला आले आर आर पाटील, तेव्हा मी त्यांना एकच प्रश्न केला, ही सगळी मंडळी काही उपस्थित होती त्यावेळेस, की आबा तुमची आई वारकरी आहे असं मी ऐकलंय, तिच्या गळ्यात तुळशीची माळ आहे आणि तिच्या पोटी जन्माला आलेला मुलगा जर अशा तऱ्हेचे उपद्रव करत असेल, हा शब्द मी त्यांच्या समोर वापरला होता, की हिंदू धर्माचा विध्वंस करण्याचा उपद्रव जर एका वारकरी आईच्या पोटी आलेला मुलगा करत असेल आणि तो जर आज उपमुख्यमंत्री असेल तर हे महाराष्ट्राचं सर्वात मोठं दुर्दैव आहे, बरं का। हे पूर्ण वाक्य त्याने ऐकलं, ते चपराक बसल्यासारखीच झाली त्यांना. त्याच्यानंतर ते म्हणाले, महाराज मी या कायद्याला तुम्हाला त्रास होईल असं काही होणार नाही, मी उपमुख्यमंत्री असेपर्यंत एक ग्वाही देतो. या सगळ्यांच्या समोर हे ते बोलले. आता उत्पत्ती मंत्री आपला शब्द पाळतात, तो त्यांचा विषय आहे. परंतु यांना अशी जर आपण जाणीव करून दिली की ज्या महाराष्ट्र आपण राहता हा महाराष्ट्र संतांचा आहे, ही अत्यंत पवित्र भूमी आहे, ही रामदासांची भूमी आहे, ही ज्ञानदेवांची भूमी आहे, अशा चपराकी जर त्यांना आपण प्रत्येक समाजातून हाणल्या गेल्या तर मला नाही वाटत त्यांचे डोके ठिकाणावर यायला जास्त वेळ लागेल बरं का. परंतु त्यासाठी आपली जागृतीच या ठिकाणी आवश्यक आहे, आणि ती करण्याचा जो काही आपण सगळे मिळून प्रयत्न करतोय, ईश्वरी शक्ती आपल्या पाठीशी आहे, निश्चित आपला विजय होईल असा विश्वास बाळगतो. आणि यानंतरही आपल्या सर्वांचं सहकार्य या कायद्याच्या विरोधाकरता असंच मिळत राहील अशी अपेक्षा करतो. आमचे निवृत्ती महाराज वक्ते जवळजवळ 78-80 वर्षाचं जवळजवळ वय आहे त्यांचं आज, पण संपूर्ण महाराष्ट्रात अत्यंत हिरिरीणी याचा प्रचार करत, ते तर अगदी ग्राम्य भाषेमध्ये जाऊन या नरेंद्र दाभोळकरची माय बहीण घेऊन शिव्या देता येतात. हजारोंचा समाज त्यांच्या कीर्तनामध्ये असतो. ते म्हणतात हा याच लायकीचा माणूस आहे, ते भडवा शब्दाशिवाय काहीच बोलत नाही त्याला बरं का, त्याचं नावही घेत नाही, हा भडवाच म्हणतात. आणि नरेंद्र दाभोळकर त्यांचं काही बिघडवू शकला नाही बरं का, कारण तो परदेशातल्या पैशावर सगळं बोलतोय. आता आपण सांगितलं सगळं, म्हणून विंजवाला चपलेनीच ठेचलं पाहिजे बरं का. विंजवा करता तुम्ही त्या ठिकाणी दया दाखवून उपयोग नाही, हा श्याम मानव काय, मी त्याला दानव म्हणतो, मानव शब्द त्याच्याकरता योग्यच नाही, कारण दानवाचे जे काही काम आहेत सगळ्या करतोय, म्हणून श्याम दानव असाच मी त्याचा नेहमी उल्लेख करतो. माझी त्याची अनेक वेळा भेट झाली आहे, अनेक वेळा वाद झाले आहेत, पण मला हे माहित आहे की हा सगळं परकीय पैशावर करतोय, त्यांचं पोटच त्याच्यावर आहे, तो त्यांचा धंदा आहे, त्याच्यामुळे ती मंडळी करणार. आपण मात्र आपल्या धर्म संस्कृती करता प्राणपणाने लढण्याची वेळ आता येऊन गेली आहे. आणि जेवढा आपला हा नेतृत्व हिंदू समाजाचा करणारा कीर्तनकार वर्ग, पुरोहित वर्ग, पहिल्यांदा तर राजीवजी यांना इंजेक्शन देणं आवश्यक झालंय. मध्ये मध्ये तर आम्ही या मताचे झालो होतो की येऊ दे हा कायदा एकदा, यांना दंडे बसू द्या. आमचे 550-100 कीर्तनकार आणि पुराणिक आतमध्ये गेल्याशिवाय त्यांचे डोळे उघडणार नाही. तर अजूनही असं दुर्दैव आहे आसपास, जवळजवळ अतुलजींनी मला इथे सांगितलं आल्यानंतर, मी तर 12-13 दिवस बाहेरच होतो कथेकरता, 250 लोकांना आमच्या कीर्तनकारांना पत्र पाठवलेत. नागपूरमध्ये कीर्तनकारांची संख्या जवळजवळ 800 वरती आहे पा, नारदी आणि वारकरी कीर्तनकार मिळून. इथे किती उपस्थित आहे, एक आमचे दर्वे महाराज सोडले तर बाकी कोणी आलं नाही. म्हणून असं वाटतं यांना एकदा जेलमध्ये जाऊच द्या, हा कायदा येऊ द्या. काही दिवस तर आम्ही या मताही झालो होतो की आपण हा कायदा आणावा म्हणून सरकारवर आता दबाव आणा, एकदा यांना आतमध्ये जाऊ द्या, 550-100 जणांना त्यांना कळू द्या, मग जे काही जागृती होईल ते निश्चितच आपल्या कामाची राहणार आहे बरं. जय श्रीराम.
आणखी याचप्रमाणे अत्यंत मार्मिक प्रश्न आणि स्थिती पांडेसाहेबांनी आपल्या समोर ठेवली, त्याचं समर्पक उत्तर सुद्धा श्रीराम महाराजांनी दिलेलं आहे. आणखी कोणाला जर प्रश्न विचारायचा असेल तर आपण विचारू शकता, नाहीतर मग आपल्याला प्रश्नोत्तराचं जे सेशन आहे ते संपलेलं आहे.
की आपण हिंदू धर्म, ख्रिश्चन धर्म ह्या धर्मांच्या बाबतीत जे काही आता आपण चालतोय करतोय आहे, पण ह्या ज्या गोष्टी आपण हे आम्ही राजीवजींच्या भाषणातून किंवा अशा इतर गोष्टींतून असं जाणवलं आम्हाला की हे इंग्रजांची देण आहे की आमच्यात फूट पाडली आहे त्या लोकांनी, आणि ती फूट आतापर्यंत कायम आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी देखील तीच नीती सुरू ठेवलेली आहे. पण मला असं म्हणायचं आहे की या देशात जे हिंदू आहे, ख्रिश्चन आहे, इस्लामी लोक आहे, हे सगळे इथलेच आहेत, जास्तीत जास्त इथलेच कन्व्हर्टेड लोक आहेत, आणि ते इथेच राहणार आहे पिढीजात, हजारो वर्षापासून ते इथे राहत आहे. आणि दुसरी मला असं आणखी म्हणायचं की व्यक्तिगतरित्या साधारण हिंदू किंवा साधारण मुसलमान किंवा साधारण ख्रिश्चन ह्या माणसाला आमच्यामध्ये काही द्वेष नाही आहे. आपली लोक त्यांच्याकडे कामं करतात, त्यांचे आपल्याकडे कामं करतात, परंतु ह्या सगळ्या नीतींमुळे, सरकारच्या नीतीमुळे आपण ती त्यांच्या धर्मातले प्रचार वेगळ्या पद्धतीने करतात, आपण आपल्या प्रचार, आपण धर्म मरून राहिला म्हणून आपण आपल्या दृष्टीने प्रचार करतो आणि आपल्या मनांमध्ये एक दुसऱ्यांबद्दल हा द्वेष निर्माण झालेला आहे. हा द्वेष हा दिवसेंदिवस वाढतो आहे. तर हे ठीक आहे की सरकारने कायदा केलेला आहे म्हणून सरकारच्या विरोधात आपण ते विरोध करायलाच पाहिजे, चुकीचंच आहे ते. पण हे सगळं करत असताना आपण लोकांच्या मनात एक विष पण तयार झालेला आहे, हे त्यांनी केलं निश्चित आहे. पण हे जर असंच सुरू ठेवलं तर देशाचे आणखी तुकडे होण्याची कदाचित शक्यता आहे. तर त्यावर आपण काय करायला पाहिजे, असं वागायला पाहिजे की प्रत्येकाच्या मनातून हे विष कसं निघण्यासाठी सरकार काढत नाही आहे, तर हे आपण काय करू शकतो का? मला असं वाटत नाही की आपण या देशातले मुसलमान आपण हाकलून देऊ शकतो किंवा हाकलून द्यावेत, कारण की इथलेच लोक आहेत. तर ह्या दृष्टीने आपण काही याच्यावर काही प्रकाश टाकू शकता का?
देवम कंसचाणूळ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम. आजच्या सभेमध्ये राजीवजींनी जी माहिती दिली ती माहिती फक्त एका अंगाकरताच आहे असं नव्हे, या देशाला धर्मभावनेपासून पदच्युत करण्याकरता ज्याप्रमाणे तुम्हाला निधर्मी बनवण्याकरता सगळे चंग किंवा प्रयत्न चालू आहेत, त्याचप्रमाणे तुमच्या धार्मिक भावना वळवण्याकरता सुद्धा प्रयत्न चालू आहेत. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर तुमच्या सावनेर विभागातले केंद्रीय मंत्री NKP साळवे, या NKP साळवेंची सख्खी बहीण माता निर्मला देवी, नाव माहितीये तुम्हाला सगळ्यांना, NKP साळवे नाव माहितीये, त्यांची बहीण सख्खी बहीण निर्मला देवी जे बाटवलेले ख्रिश्चन आहे हे तुम्हाला माहिती आहे की ते ख्रिश्चन आहेत, आणि त्यांची ती बहीण निर्मला देवी आपल्या स्वतःला जगदंबा दुर्गा देवी भवानी मानून सहज ध्यान योग शिबिर असं एक स्वतंत्र चालवते. गणपतीपुळे या ठिकाणावर ही बाई वर्षातनं एकदा एक असा कार्यक्रम करते की ज्यामध्ये परदेशातल्या मुली हिंदुस्थानातल्या मुलांशी लग्न लावून द्यायचं आणि हिंदुस्थानातले मुलं हिंदुस्थानातल्या मुलींना परदेशामध्ये पाठवायचं, आणि हा कार्यक्रम दरवर्षी गणपतीपुळे त्या गावाला होत असतो, दरवर्षी होतो. म्हणजे माझ्या परिवारामध्ये मला माहिती असणारे माझ्या बहिणीची मामे नणंद आणि भाऊ दोघांनाही या प्रक्रियेत त्यांनी फसवलेलं आहे आणि दोघांनी अशाच प्रकारे लग्न करून नंतर पहिले त्यांनी व्हायब्रेशन सिस्टम म्हणजे बा या दोघांची व्हायब्रेशन जुळता शब्दाची अजून नक्की व्याख्या मांडता नाही आली. धर्म या शब्दाचा काय अर्थ होतो? धर्म म्हणजे स्वभाव. आता यांनी मनुस्मृतीचा दाखला दिला होता की ज्याच्या अंगामध्ये दशलक्षणो धर्म हा असं मनुस्मृतीकारांनी सांगितलेलं आहे. धर्मपालनाचे मनुष्य धर्माचे मानवीय धर्माचे एकूण 10 लक्षण श्री धृती दया क्षम दम उपरती तितिक्षा हे सगळे दशलक्षणो धर्म हा मानवीय धर्माचे हे 10 लक्षण मनुकारांनी सांगितले हे सत्य आहे, बरोबर आहे. वैशिष्टिकांनी 14 धर्म लक्षण हा असं सांगितलं आहे. 14 म्हणजे प्रेरणा, धर्म म्हणजे प्रेरणा अशी पण धर्माची व्याख्या केली आहे. महाभारतामध्ये 2 ठिकाणी हे वाक्य आलं आहे, धारणा धर्म इत्याहुरो धर्मो धारयते प्रजा. महाभारतामधलं हे वाक्य 2 वेळा महाभारतात जवळजवळ हे आलेलं आहे. अनेक ठिकाणी भगवद्गीतेमध्ये भगवंताचा अवतार धर्मरक्षणाकरता होतो असंही वाक्य आलेलं आहे. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म सदात्मान सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असं अशा प्रकारची वाक्यरचना भगवद्गीतेमध्ये पण आलेली आहे। हिंदुस्थानाला सर्व प्रकारे लुटण्याचा जगामधले सगळे लोक का प्रयत्न करतात याचे माझ्या दृष्टीने दोन तीन स्तर आहे। राजीवजी मी लक्ष आपलं वेदीने या गोष्टीकडे। सर्व जगामध्ये भारत देश हा असा देश आहे की ज्या देशामध्ये उद्याचा जो जगाचा दिवस उगवणार आहे त्याला ज्या ज्या द्रव्याची कमी पडणार आहे, ज्या ज्या द्रव्यावर उद्याची लढाई असेल, ते सर्व या भारत देशामध्ये निसर्गाने उपलब्ध करून दिलेले आहेत। जसं खनिज द्रव्य आहे, भूगर्भामध्ये असणारी सगळी वस्तू आहे, कोळसा आहे, इंधन आहे, आणि यानंतर असंही संशोधन जन्माला आलेलं आहे की आता जे आखाती देशांमध्ये पेट्रोल डिझेलचे साठे आहेत ते येत्या 50 वर्षात संपले की त्याचा जो दुसरा भूगर्भ स्त्रोत आहे तो भारत देशाच्या मध्यापर्यंत असणार आहे। कारण भागवताच्या पंचमस्कंदामध्ये, श्रीमद भागवत त्या पंचमस्कंदामध्ये जो भुवनकोश वर्णन आहे त्या भुवनकोश वर्णनामध्ये कर्मपृष्ठाकार भारताचं वर्णन आहे आणि याच्या गर्भामध्ये याच्या रसामध्ये संपूर्ण जगाला पालन करण्याची सगळी शक्ती उपलब्ध आहे अशा प्रकारच्या सांकेतिक शब्दामध्ये सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत। म्हणजे याचा दुसरा अर्थ असा आहे की उद्या जेव्हा या कारण सगळं हिंदुस्थान आणि जग याच्यात काय फरक आहे असं सांगितलंय भागवताच्याच पंचमस्कंदामध्ये हा विषय आलाय। ते असं म्हणतात शुक महाराज राजा परीक्षिताला की हिंदुस्थान हा एकमेवा द्वितीय कर्मलोक आहे आणि या व्यतिरिक्तचं जे जग आहे उरलेलं आर्यावर्त सोडून उरलेलं ही सगळी भोगभूमी आहे। हा पहिला मुद्दा एक क्रमांक। दोन, संस्कृतीची जी स्थापना आहे जगाच्या पाठीवर ती फक्त दोनच शब्दात वाटल्या गेली आहे, एक दोहन संस्कृती, एक शोषण संस्कृती। आपल्या या जमिनीला आपण नाव दिलंय पृथ्वी, हे नाव ज्याच्या मुळे दिलेलं आहे त्याचं नाव आहे राजा पृथू। या पृथ्वीने जी संस्कृती जन्माला घातली ती आहे दोहन संस्कृती। म्हणजे दोन गायीचे चार स्तनांपैकी दोन स्तन मनुष्याने घ्यावे आणि दोन स्तन त्या बाळाकरता पिल्याकरता किंवा वासराकरता सोडून घ्यावे। फक्त दोन स्तनांचं दूध काढण्याचा मनुष्याला हक्क आहे, चार स्तनांचं दूध काढण्याचा हक्क नाही। ही झाली दोहन संस्कृती, ही भारतीय संस्कृती आहे। आणि या व्यतिरिक्त जगात जी दुसरी संस्कृती जन्माला आली तिचं नाव आहे शोषण संस्कृती। त्याच्यामुळे भारत हा देश कर्मलोक आहे म्हणून इथल्या लोकांची जी आयडियोलॉजी आहे, इथल्या लोकांची जी विचारधारा आहे, जसं हे म्हणतात की भारत फार हळूहळूचं राष्ट्र आहे धीरे धीरे, याचं कारण आहे की इथे शोषण संस्कृतीला स्थान नाही आहे। जीवनमान पद्धती, सामाजिक संरचना, समाजाची संरचनाच अशा प्रकारची आहे, इथे शोषण संस्कृतीला स्थानच नाही। आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा एखादी समस्या निर्माण होते ते जिथपर्यंत आंदोलनाचं पूर्ण रूप घेत नाही तिथपर्यंत ते सगळं टप्प्याटप्प्याने सहन केला जातो आणि ज्यावेळेला त्याचं आंदोलनाचं रूप होतं तेव्हा सगळं एकदम भडकलं जातं आणि भडकल्यानंतर ते एक इप्सित सिद्ध झालं की लागलीच पुन्हा सगळे आपापल्या जागेवर चालले जातात, कोणाला गरज नाही पडत। त्याचं श्रेय लाटणे, त्याची खुर्ची लाटणे, त्याचं अस्तित्व मिळवणे, त्याच्यात कोणी एखादा राजा बनवून बसणे ही प्रक्रिया हिंदू मानसामध्ये नाही आहे। हिंदू माणसाचं काम आहे हे एवढं करून दिलं बस, रामराम तुमचं आमचं जमलं, तुम्ही तुमच्या घरी आम्ही आमच्या घरी, आता आम्हाला याच्यापेक्षा जास्त याच्यामध्ये खटाटोप करायच्या पेक्षा। ही मानसिकता जी आहे ही इथली जीवनशैली आहे। बेसिक प्लॅटफॉर्म हिंदुस्थानच्या समाजाचा असा आहे। यानंतर मला जो प्रश्न विचारण्यात आला होता त्याच्यामध्ये असं सांगितलंय की ही जी मंडळी बाकीची आहे मुसलमान आणि ख्रिश्चन ते हिंदुस्थानात राहणारच आहे, त्यांच्याशी आमचं मैत्रीचं सौहार्दतेचं वातावरण असायला पाहिजे, त्यांच्याशी काही आमचं युद्ध नाही आहे, सगळं युद्ध राजकीय स्तरावर किंवा बौद्धिक स्तरावर किंवा शोषणाच्या स्तरावर आहे, या मुद्द्याकडे येण्याच्या पूर्वी मी दोन मत आधी सांगेन. मुसलमान आणि ख्रिश्चन ही त्यांच्या पूर्वजांची लढाईतली हार आहे. आमच्या हिंदुस्थानात जर महाराष्ट्रामध्ये कोणी एखाद्या महानगरपालिकेने एक जाहिरात काढली की आम्हाला महाराष्ट्रीयन भंगी पाहिजे, जाहिरात काढली समजा की आम्हाला महाराष्ट्रीयन भंगी, पगार 1 लाख रुपये, काय पगार देऊ? समजा मी महापौर झालो आणि एक जाहिरात काढली की आम्हाला महाराष्ट्रीयन भंगी पाहिजे, पगार 1 लाख रुपये, एकही माणूस मिळणार नाही, कारण महाराष्ट्रात भंगी नावाची जातच नाही. का नाही? की जिथे औद्योगिक बिहारमध्ये गेले, उत्तर प्रदेशात गेले, राजस्थान आले, तिकडे भंगी मिळून जातील. महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्ही म्हटलं की आम्हाला भंगी पाहिजे, मिळणार नाही. का? कारण भंगी नावाची जात महाराष्ट्रात आहेच नाही. ही जात जन्माला कशी आली? जे राजपूत मंडळी आपला हिंदू धर्म सोडायला तयार नाही, मुसलमान व्हायला तयार नाही, त्यांना त्यांच्या जगण्याकरता या लोकांनी त्यांच्या डोक्यावर, आपण घरामध्ये परसाकडे करण्याची, हागण्याची किंवा घरात लॅटरिनची पद्धत मुसलमानांनी आणली. हिंदुस्थानातल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये घरामध्ये संडास हा प्रकार कुठे नाहीच आहे. हे मुसलमान हागत होते घरामध्ये बाटल्यांमध्ये, मग त्यांचे जे डब्बे भरत होते ते डब्बे या लोकांनी, बटिक बनलेल्या, गुलाम बनलेल्या या लोकांनी आपल्या डोक्यावर घ्यायचे आणि गावाच्या बाहेर जाऊन फेकून यायचे. हे त्यांनी आपला धर्म नाही सोडला, आपला हिंदू भलाईचे भंगी बनायला तयार झाले, भलाई त्यांनी आपला राजपूत धर्म त्याग केला, भलाईचे भंगी बनले, पण त्यांनी हिंदू धर्म नाही सोडला. जेव्हा की ते खानदानी राजपूत आहेत, हे जे एक सत्य आहे. आज जे हिंदुस्थानामध्ये ख्रिश्चन आहे, मुसलमान आहे, यांच्या बापदाद्यांनी धर्म सोडला, म्हणूनच आज ते मुसलमान किंवा ख्रिश्चन आहे. आता चूक त्यांच्या बापदाद्यांनी केली ती त्यांनी का म्हणून तशीची तशी रिपीट करावी? त्यांना जर आज लक्षात आलं की आम्ही पूर्वापार हिंदू आहे, आज प्रत्येक मुसलमानाला माहिती आहे आपण पूर्वीचे कोण आहे, आज प्रत्येक ख्रिश्चनला माहिती आहे आपण पूर्वीचे कोण आहे. नाही असं तुम्ही म्हणू नाही शकत. आपल्याकडे राजस्थानामध्ये आता या बघाशी दोन मुली येऊन गेल्या पाठक म्हणून पुण्याच्या, त्यांच्याबरोबर तुमच्या राजस्थानच्या हायकोर्टाच्या बेंच ज्या मॅडम आहेत डॉक्टर कमल दत्त, त्यांच्या पूर्वजांनी राजस्थानामध्ये प्राचीन नुसत्या जातीवर्ण व्यवस्थेवर ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यात अति प्राचीन म्हणजे यांच्या पणजोबाच्या आजोबांनी, इतके जुने ते ग्रंथ, अगदी जुने, अगदी जीर्ण ग्रंथ त्यांनी मला अभ्यासाला दिले वर्णव्यवस्थेवर. त्या माणसाने संपूर्ण आग्र्यापर्यंतचा उत्तर हिंदुस्थानाचा परिसर फिरून त्या काळामध्ये कोणत्या जातीतले, कोणत्या जिल्ह्यातले, कोणत्या गावातले किती लोक ख्रिश्चन झाले, किती लोक मुसलमान झाले, ते कोणकोणत्या जातीचे आहेत याची लिस्ट आहे. हे माझ्याजवळ उपलब्ध आहे नागपूरमध्ये ते ग्रंथ, त्यांनी पूर्ण अभ्यास केलाय त्याचा. मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की प्रत्येक मुसलमानाला हे माहिती आहे मी पूर्वीचा कोण आहे. आता उदाहरणच सांगायचं झालं तर तुम्हाला म्हणून एक थोडी माहिती म्हणून सांगतो. राजपुतान्यापासून चंद्रपूर पर्यंत, कुठे राजपुताना, तिथपासून चंद्रपूर पर्यंतचा मधला जो सगळा पट्टा आहे पूर्ण, हा सगळा पट्टा कोणते लोक राज्य करत होते सांगा बघू. राजस्थानच्या वरच्या पट्ट्या, राजस्थानच्या सुरुवातीपासून चंद्रपूर पर्यंत कोण लोक राज्य करत होते सांगा की. नागपूरचा राजा कोण होता? चला 16 पिच्छा. हा सगळा कोणता भाग आहे? मग राज्यव्यवस्था कोणाची आहे? गोंडांची. आज गोंड लोक किती आहेत मला सांगा, कुठे गेले सगळे गोंड? जर कुठे राजपुतान, राजस्थानच्या एका कॉर्नर पासून तुमच्या चंद्रपूर पर्यंत, नागपूरचा राजा गोंड, चंद्रपूरचा राजा गोंड, इथपासून तर वरपर्यंत अख्खा मधला पट्टा, हिंदुस्थानाचा पूर्ण मधला भाग गोंडांचा राज्य, हे सगळे गोंड गायब कुठे झाले? हे सगळे शहा बनले, हे सगळे मुसलमान बनले. एकूण एक या सगळ्यांना माहिती आहे आपण पूर्वज कोण आहे, इच एन एव्हरीबडी. राजस्थानच्या प्रत्येक मुसलमानाला माहिती आहे आपण पूर्वीचे कोण आहे, उत्तर हिंदुस्थानातल्या उत्तर प्रदेशातल्या सगळ्या मुसलमानांना माहिती आहे आपले कोण आहे, नवे महाराष्ट्रातल्या मुसलमानांना माहिती आहे आपण पूर्वीचे कोण आहे. हे धर्म परिवर्तित आहे. जर यांना यांची अक्कल यांच्या यांच्या अंगामध्ये जर आपल्या पूर्वजांचं रक्त आहे आणि ते आवाहित केल्यानंतर जर ते आपणआप जर या प्रवाहामध्ये सामील होत असतील तर आमची ना नाही, पण आम्ही आपणहून त्यांना हात देऊन या आम्ही तुम्हाला वाचवतो असं म्हणणार नाही. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन आम्ही असं नाही म्हणणार की आम्ही तुम्हाला सौहार्दाने हात देतो या या तुम्ही मुसलमान झाले तरी काय झाले तुम्ही माणूस आहे या या नाही म्हणणार. तुमच्या पूर्वजांनी चूक केली ती जर तुम्ही पुन्हा रिपीट करू इच्छित असाल आणि आम्ही मुसलमान आहो आणि आम्ही या देशातले परदेशी युरोपियन मंडळींनी इंग्रजांनी हा देश सोडताना 14 ऑगस्टच्या पूर्वीची जी घोषणा केली आहे त्यात सगळ्यात पहिले 14 ऑगस्टला मुसलमानांना आपलं स्वातंत्र्य दिलं, 15 तारखेला आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं. देताना काय वाक्य वापरलं की आम्ही हा हिंदुस्थान मुसलमानांकडनं पहिले घेतला, आम्ही ज्यावेळा इथे आलो तेव्हा इथलं राज्य कर्तृत्व मुसलमानांचं होतं, हा देश मुसलमानांचा आम्ही मुसलमानांकडनं घेतला, आम्हाला काही या हिंदूंशी घेणं देणं नाही. मुसलमानांच्या वर्ग रचनेनुसार किंवा त्यांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना त्यांचा प्रांत देऊ, उरलेला प्रांत हा यांनी घ्यावा. बेसिक त्याच्यातला मुद्दा काय आहे, मुसलमानांच्या अंगी स्वतंत्र राष्ट्र दिल्यानंतरही जेते पण या हिंदुस्थानाचा राजा त्यावेळेला मुसलमान होता, मुसलमान प्रधान आहे ही भावना मुसलमानांच्या अंगामध्ये कायम करून ठेवली आहे आणि ही बीज जिथपर्यंत त्यांच्या डोक्यात आहे की आम्ही हिंदुस्थानचे जेते आहोत तिथपर्यंत ते बटीक जरी झाले तरी ते आपल्याला बटीक समजलं तर मान खाली घालावी लागते. आम्ही बाटलेल्या म्हटलं मान खाली घालतील पण ते हे नाही म्हणत आम्ही बटीक आहे, ते म्हणतात आम्ही हिंदुस्थानचे जेते आहोत. जिथपर्यंत ते जेते म्हणतील आणि त्यांच्या डोक्यामध्ये त्यांनी घालून दिलेले संस्कार राहतील तिथपर्यंत ते तुमच्या आमच्याशी एक होऊ शकत नाही. दुसरं, हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यावर अल्पसंख्याकांचा स्वतंत्र आयोग बसून त्यांच्या सगळ्या जर कथा कीर्तन जर आमच्या पैशाच्या भरोशावर भागवले जात असतील आणि त्यामुळे जर त्यांना आपलं स्वतंत्र अस्तित्व ठेवायची इच्छा होत असेल आणि ते अस्तित्व जर हिंदुस्थानाच्या संस्कृतीला मारक आणि घातक असेल तर कोणत्या तत्वज्ञानाच्या आधारावर आम्ही त्यांना आपले म्हणावे. माझा मूळ मुद्दा एवढाच आहे. बेसिकली मला हीच गोष्ट म्हणायची, हिंदू आणि मुसलमान हे जर दोघं बंधू बंधू म्हटले तर यांची आई एक का बाप एक हिंदू मुसलमानाचा हा प्रश्न विचारणं शिल्लक राहील. त्याच्यामुळे तुम्ही जे म्हणतात ते शक्य नाही. हे युद्ध असंच अशा पद्धतीचंच चालू राहील. गांधींनी आपल्या जागेवर प्रयत्न केला पण गांधीच्या प्रयत्नामध्ये गांधी हिंदूंकडनं नाही मारल्या गेला, मुसलमानांचा पक्ष गांधीने घेतला म्हणून गांधीला आपला जीव द्यावा लागला. जर गांधींनी गांधी हिंदूंकरता नाही मेला, गांधी मुसलमानांकरता मरण पावला. हे सत्य सगळ्यात पाहिलं. मिस्टरजींना करत त्याची शेपूट फिरून जर दळून हे फिरले नसते तर गांधीला मरायचं कारण नव्हतं. सगळ्या आजही गांधीला महात्मा गांधी म्हणून पूज्य मानणारी जमात हिंदूच आहे, मुसलमान नाही आहे. नेहरूंनी म्हटलं की राष्ट्रपिता खरा हा पाकिस्तानचा असायला पाहिजे, तुम्ही याच्या अस्थिकलश स्थानात फिरवा, तर मिस्टर जिन्ना काय उत्तर देऊन गेले नेहरूंना की नाही तुमचा राष्ट्रपिता याच्या याची हाडं तुमच्याच भागात फिरवा, आमच्या पाकिस्तानात याची हाडंही आणण्याची आवश्यकता नाही. बरोबर आहे ना. नेहरू याच्याकरता ही ती जात आहे हे त्यांचे पेरून ठेवलेला हा जो मूलभूत संस्कार त्यांच्यात पेरून ठेवलेला आहे. त्यामुळे हे जे तुम्ही म्हणता हे उपद्व्यापाचे प्रयोग आज तागायत अनेक लोकांनी करून पाहिले आणि कोणाचेही प्रयोग यशस्वी नाही झालेत. अगदी या प्रयोगात सापडणारी आत्ताची वर्तमान काळातली संस्था म्हणजे रामकृष्ण मिशन मठ विवेकानंदांचं, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की आम्हाला रामकृष्ण परमहंसांनी सांगितलेलं आहे की रामकृष्ण परमहंसांनी आपल्या साधनेमध्ये हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रिश्चन धर्म हे सगळे एक स्वरूपाचे आहे आणि आम्ही रामकृष्ण मिशन हा निधर्म शासनवादी आहे, आम्हाला सर्व धर्म समान आहे, आम्ही या भानगडीत पडत नाही आणि आम्हाला सर्टिफिकेट द्या. बरोबर आहे ना. हो की नाही. आलंय ना असं. मग तात्पर्य हे आहे की तुम्ही जे म्हणता ते शक्य नाही. क्रमांक 2, की हिंदुस्थान हा उद्याचा भरण पोषण करणं, कारण भारत या शब्दाचा अर्थच भरण पोषण करणे आहे. जो सगळ्यांचं भरण पोषण करतो त्याचंच नाव भारत. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की यानंतर एक असा दिवस उगवणार आहे की सगळ्या जगाला पोट भराय करता हिंदुस्थान या भूमीची आवश्यकता पडणार आहे. म्हणून से मुसलमान धर्म किंवा अन्य जे कोणी आहेत हे सगळे या ठिकाणावर येऊन या ठिकाणाचं शोषण या करता करतात, कारण त्यांना आपल्या अस्तित्वाकरता या भूमीशिवाय पर्याय नाही. कारण ही भूमी सर्वार्थाने सगळ्या प्रकारच्या वातावरणाला सहन करण्याची क्षमता ठेवणारी भूमी आहे. याच फक्त भूमीचं वैशिष्ट्य आहे सगळ्या जगाच्या नकाशावर, फक्त एवढ्याच भूमीचं हे वैशिष्ट्य आहे. या ठिकाणी जगातले जितके प्रकारचे वातावरण आहेत सगळे वातावरण या देशाला आहे, सगळ्या प्रकारच्या लोकांना आपलं अस्तित्व टिकवता येण्यासारखं आहे. म्हणून आणि उद्या या जमिनीच्या पोटात जी आहे, जी अजून तुमच्या संशोधनात नाही आहे, इतकं अमौलिक धन हिच्या पोटात आहे की उद्या तोच जगत जेता असेल जो हिंदुस्थानावर राज्य करणार असेल. जसं आता राजीवजींनी सांगितलं की अमेरिकेमध्ये काही भिकारी नाही आहेत, की त्या लोकांना तिथला पैसा इथे आणावा लागतो आणि इथल्या लोकांना तो पैसा दिला जातो. तिथला येणाराचा किंवा अन्य अनेक राष्ट्र आहेत, नुसते अमेरिकाचं नाही, असे अनेक राष्ट्र आहेत की ज्यांचे येणारे इथे येणारे पैसे तुम्हाला पुरवले जातात. त्याचे कितीतरी प्रकार, शेतीविषयक सगळीकडे ऊस पेरून संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र येत्या 25 वर्षामध्ये पाणी फिरवून फिरवून मिठाचा प्रदेश बनवतील हे लोक. मीठ सगळे मीठ फुटेल जमिनीमधून, पाणी फिरून फिरून जमीन खा, मग पुढे कुठे जातील? तुमच्या तुमचं जे पूर्वीचं जे हिंदुस्थानी बीज अन्नधान्य आहे ते नाश करून त्यांच्या बीजांच्या भरोशावर तुम्ही राहाल. देशातल्या गायींचं बैलांच्या वळूचं वीर्य त्याच्यापासून असणारी जी जाती प्रजाती जन्माला घालायची त्याच्याऐवजी पाश्चिमात्य वळूंचं आणलेलं कृत्रिम रेतन केंद्र हिंदुस्थानात सुरू करायचं आणि देशी गायीला पाश्चिमात्य कृत्रिम रेतनामधनं गर्भधारणा द्यायची आणि त्यांच्या गायी जन्माला घालायच्या जिथे की तुम्ही आपल्या गायीला माता मानता, त्यांच्या तिकडे तर जनावरच मानतात, ते त्यांची खायची वस्तू आहे. पण जिथे तुम्ही तुमच्या गायीला जिथे तुम्ही 33 कोटी देवतांचं आगर मानता, तिच्या गर्भधारणेकरता पाश्चिमात्यांचं कृत्रिम रेतन केंद्रात तुमची गाय आपल्या घरनं घेऊन जातात खेड्यामध्ये सगळीकडे, कारण की 20 लिटर 25 लिटर दूध देते म्हणून. मग तुमची आई कुठे गेली केव्हा? माझा प्रश्न कळला का तुम्हाला? म्हणजे तुमच्यामधला जो धर्माभिमान आहे तो सर्वार्थाने नष्ट केला. आणि जसं याप्रमाणे धर्मस्य मूलम् अर्थः असं जे वाक्य आहे आमच्या भागवतामध्ये, याचा एक मोठा सुंदर गोष्ट सांगितला की अर्थम अनर्थम भावय नित्यम. अध्यात्माचा मूळ रस काय आहे, पृष्ठभूमी काय, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम. भागवतामध्ये असं वाक्य आलंय की निर्धनो तेपी धन्य. आमचे श्रीराम महाराजही भागवत वाचतात. भागवतामध्ये असं वाक्यालंय की सगळ्यात श्रीमंत कोण असा प्रश्न विचारला तर भागवतकाराने उत्तर दिलाय की निर्धनो तेपी धन्य, जे सगळ्यात जास्त भिकारी आहेत बिन पैशाचे आहेत त्यांच्या इतका मोठा कोणी सम्राट नाही. ही आमची भावना आहे. तुमच्या घरामध्ये देव आहेत, संतांचे फोटो आहेत, छत्रपती शिवाजीचा पण फोटो आहे, पण कोणी तो देवघरात लावला नाही, तो दिवाणखान्यात लावला, बैठकमध्ये लावला, हॉलमध्ये लावला. आपल्या छत्रपती धर्माला वाचवणा राजा झाला त्याला कोणी असा त्याचा एक फोटो हळद कुंकू गंधक्षत हार फुलंय त्याच्या नावाचं व्रत कोणी नाही करत. पण गजानन महाराज ज्याच्या अंगावर स्वतःचे कपडे नाही, नंगा दळंग आहे, त्याला मात्र देवघरामध्ये येऊन बसून हार घालतात. त्याच्या पुढे नमस्कार का, मला पोरगा दे, मला पैसे दे, मला धन दे, माझी तब्येत बरी कर. कळलं का तुम्हाला? हिंदुस्थान हा भिक्षुकांचा उपासक देश आहे, निर्धनांचा उपासक देश आहे. ही या संस्कृतीची मूळ पृष्ठभूमिका आहे. आमची भूमिकाच आहे. म्हणजे कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम शंकराचार्य फुकट थोडी म्हणतात कधी, पण त्याचा ते प्रसन्न पडले तर हातामध्ये चिमटा घेऊन राजाच्या सुद्धा पोराचं मुंडकं खतम करायला कमी नाही करत, आणि म्हणून ते वडपणे नंगे से खुदा डरे, ही म्हण कशी पडली? नंगे से खुदा डरे ऐकलं, म्हण ऐकलं ना, हिंदी भाषेमध्ये एक म्हण आहे नंगो से खुदा डरे, हे जे नंगे साधू आहे चिमटेवाले. औरंगजेबाचं कार्ट जेव्हा राम मंदिराचं पाडापाडीला युद्ध करायला गेलं तेव्हा यांनी मिळून त्याचा वध केला. हे सगळे जेवढे चिमटेवाले साधू होते सगळे उरावर जाऊन बसले, त्यांच्या पुरी फौज अयोध्येतनं परत पलटवली. नेमकी तेव्हापासून म्हण पडली हिंदी भाषेत नंगे से खुदा डरे म्हणून. तात्पर्य हे आहे की ह्यांना जे पेटवायचं आहे हे मुळामध्ये शांतता प्रिय आहे. मुसलमान आणि ख्रिश्चन हे तुमच्या तोंडी वाक्य आलं बिकॉज यू आर हिंदू, म्हणून तुम्ही हा प्रश्न विचारला. हा कुठल्या मस्जिदीमधला मुसलमान प्रश्न नाही विचारणार, हा कुठल्या चर्चमधला ख्रिश्चन प्रश्न नाही विचारणार की आमचं कसं होईल. उलट त्यांनी म्हणायला पाहिजे आम्ही अल्पसंख्याक आहे, एवढ्या मोठ्या हिंदूंबरोबर आम्हाला राहायचं आहे सर, आम्ही कसं करावं, आमचं कसं व्हावं, आम्हाला यांच्यापासून भीती नाही आहे. ते 4% तरी शिरजोर आहे, डोक्यावर आहेत, आणि तुम्ही 90% आहे तर तुम्हीच चिंता करता यांच्यावर आम्हाला राहायचं आहे, आम्ही त्यांना सामावून घेतो काय गरज तुम्हाला एवढा उपद्व्याप उठा ठेव करायची, त्यांची चिंता काय म्हणून करावी तुम्ही. तुम्ही तुमची चिंता करा ना की तुमचा मुलगा हरेल आणि तुमची मुलगी हिंदू पुराशीच लग्न करेल का नाही करेल याची चिंता करा. याची चिंता नका करू की त्यांचं काय होईल, ते त्यांचं पाहून घेतील काय करायचं. त्यांना जर वाटलं की आमची धारा प्रभावी झाली तर ते आपलं सर्वस्व त्याग करून जगण्याकरता तुमच्या प्रवाहात सामील होतील. तुम्हाला त्यांची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही आहे, हे प्रधान कार्य आहे. दुसरं मंदिर अधिग्रहण नियम कायद्याच्या विषयी जी काय आता चर्चा झाली आपली या सगळ्यांच्या चर्चेमध्ये, हा जो मूल मुद्दा आहे की भारत देशाचं शोषण करणारी शोषण संस्कृती ही आता हिंदुस्थानी लोकांचा स्वभाव बनत चालली आहे. आमच्या भागवतामध्ये एक मोठं सुंदर वाक्यरचना आली आहे चर्चेमध्ये दशमस्कंधामध्ये. विचारलं की जेव्हा रजोगुणी माणूस वाईट होतो तेव्हा तो फार कमी कष्टप्रद असतो. एक जेव्हा एक ज्याचा मूलभूत स्वभावच गुंडागिर्दीचा आहे, गुंड प्रवृत्तीचा आहे, तो माणूस जर अजून गुंड झाला, जास्त आहे त्या स्तरापेक्षा जास्त वाढला तरी जास्त हार्मफुल नाही आहे. पण एखादा सात्विक माणूस जर नाडल्या गेला आणि तो जर गुंडा झाला तर तो इतका मोठा गुंडा होतो की अस्सल जातीवंत 100 गुंड एकीकडे आणि हा पेटून उठलेला गुंड एकीकडे. ही इथली सायकोलॉजी आहे की कृपया विसरता कामा नये. आमच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी 6 इतिहासाची सोनेरी पानं नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे, त्याच्यामध्ये काला पहाडची कथा लिहिली आहे. बिहारमधला ब्राह्मण दशग्रंथी ब्राह्मण यवनांच्या अत्याचारानंतर गायीचं मांस त्याच्या तोंडात घालून त्याला बाटवण्यात आलं आणि बाटलेला हा गाला पहाड जेव्हा हिंदूंच्या सभेमध्ये सांगितलं की मी अत्याचाराने पीडित असताना मला गोमांस तोंडात टाकून बाटवला तर मला पुन्हा आपल्या धर्मात घ्या. आपल्या धर्मातल्या लोकांनी सांगितलं असं तर कुठे आमच्याजवळ प्राविधानच नाही आहे, कारण आमच्या धर्मशास्त्र असा काही प्रकार कुठे नाही आहे. धर्म परिवर्तन ही संकल्पनाच खोपडीत नाही आमच्या पूर्वीपासून, कधी आम्ही हा प्रयोग केलाच नाही. हा शोषणाचा प्रयोग आहे, आम्हाला करायची गरजच नव्हती पडली. तो त्यांनी लाख प्रयत्न केल्यावरही जेव्हा त्याला मुसलमानाचा हिंदू नाही बाटवलेला हिंदू नाही करून घेता आला, या काला पहाडी अख्खा बिहार पाडाक्रांत केला. त्यावेळेला तात्कालिक स्थितीमध्ये कमीत कमी 20-26% हिंदू मूल ब्राह्मण जातीचे सगळेचे सगळे मुसलमान करून टाकले, सगळे पाठवून टाकले. सूड ज्याप्रमाणे एड्सच्या बाबतीत आहे ना, एड्सचे लोक जेव्हा पेशंट बनतात आणि त्यांच्या सूडच्या भावनेने पेटतात त्या चांगल्या माणसाला पकडतात, मागणं एड्सचे इंजेक्शन टोचतात, त्याच्यावर लिहितात वेलकम टू एड्स फॅमिली. आहे ना आता आपल्या परवाकडे आता बर्डीवर परवाच 15 दिवसापूर्वी एक म्हातारा एका मुलीला लिफ्ट मागितली, तिच्या स्कूटीवर मागे बसला, मागणं तिला इंजेक्शन टोचलं आणि त्याच्यावर मागे एक कागद चिपकवून दिला हे एड्स परिवारामध्ये तुझे स्वागत आहे म्हणून. ही जी प्रक्रिया आहे, ही जी सूड भूमिका आहे, ही सूड भूमिकाच आमच्या इकडले जेव्हा हे राजकर्ते त्यांना मदत करतील तेव्हा यांची सूड भूमिका कधीच नष्ट नाही होणार. मी तो लोकशाही विरोधकच प्राणी आहे, वादच नाही. मी भारतीय संविधानचा कट्टर दुश्मन आहे, वादच नाही. मला हे दोन्ही वाक्य बिलकुल पटेनाशी आहेत आणि देशाच्या सगळ्या समस्येचं धन या दोनच ठिकाणी आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. या दोघांमध्ये जिथपर्यंत परिवर्तनाची अपेक्षा नाही, जिथपर्यंत होणे नाही, भ्रष्टाचार ही त्याची जननी आहे. जिथे जिथे लोकशाही आहे सगळ्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार ही प्रक्रिया आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जे आता म्हणाले की मुसलमान आणि ख्रिश्चनांना आपल्या मूल धारा प्रवाहात घेण्याकरता आम्ही काय करायला पाहिजे, याचं एकच उत्तर आहे की आम्हीच इतकं मोठं बनायला पाहिजे आणि त्यांच्या येण्याचा आणि जाण्याचा कधी विचार नाही करायला पाहिजे. जेव्हा एखादा वृक्ष आपणहून मोठा बनतो तेव्हा तो अनेकांच्या सावलीचं कारण बनतो. कोण जेव्हा तो आपल्या सावलीमध्ये चार वृक्ष घ्यायचा प्रयत्न करतो तेव्हा स्वतःही मोठा नाही होत आणि इतर वृक्षांनी पनपू नाही देत आणि खुद दस्तूर स्वतःही पनपत नाही. म्हणून तुम्ही जे आहात पहिले आपल्या स्वतःला इतकं विकसित करा की तुम्ही इतरांना सावली देऊ शकाल. त्यांचा विचार करण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही. त्यांचे विचार करायला आपले राज्यकर्ते जेवढे आहेत तेवढेच पुष्कळ झालेत. राज्यकर्त्यांची ती जबाबदारी आपली जबाबदारी नव्हे. आम्ही म्हणतो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम. कुठल्या तरी मुसलमानी भजनात असं सांगितलं आहे की अल्लाह आणि राम एक आहे. तुमच्या भजनात आहे, तुम्ही आपल्या मंदिरामध्ये बसून जात अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको संमती दे भगवान, हे तुमचा विषय आहे, त्यांचा विषय ना. मूळ विषय आजच्या सभेचा जो आहे त्यामध्ये सगळ्यात मोठी चिंता आमचा धर्म आणि आमचं राष्ट्र. अन्यांच्या ठिकाणी अन्य जगामध्ये धर्म आणि राष्ट्र ही संकल्पना वेगळी वेगळी आहे. धर्म स्वतंत्र, राष्ट्र स्वतंत्र. हिंदुस्थानामध्ये हिंदू म्हणजे हिंदुस्थानामधला धर्म आणि राष्ट्र म्हणजे देशभक्ती म्हणजे राष्ट्रभक्ती आणि धर्मभक्ती स्वतंत्र विषय नाही. म्हणून या विषयाचे सगळ्यात पहिले लक्षात आमच्याकडे आमचं राष्ट्रगीत काय आहे, वैदिक राष्ट्रगीत काय आहे. आता झालं तर जनगणमन हरि नायक जय हे काही तुमचं राष्ट्रगीत नव्हे, हे तर पंचमजॉर बादशहाचं स्वागत गीत आहे. राष्ट्रगीत काय आहे कोणाला माहिती आहे? क्या बात करे, वंदे मातरम सुद्धा आनंद मठात ना आलाय, राष्ट्रगीत नव्हे. राष्ट्रगीत काय आहे? हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय जंतदेवा हस्तानी धर्माणी प्रथमान्यासन एहनागम महिमानस चंत चत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा. ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम. हे सगळं आमचं राष्ट्रगीत आहे. हे राष्ट्रगीत आहे आपलं. पूर्ण पृथ्वीची कल्पना याच्यामध्ये. स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयम समुद्र पर्यंताया ईस्या सार्वभौम सार्वाशांतादा पदार्धात प्रथव्ये समुद्र पर्यंताया एकराडिति तदपेश श्लोको भिगितो मरुत परिवेष्टारो मरुतस्यान्म संग्रहे आविक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति. हे राष्ट्रगीत आहे. याच्यामध्ये विराट राष्ट्राची कल्पना आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगायचं उत्तर की जे आमचं जे खरं राष्ट्रगीत आहे जे आज आम्ही मंत्रपुष्पांजली म्हणून देवाला फुलं टाकून नमस्कार कराय करता वापरतो, इथे आमची राष्ट्रभक्ती सामवेदामध्ये काय आहे, अथर्व वेदामध्ये काय आहे? संपूर्ण अथर्ववेद राष्ट्रभक्तीने प्रेरित आहे. मणी मंत्र औषध राष्ट्रगीत संपूर्ण स्फूट समाज व्यवस्था समाज कल्याण समाज स्वास्थ्य समाज बल संवर्धन या सगळ्याशी संबंधित आहे. त्याच्यामुळे असा काही आमच्यात आम्ही सगळ्याचे धनी आहोत. जगात जेवढं ज्ञान आहे त्या सगळ्या ज्ञानाचा हिंदुस्थानी धनी आहे, मालक आहे. पण दुर्भाग्य हे आहे की सहानुभूतीच्या आधारावर आम्ही आमचं नतद्रष्टत्व सिद्ध करून घेतलं. छत्रपतींनी मराठी सल्तनत उभी केली, राजा राम राजांनी 2 मिनिटात मातीत घातली. संभाजी राजाला छत्रपती बनू नये याकरता सोयराबाईने अटकोट प्रयत्न केला की शिवाजी महाराजांच्या शवाला अग्निपण लावायचा अधिकार नाही मिळू दिला. बरोबर आहे ना? हिंदुस्थानाचा इतिहास माहिती आहे तुम्हाला, महाराष्ट्राचा कमी. तो तर संभाजी आहे जो पूर्ण फोडून आला, तोडून टाकला आपल्या हाताने, गज तोडून टाकली, तटावर उडी टाकली. तो आहे. जेव्हा आपण पाहिलं नेवा तांब्यांची पोरगी नेवाळकरांची सून झाली आणि झाशीची राणी बनली, तटावरनं उडी टाकते, होळकरांनी मदत केली असती त्यावेळेला, शिंदियांनी मदत केली असती त्यावेळेला, तर कशाला या दुर्भाग्याला तोंड द्यावं लागलं असतं आपल्याला? इतिहासाचे कितीतरी असे दाखले आहेत, म्हणून हे नेहमी लक्षात ठेवा. आम्ही आमच्यात जे सद्गुण आहेत ते जगाचे दुर्गुण आहेत, म्हणून आमचेच आत्यंतिक सद्गुण हाही मोठा दुर्गुण मानावा. काय वाक्य वापरलं मी? आत्यंतिक सद्गुण, खूप जास्त सद्गुणी असणं हाच मोठा दुर्गुण आहे, याच्या इतका मोठा कोणताच दुर्गुण नाही. आमच्याकडे अतिथी प्रेम आहे, अतिथी देवो भव, त्याचा यांनी गैरफायदा घेतला. शरणागताला शरणागताला जीवन दान देणे आमचा सद्गुण आहे, त्याचा मम्मद घोरींनी फायदा घेतला, त्याचा चेंगीज खाननी फायदा घेतला. पाणीपत फुकट हरलं गेलं काय? थोड्या थोड्या काही कारण नसताना हरलं. कारण काय? हेच आहे तात्पर्य. हे आहे बाप, हिंदुस्थानातला माणूस हा सकल सद्गुणाचा पुतळा आहे, पण तो सद्गुणच त्याच्या प्रत्येक वेळा अपयशाचं कारण आहे. आता एक वाक्य बोलल्या गेलं की हिंदुस्थानातला व्यक्ती हा संघटित नाही. संघटन याची आमच्या पूर्वकाळात आम्हाला कधी तशा पद्धतीची गरज भासली नाही. हो का? येऊ द्या ना. मग मूल स्वरूपामध्ये रामाने रावणावर राज्य विजय मिळवला, अयोध्येतनं फक्त दोनच माणसं गेली आहेत, राम लक्ष्मण. भरताने फक्त एक बाण मारलेला आहे. भरताने काय केलं? जो बाण हनुमंताकरता काढला होता तेवढा एकच बाण मारला, आणि त्या एका बाणाने लंकेचं दक्षिण तटाचं बुरुज पाडलं. भरताने पण एक बाण मारलाय नंदीग्राम मधनं, तेवढ्या एका बाणाने दक्षिण तटाचं बुरुज पाडलं लंकेचं. आणि अयोध्येमधनं दोनच नागरिक आहेत, राम आणि लक्ष्मण. आणि लंकेला लंकेच्या कडनं जी असुरक्षितता अयोध्येला आहे ती तिला प्राप्त करून दिली. हे वाक्य मी याकरता सांगितलं की जरी आमच्या महाराजांनी सांगितलं की नागपूरमध्ये 750 कीर्तनकार आहेत आणि त्यापैकी दोनच जण इथे आले आहेत, घाबरायचं कारण नाही. 2 750 पुरून उरतील, कारण 750 × 2 बरोबर जितके कीर्तनकार आहे हे चरितार्थाकरता आहे, पोट भरण्याकरता. जे उरलेले 2 आहेत हे बाकीचे देवभक्त नव्हे, पोटभक्त आहेत. आणि जे चिंताक्रांत आहेत तेच फक्त इथे येऊन पोचले आहेत, त्याच्यामुळे त्याचं चिंता करायचं कारण नाही. आग एकापासून एकाला लागली तरी तेवढीच पुरे आहे, हजारोंना ती आपोआप लागेल. वनाने आमच्या संस्कृतामध्ये सुभाषित आहे, वनाने धावते वन्नी सखा भवती मारुता. ज्या वेळेला एखादी वाट ज्योत दुर्बल असते तेव्हा एक वाऱ्याची झुळूक तिला विझवून टाकते, पण जेव्हा एक चिणगारी नुसते बांबूला बांबू म्हणजे बासाला बासा पटला आणि एक चिणगारी पडली आणि ती चिणगारी जर त्या वनाच्या गवतावर पडली तर अख्खं वन जाळून भस्मसात करते. कळलं का? त्याच्यामुळे आरआर पाटील असो की देशमुख, हे काय साधू भक्त नाही आहेत का? फुकटच्या इंदोरच्या महाराजाच्या मागे विलासराव फिरतो का? काय त्याचं नाव? साईबाबा नाही भैयूजी देशमुख. भैयूजी देशमुख फुकट फिरतो का? दर महिन्याला इंदोरला पडला असतो हा, फुकट नाही फिरत. आर आर पाटील सुद्धा, तुम्ही म्हणाले की त्यांच्या आईच्या गळ्यात माळ, त्याच्या आईच्या गळ्यात माळ ही दूरची गोष्ट आहे, तो स्वतः सुद्धा दत्तभक्त आहे, कारण तो तासगावचा आहे निवासी आणि तासगावच्या जवळ उदुंबर आहे आणि तो दत्त महाराजांचा भक्त आहे. हे काय भक्त नाही आहे का? नाही. हे ज्या खुर्चीत बसले आहे ना त्या खुर्चीचं स्थान अस्थिर आहे 5 वर्षाकरता, आणि पुढच्या 5 वर्षाकरता त्यांना सगळ्या लोकांचे मतं जिंकायचे आहेत आणि त्यांना आपल्या स्वतः, जसे आमचे एक शंकराचार्य होते योगानंद, डॉक्टर कुर्तकोटी शंकराचार्य नाव ऐकलंय का नाही तुम्ही? डॉक्टर कुर्तकोटी शंकराचार्य, जेव्हा यांच्यावर अति अत्याचार झाले शंकर मठावर, तेव्हा यांनी अहंगात मुसलमानाची कफनी घालून आपला जीव वाचवायला नाशिकला आले पळत. नाही माहिती आहे की नाही, कथा माहिती, इतिहास माहिती आहे का नाही? तात्पर्य सांगायचं आहे की आर आर पाटलांनी असो का विलास रावनी, हे जे कपडे पांघरले आहे आणि हे जे अशा प्रकारचं विधेयक आणलंय, या विधेयकाच्या आणण्यामागची त्यांची भूमिका, जिथपर्यंत विरोध प्रगट होत नाही लोकशाहीचं, हेच दुर्भाग्य आहे लोकशाहीचं तुमच्या, की तुमच्या लोकशाहीमध्ये राजा सडकेवर असतो आणि नोकर एसीमध्ये बसला असतो, यालाच तुम्ही लोकशाही म्हणा. मी लोकशाहीची हीच व्याख्या करतो नेहमी. आणि इथे भीक मागितल्याशिवाय, राजानी, राजाच्या हातात भिकेचं कटोर आहे आणि नोकराच्या हातामध्ये दान द्यायची क्षमता आहे, अशी विचित्र भूमिका आमच्या लोकांनी स्वीकारली. आणि आमच्यातल्या अनेक लोकांनी सांगितलं की हे जे काही शासन आहे लोकशाही, हे रामाच्या काळात होतं, महाभारताच्या काळात होतं, आम्ही त्याच्याकरता दाखले दिले, न राजा न राजा सीत न दंडिओ न दंड्या, इतकं उडाणटप्पू, म्हणजे आमच्याच पुराणाचे दाखले आमच्या तोंडावर मारून तुमच्याच ग्रंथामध्ये पुरी सांगितलेलं आहे. ही जी परंपरा आहे मार्क्स मुल्लर साहेबांची, ही परंपरा आजची नाही आहे, हे अति प्राचीन आहे. हा प्रोग्राम फार जुना आहे जो राबवला जाऊन राहिला. हे तर घडोघडी कुठेतरी त्यांची आमची टक्कर होते आणि मग तेवढ्या पुरता ती चिणगारी पडते आणि पुन्हा आम्ही आपले मान खाली घालून देतो जेव्हा ती गोष्ट विझून जाते, कारण आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घ्या, आम्ही बेफिकर आहे त्याच्या बाबतीत. म्हणून तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मला वाटतं माझ्या बोलण्यात मिळालं असेल.
ज्या पक्षाच्या आधारावर किंवा आशेवर कुठेतरी आमच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या संस्कृती रक्षणाच्या, तिथून आज संपूर्ण संत समाज त्या बाबतीत निराश होऊन गेलाय. सगळा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे, गेल्या 5 वर्षात काय घडलं. लोकशाही आपण स्वीकारली आहे, कोणत्या तरी पक्षाचा अंगठा किंवा त्याचा हात धरावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत आता संतांनी किंवा ज्यांना आपण धर्म जागरण करणारा असा कीर्तनकार प्रवचनकार प्रबोधनकारांचा वर्ग म्हणतो, त्यांनी नेमकं आता कोणाचं बोट धरावं किंवा कोणाला त्या ठिकाणी पाठवावं याचा विचार करावा. अशोकजी सुद्धा याच्याकरता मोठे चिंतित आहेत. गेल्या प्रयागच्या बैठकीमध्ये त्यांच्या डोळ्यातून पाणी पडलं. सर्व संतांपुढे त्यांनी म्हणजे आम्ही किसकी आशा करू, ज्यांचं आम्ही समर्थन केलं, आमचे संत फिरले, स्वतः महाराज फिरले महाराष्ट्रामध्ये या विदर्भात. आमच्या वारकरी संघटनेचे 850 कीर्तनकार संपूर्ण विदर्भात त्यावेळेस फिरून त्यांनी यांना बहुमत मिळवून दिलं होतं. तेव्हा आता आम्ही कोणाची आशा करावी, लोकशाही तर स्वीकारली आहे आपण. फक्त अतुलजीने असा प्रयत्न केला होता, मला सांगितलं त्याने की मी व्होटिंग नाकारलं त्यावेळेस. तर असा काही पर्याय आपल्यापुढे आहे का? आज काय करू शकतो आपण? यांचे डोके ठिकाणावर आणण्याकरता सर्व पक्षांचे, कारण आता कोणताही पक्ष आपला राहिलेला नाहीये धर्माचा, धर्माकरता बोलतोय मी. तेव्हा आम्ही आता कोणाची आशा करावी आणि याच्याकरता दुसरा पर्याय आपल्याजवळ काय आहे?
आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर है. ये हम सबको परेशान करता है कि जिन पर हमको बहुत उम्मीद थी, अपेक्षा थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, वो धर्म के विरुद्ध चले गए और उसके लिए वो उत्तर देते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं था, हम सभी पक्षों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे. लेकिन जिन राज्यों में उनका बहुमत है वहां भी वही हाल है जो दूसरे राज्यों में है. तो जो साधु संत समाज है इसको बहुत दुख है, क्योंकि सही बात उनकी ये है कि बहुत मेहनत इन्होंने की थी साधुओं ने संतों ने, तब जाकर बीजेपी 2 सीट से 184 सीट तक पहुंची थी, बहुत मेहनत की है. अब उनको ये दुख है तो अब उनका प्रश्न है कि आशा किस पर करें. तो मेरा एक छोटा सा आपको कहना है वो ये कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश की और उसके लिए मेहनत की, वो तो अच्छा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं को आप जैसे लोगों ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया. हाँ, जो कमजोरी थी वो ये थी कि साधु संतों ने बीजेपी को सत्ता में तो लाया, लेकिन सत्ता में आकर देश चलाने वाले जो लोग थे उनका कोई प्रशिक्षण नहीं किया आपने, उनका कोई शिक्षण नहीं किया. जो उनका शिक्षण प्रशिक्षण किया होता तो वो पाकिस्तान में जाके बोलते कि मोहम्मद अली जिन्ना तो धर्मनिरपेक्ष था, संप्रदाय निरपेक्ष था, सेक्युलर था। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व अध्यक्ष और इस देश का भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी बोले कि मोहम्मद अली जिन्ना तो सेक्युलर था। इसका माने अडवाणी का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। और जसवंत सिंह इस देश के रक्षा मंत्री होते हुए बोले कि अमेरिका का भारत में स्वागत है, कोई भी हवाई अड्डे से अमेरिका तेल भर के उड़ान ले सकता है, तो उनका शिक्षण नहीं हुआ, उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ। तो बीजेपी को पार्टी के रूप में तो ला दिया आपने, लेकिन उनको धर्म क्या है, देश क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसका कोई शिक्षण नहीं दिया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया आपने। तो बंदर तो क्या करने वाला है, उस तरह से काट ही लेगा अपने गले को या आपके गले को काट देगा, वही उन्होंने किया। अब ये गलती हम ना करें, अब क्या करें, अब हम फिर से एक नया अभियान शुरू करें और ये तैयारी के साथ कि हमको शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में भेजना है, जो ये जानते हों कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, हमारे धर्म की दूसरे धर्मों से भिन्नता क्या है, हमारे धर्म से दूसरे के धर्मों में अंतर क्या है, संस्कृतियों में अंतर क्या होता है, सभ्यता का अंतर क्या होता है। ये शिक्षण प्रशिक्षण लेकर जो लोग जाएं विधानसभा लोकसभा में तो इस देश को बदल देंगे और अंत में उन्हीं से इस डेमोक्रेसी को भी बदलवा लेना है। ये डेमोक्रेसी तो नहीं चलने वाली, बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि ये मूर्खता पर आधारित तंत्र है। मूर्ख जो हैं कहीं संसद में बैठ जाएं और कानून बनाएं पूरे देश के लिए, इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है। हमारे देश में हरेक काम करने वाले को कुछ न कुछ न्यूनतम दक्षता की आवश्यकता होती है। अगर कोई मूर्ति बनाना चाहता है तो उसके पास कोई न्यूनतम योग्यता होती है। कोई मंदिर में पुजारी बनना चाहता है उसके पास भी कोई न्यूनतम योग्यता होती है। अगर कोई अध्यापक बनना चाहता है उसके पास भी कोई ना कोई न्यूनतम योग्यता होती है। छोटे से छोटा काम करने वाले को न्यूनतम योग्यता की जरूरत है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप चोर हैं, उचक्के हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, बलात्कारी हैं, आप राष्ट्रपति हो सकते हैं इस देश के। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं चाहिए। वित्त मंत्री बनने के लिए इतनी भी योग्यता नहीं चाहिए जिसको वित्त का ज्ञान हो। फाइनेंस क्या होता है जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान है और आप फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऐसे बहुत फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं मालूम। जो आदमी ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान और किराने की दुकान नहीं चलाई, कॉमर्स मिनिस्टर हो गया इस देश में, वाणिज्य मंत्री। साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है इस देश में, कपिल सिब्बल। जिंदगी भर वकालत की है, लॉ पढ़ाया है और पढ़ा है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गया। तो इस देश में ये मूर्ख लोगों का तंत्र है, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री। तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि चलेगा तो देश का नाश करेगा। चाणक्य का एक सूत्र है बहुत सुंदर, वो ये कहते हैं कि जिस देश में मूर्ख लोग ज्ञानियों पर शासन करने लगे उस देश का तो सर्वनाश निश्चित है। अज्ञानी लोग ज्ञानियों पर बैठकर शासन करने लगे तो देश का सर्वनाश तो निश्चित है। तो इस देश को सर्वनाश से तो बचा नहीं है, तो ये मूर्ख लोगों का जो शासन है डेमोक्रेसी, इसको भी हटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अब इसका चरणबद्ध कुछ काम करें। हम हिंदुस्तान में ऐसे 350-400-500 लोगों को चुने पूरे देश में से, जिनकी न्यूनतम कुछ योग्यता हो। न्यूनतम योग्यता माने वो भारत को जानते हों, भारतीयता क्या है इसे पहचानते हों, धर्म और संस्कृति क्या होती है उन्हें मालूम हो, सभ्यता क्या होती है उन्हें मालूम हो, कम से कम धर्म के 10 लक्षण उन्हें मालूम हो। और भारतीयता, धर्म और संस्कृति, सभ्यता ये जानने वाले लोगों की न्यूनतम योग्यता। और दूसरी योग्यता लंगोट से पक्के हों और जेब से पक्के हों, माने स्खलनशील ना हो, क्योंकि स्खलित लोग जब ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो बंटाधार हो जाता है। ये आप इस देश में कई बार चाहें तो देख सकते हैं। तो स्खलनशील ना हो, लंगोट से पक्के हों, जेब से पक्के हों। जेब से पक्के माने थोड़े से पैसे पर फिसलने वाले ना हो, नहीं तो दुनिया भर में बहुत देशों के पास पैसा है, वो पैसा डालेंगे वो देश को ही बेच देंगे। तो जेब और लंगोट से पक्के हों, धर्म संस्कृति भारतीयता को समझते हों, ऐसे कुछ लोगों को हम चुने, और जिनकी करनी कथनी एक हो। हमारे यहां महात्मा की परिभाषा है, जैसा बोले वैसा धारण करे खुद, तो कम से कम महान आत्माएं हों वो। तो ऐसे लोगों को हम चुन लें, 500 चुन लें, 700 चुन लें, 1000 चुन लें, उनकी ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो। जैसे आप यहां कीर्तनकारों की भी ट्रेनिंग होती है ना, पंढरपुर में या तो आलंदी में, बिना ट्रेनिंग के उनको उतारा नहीं जाता, स्टेज पे भेजा नहीं जाता। तो इनकी पहले ट्रेनिंग हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर एक साथ इनको भेजा जाए लोकसभा में, एक साथ भेजा जाए विधानसभाओं में, और वहां जो कुछ भी उल्टा हो गया है उसको खत्म करा के, सीधा करा के फिर इनको वापस बुला लिया जाए। और सिस्टम क्या हो, पार्टी खत्म कर दी जाए इस देश में से, पार्टी की हमें जरूरत नहीं, बिना पार्टी के ये देश अच्छे से चल सकता है। हजारों साल चलता रहा है, अगले हजारों साल भी चलेगा। प्रतिनिधि के रूप में अगर हमें कोई चुनना है तो हम आपस में बैठकर चुन लेंगे, पार्टी क्या होती है। मान लो हमें नागपुर से अगर कोई प्रतिनिधि चाहिए संविधान और देश और सब व्यवस्था ठीक रखने के लिए, तो नागपुर वाले मिलकर तय कर लेंगे, उसमें बीजेपी कांग्रेस क्या होता है। ये जो पार्टी है ना, ये संगठित गिरोह है, गुंडों के, लफंगों के गिरोह बन गए हैं। पार्टी माने गुंडे और लफंगों का गिरोह, इस पार्टी को खत्म करें, और बिना पार्टी पर आधारित इस देश में से प्रतिनिधि चुने। प्रतिनिधि मैं चुनूंगा, आप चुनेंगे, दिल्ली से कोई नहीं आएगा। मैं नागपुर में रहता हूं, मुझे मालूम है कौन सा अच्छा व्यक्ति है जो मेरा एमपी होने लायक है, कौन सा व्यक्ति है जो एमएलए होने लायक है, कौन सा व्यक्ति है जो कॉरपोरेटर हो सकता है, ये मैं समझता हूं। हम तय कर लेंगे, इसमें दिल्ली से कोई आए चुनाव लड़के दिल्ली जाए, हमें ये व्यवस्था नहीं चलानी। तो अपने अपने प्रतिनिधि हम खुद चुन लें, जगह जगह भेज दें, वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर किसी को प्रधानमंत्री चुन लें, किसी को वित्त मंत्री चुन लें, और जिसको हमने भेजा है उसको वापस भी हम बुला लें एक ही मिनट में, जो वो गुंडा निकले तो, बदमाश निकले तो, लुच्चा लफंगा निकले तो। ये नहीं कि 5 साल हम इंतजार करते रहें, दोबारा चुनाव आएगा तब उसको हराएंगे। ये 5 साल क्यों इंतजार करना, आज हमें मालूम है कि हमारा प्रतिनिधि गलत है, 2 मिनट में वापस बुला लें। जैसे घर के नौकर को बदल देते हैं, पता चला कि ये चोरी कर रहा है, एक ही मिनट लगाते हैं निकालने में, ऐसे ही एमपी एमएलए को एक ही मिनट लगना चाहिए संसद से बाहर निकालने में, विधानसभा से बाहर निकालने में। और ये सारा कंट्रोल लोगों के हाथ में रहे, प्रतिनिधि तो हमारे नौकर की तरह से काम करें, तो ये व्यवस्था ठीक चल जाएगी, ऐसा विकल्प है। तो इसमें पहला चरण ये है कि आप ऐसे पूरे देश के लोगों से कहिए कि 500-700 लोगों को चुन लें, आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, आपकी नजर में कोई अच्छे हैं, मेरी नजर में कोई अच्छे हैं, हमको इस देश में लीडर्स तैयार करने हैं, भविष्य के नेता इस देश में बनाने हैं, जिनकी समझ है और अकल है। डिग्री और समझ का कोई लेन देन नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। कई बार डिग्री लिया हुआ आदमी महामूर्ख हो सकता है, और कई बार बिना डिग्री का बहुत विद्वान हो सकता है। तो आजकल हमने ये डिग्री के साथ अपनी योग्यता को जोड़ना शुरू किया है। डिग्री कागज का टुकड़ा होता है, उस पर शहद लगा के चाटो तो विटामिन सी भी नहीं देता, और वो कागज के टुकड़े को हम घर में लगा के बड़ा समझते हैं। वो कागज ने आपको इज्जत दी है, आपके ज्ञान ने आपको इज्जत दी है, आपके आचरण ने इज्जत दी है। तो ज्ञान ऊंचा है, आचरण ऊंचा है, डिग्री ऊंची नहीं है। अंग्रेजों ने डिग्री ऊंचा बना दिया, ज्ञान और आचरण सब नीचे चला गया। तो हम ऐसे कुछ लोगों को चुने जो ज्ञान और आचरण में अच्छे हों, भले वो डिग्री हो या ना हो, ये इमेटीरियल नहीं है, क्योंकि इस देश में जितने विद्वान हुए गोस्वामी तुलसीदास की कोई डिग्री नहीं थी। संत ज्ञानेश्वर किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके नहीं निकले। रामदास स्वामी ने इतना बड़ा दासबोध लिख मारा, वो कहीं नहीं गए रिसर्च करने के लिए, ना अमेरिका ना यूरोप। तो हमारे यहां तो ऊंचा काम उन्होंने ही किया है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। और इसी कारण गांधी जी जैसे व्यक्ति को भारत का नेता बनने के पहले डिग्री जलानी पड़ी बंबई में, कि आज से भारत जान ले कि मैं साधारण आदमी हूं, मैं बार एट लॉ नहीं हूं। तब भारत के लोगों ने स्वीकार किया। तो हम ये समझ लें कि इस देश में डिग्रियों से ज्ञान का, आचरण का, चरित्र का कोई लेना देना नहीं। ज्ञान में ऊंचे, आचरण में ऊंचे, चरित्र में ऊंचे 5-700 हजार 2000 लोगों को चुन लें या 10-20 हजार लोगों को चुन लें, कुछ विधानसभा के काम आएंगे, क्योंकि विधानसभा में 4,500 लगते हैं, लोकसभा में 850 लगते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 14,000 लगते हैं। तो कुछ लोगों को चुन लें, 2-4 साल उनकी ट्रेनिंग हो जाए, फिर उनको उनके क्षेत्रों से खड़ा करके जिता के संसद में भेजें, विधानसभाओं में भेजें और कॉरपोरेशन में भेजें, और एक साथ ये सब कानून रद्द करा दें जो पुराने मूर्ख नेताओं ने बनाए हैं, इस व्यवस्था को बदल दें। इसमें 4-5 साल लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बस हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। हम पहले तय कर लें कि ये हैं, युवक हैं, युवतियां हैं जिनमें कैपेसिटी है, लीडरशिप ये कर सकते हैं इस देश की, ऐसे चुन लें और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, और वो ट्रेनिंग लेकर फिर जाएं, फिर वहां वो करेंगे जो आप चाहते हैं। आपने बीजेपी को जिताया, उसमें अधूरा काम हुआ, ट्रेनिंग तो आपने किया नहीं उनकी, जिता के भेज दिया। आपको मालूम नहीं था कि ये भी बंदर और उस्तरा वाला ही खेल खेल लेंगे, वही उन्होंने खेल दिया। तो अब इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब की बार जो पुरानी गलती है वो दोबारा नहीं। बिना प्रशिक्षण और शिक्षण के किसी का समर्थन न करें चुनाव में वोट करने के। प्रतिनिधि अपने स्थानीय स्तर पर चुनकर जाएं, पार्टियों से उनका कोई लेन देन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
बहुत
युवा प्रकोष्ठ नागपुर गायत्री परिवार की ओर से एक प्रश्न को निवेदन है। सर, जैसा कि राजीव जी भाई से आपने बताया, वे प्रशिक्षित लोगों को ही संसद में भेजा जाना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन भाई आज जो जैसे पिछली बार महाराज ने बताया कि हम लोगों ने आंदोलन के लिए गया, मैं भी उसमें शामिल था, आरआर पाटिल से मिले, लेकिन समर्थन करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम थी। तो संख्या कम होने का एक ही मुख्य कारण यह था कि लोगों में जागरूकता नहीं है धर्म के प्रति। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि हमारे समाज में धार्मिक शिक्षा बच्चों को शुरू से लागू होनी चाहिए, ताकि लोग इसके अच्छी तरह से, मतलब इस चीज को समझ पैदा हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर अगर ऐसा कानून बनता है जिसको अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कहा जाता है, उसके पीछे में ऐसा सारा का सारा लिखा हुआ है, तो जैसा राजीव भाई साहब ने कहा कि भाई श्रद्धा वैज्ञानिक है और अंधश्रद्धा अवैज्ञानिक है, ऐसी मान्यता है, तो उस आधार पर निवेदन ये है कि भाई श्रद्धा को प्रतिपादित करने का हमारे पास भी कोई ना कोई वैज्ञानिक, मतलब मजबूती तो है ना, नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, या तो फिर ऐसी व्यवस्था बने। क्योंकि होता क्या है कि चलिए हमने सारे के सारे लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं साहब ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो एक तरफ से ऐसा हो सकता है कि हमारा कमजोरी पक्ष कहलाया जाएगा जिन लोगों ने इसको अंधश्रद्धा करार दिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो श्याम मानव हो, एक तरह से हमारा कमजोरी पक्ष कहलाएगा कि नहीं साहब ये लोग इससे डर रहे हैं या इनके पास इसको प्रतिपादित करने का कोई साधन नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि भाई अगर वो उसको अंधश्रद्धा कहते हैं तो हम उसको श्रद्धा है हमारी, उसका वैज्ञानिक तत्व प्रतिपादित कर सके, चाहे संसद में या फिर किसी लेबोरेटरी में, कहीं भी अगर वो कहे, या उसका फिलॉसफी, जैसे आपने बताया कि साहब सत्यनारायण कथा को वो कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है, वैसे प्रॉपर मैं एमपी का हूँ, हमारे गायत्री पवार की तरफ से भी हमारे परमज गुरुदेव ने सत्यनारायण कथा लिखी है, हमारे वरिष्ठ बाबूजी और ये हमारे धर्म विज्ञान के छात्र हैं, वे आखिर हमारी जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय चलते हैं वहां के डिग्री कोर्सेज के वही धर्म विज्ञान के छात्र भी हैं, ये भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे सत्यनारायण कथा जो लिखी गई है उसका डेफिनेशन लिखा गया है, लेकिन नागपुर में जो सत्यनारायण कथा है उसका डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ कथा है, उसका दर्शन नहीं बताया गया कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सत्यनारायण कथा है उसका दर्शन बताया गया है कि सत्यनारायण कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनाई जाती है। तो मेरी ऐसी मान्यता है, मैं वो भी बहुत जगह सत्यनारायण कथा कराने गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग डर के सत्यनारायण कथा कराते हैं, शायद उसके दर्शन को समझ करके नहीं। तो निवेदन यह है कि हम उसके दर्शन को उनको समझाएं, जो लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं कि साहब इसका दर्शन क्या है, इसलिए हम इसको कराते हैं, तो शायद वो लोग चुप हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर का निचोड़ क्या है, या क्या इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। आदरणीय दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा, बताइए आप।
दे दो, विज्ञान क्या है पहले हम ये तय कर ले। मैंने पहले ही कहा था मेरे व्याख्यान में, जब मैंने नरेंद्र दाभोलकर से बात की तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, विज्ञान क्या है। हमारी परिभाषा है कि दुनिया में जो कुछ सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है, ये भारत की परिभाषा है। सत्य सत्य रहेगा चाहे भारत में हो या अमेरिका में। प्रतिपादित करने के लिए आप उनके शब्द इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो उन्हीं के नौकर बनेंगे। आप प्रतिपादित अपने आधार पर करिए ना। यूरोप और अमेरिका ने कोई टर्मिनोलॉजी डेवलप की है, आप उसमें फंसेंगे तो उनके ही पीछे चलना पड़ेगा। उनकी विज्ञान की परिभाषा दूसरी है, हमारी परिभाषा है कि जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है। सनातन माने करोड़ों साल से आया, करोड़ों साल तक चलेगा। सनातन माने कभी भी किसी भी समय में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, और सत्य तो है। तो जो सत्य है, सनातन है, सार्वभौम है, वो हमारा विज्ञान है। यूरोप में विज्ञान दूसरा है, उनके यहां विज्ञान की परिभाषा ही अलग है। उनके यहां लोगों द्वारा कहा गया, जिनको वो ऊंचा मानते हैं, वो विज्ञान है। जैसे प्लेटो बहुत ऊंचा आदमी है, वो कुछ कह देगा, वो विज्ञान हो गया उनका। सुकरात ऊंचा आदमी है, उसने कुछ कह दिया तो विज्ञान हो गया। हमारे यहां किसी व्यक्ति ने कह दिया इसलिए विज्ञान नहीं है, वो करोड़ों साल से चला आ रहा है, अगले करोड़ों साल चलेगा, इसलिए विज्ञान है। अब प्लेटो ने बोल दिया कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, तो पूरा यूरोप यही मानता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, आज भी मानता है। इसलिए स्त्री को नीचे रखना है हमेशा। स्त्री बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, वोट नहीं दे सकती, प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, अदालत में गवाही नहीं दे सकती। ये सब 1950 तक यूरोप में चलता रहा, क्योंकि प्लेटो बोल गया। अब हम इसको विज्ञान मानेंगे? हमारे यहां तो स्त्री पुरुष क्या, छोटे छोटे जीव में भी आत्मा होती है, और आत्मा सबकी समान होती है, तो हमारा विज्ञान तो अलग हो गया ना उनसे। हमारी समस्या ये हो गई कि यूरोप से कुछ आ गया, उसको हमने विज्ञान कहना शुरू कर दिया। और माफ कीजिए, गायत्री परिवार की पुस्तकों में ऐसा बहुत कुछ है कि हर एक विदेशी दार्शनिक का नाम लेकर आप उसका प्रतिपादन करते हैं, आप कमजोर दिख रहे हैं। ये आप अन्यथा मत लीजिएगा, गायत्री परिवार के लोग। गायत्री परिवार के सब ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, जितने विदेशियों के नाम उसमें घुसे हुए हैं शायद हिंदुस्तान की किसी दूसरी संस्था की पुस्तकों में नहीं है। आप इतने कमजोर क्यों हैं? हर एक बात आप विदेशियों के माध्यम से क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? आप ढूंढिए आपकी किताबों में, मैं निकाल के देता हूं, हजार से ज्यादा नाम निकल आएंगे विदेशियों के। तो आप खुद कमजोर हो रहे हैं, इसलिए विदेशियों के नाम से प्रतिपादन करने में लगे हैं। तो ये प्रतिपादन नहीं किए जाते कभी भी। हमारी मान्यता है, हम इस पर दृढ़ हैं, प्रतिपादन किसको करें? मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं, मैं बता रहा हूं, आप इसको सुन लीजिए, और अगर इसका करेक्शन गायत्री परिवार करे तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, इसराइल में चले जाइए आप, वो लोग कहते हैं जी शनिवार बहुत पवित्र है, ठीक है। उसके पड़ोस में फिलिस्तीन में चले जाइए, वो कहते हैं जी शुक्रवार बहुत पवित्र है, और उसके थोड़े आगे चले जाइए तो कहते हैं रविवार बहुत पवित्र है। इसराइल वाले यहूदी हैं, वो शनिवार को पवित्र मानते हैं। उनके पड़ोसी फिलिस्तीन वाले मुसलमान हैं, वो शुक्रवार को पवित्र मानते हैं, और थोड़े पड़ोसी ईसाई हैं, वो रविवार को पवित्र मानते हैं। ये तीनों एक ही जगह से निकले हुए धर्म है, जेरूसलम में से ईसाइयत निकली, जेरूसलम में से इस्लाम निकला और जेरूसलम में से यहूदी धर्म निकला। एक गांव में से निकले हुए तीन धर्म हैं, अलग अलग मान्यता है तीनों की। एक कहता शनिवार पवित्र है, एक कहता रविवार पवित्र है, एक कहता शुक्रवार पवित्र है, और तीनों ही कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं। तो आप उन तीनों में से किसको प्रतिपादन करेंगे अपने यहां? आप कहते हैं कि सभी वार पवित्र हैं, रविवार सूर्य का है, सोमवार चंद्रमा का है, मंगल हनुमान जी का है, बुधवार किसी का है, बृहस्पति है, तो आप तो उनके आधार पर प्रतिपादन में लग जाएंगे तो फंस जाएंगे शुक्रवार शनिवार और रविवार में। किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। प्रतिपादन अपने मान्यताओं पर होता है, दूसरों पर नहीं किया जाता। और जो मान्यता है ना, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है कि अयोध्या में इस या कोई कहे कि मोहम्मद अता का ये मूसा का जन्म यही हुआ, मैं कहूंगा नहीं हुआ, वो पड़ोस के गांव में हुआ था। तो वो कहते हैं जी हमारी मान्यता है, आप कौन होते हैं ये हमको समझाने वाले कि पड़ोस गांव में हुआ था। अब हम इसमें लग जाएं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसको हम प्रतिपादित करें, तो मूर्खों के मूर्ख। अपनी मान्यताओं को थोड़ी प्रतिपादित किया जाता है, अपनी मान्यताओं के आधार पे। इतिहास तो हमें समझाने के लिए है, ये विदेशियों के शब्दों को लेकर थोड़ी प्रतिपादित करते बैठते हैं। नहीं, कैसे समझाएंगे आप विदेशियों की मान्यता को लेकर? आप अपने देश में क्या समझाएंगे? विदेशियों की मान्यता पर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। आप अपनी मान्यताओं को मानते हैं, उस पर दृढ़ रहिए। मैं मानता हूं कि यहां भगवान विराजमान है, कोई आके ईसाई बोलेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या समझाएंगे आप उसको? वो कहे कहता रहे, हम हमारी मान्यता में दृढ़ है कि यहां भगवान है, हम मानते हैं कि कणकण में भगवान है, इसलिए हम यहां पूजा कर रहे हैं। कोई ईसाई आके कहेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या रखा है? हमारे लिए वो भगवान है, उसके लिए पत्थर की मूर्ति है, उसकी मान्यता है पत्थर की मूर्ति, हमारी मान्यता है भगवान, वो मानेगा नहीं, तो हम क्यों मनाने में लगे उसको? हम हमेशा पश्चिम के पीछे ही भागे हैं अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए। ये बहुत दुखद है। और विशेष रूप से आज विषय निकल आया, चूंकि मैं गायत्री परिवार के सब पुस्तकों को पढ़ चुका हूं, हर एक बात को प्रतिपादित करने के लिए एक विदेशी का उदाहरण उसमें दिया हुआ है। कहीं कैथरीन का नाम है, कहीं फ्लैंक का नाम है, कहीं रॉबर्ट का नाम है। ये क्या मूर्खता हम कर रहे हैं? अपनी चीजों को प्रतिपादित करने के लिए विदेशियों के नाम लेने की क्या जरूरत है? हमारा धर्म महान है, हम मानते हैं, जानते हैं, उसको विदेशियों के आधार पर क्यों प्रतिपादित करें? वो तो आप हमेशा करते रहेंगे, वो कभी मानेंगे नहीं। हम तो यही कर रहे हैं ना, हम तो इस देश में हजारों साल पहले कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर किसी का उतरना संभव नहीं है, भारत के शास्त्रों में यही है। अब वो विदेशी आज उसकी रिसर्च करें, हम उनके आधार पर उसको प्रतिपादित करने में लग जाएं, तो ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी आप प्रतिपादन करने के चक्कर में ना फंसे, आपकी जो मान्यता है उस पर दृढ़ रहे, क्योंकि मान्यताओं पर कभी बहस नहीं होती। मान्यता हर एक सभ्यता की अपनी अलग होती है, दूसरी सभ्यता की अलग होती है। जो मान्यताओं पर एक दूसरे को समझा लेते, तो ईसाइयत इस्लाम और यहूदी धर्म अलग अलग क्यों होते? मैंने आपको कहा ना, एक ही गांव से तीनों निकले, एक कहता शुक्रवार अच्छा है, एक शनिवार अच्छा है, एक रविवार, तीनों एक दूसरे को नहीं समझा पाए और करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो गया इसमें, समझाने में ही, हजारों साल में, और आगे भी होने वाला है। तो यह मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, जिसकी मान्यता है आप उसको धारण करके आगे बढ़िए, दूसरों की मान्यता में अपने को फिट मत करिए। उनकी कोई परिभाषा है विज्ञान की, उसमें आप अपने को फिक्स मत करिए, क्योंकि उनके विज्ञान में बहुत सारे दोष हैं। आप क्या करेंगे उसका? 2H2+O2 कभी भी पानी नहीं बनता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, और वो विज्ञान जो यूरोप से आया उसका विद्यार्थी मैं अपने को मानता हूं। भारतीय विज्ञान तो अभी पढ़ना शुरू किया है मैंने। 2H2+O2 कभी पानी नहीं बनता, ये मैंने एक नहीं दसियों लेबोरेटरी में करके देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, कभी पानी नहीं बनता। कितने भी प्रेशर पे मिलाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी बनता ही नहीं है। लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक है,
क्योंकि वैज्ञानिक इसलिए कि यूरोप से आ गया, यूरोप से मूर्खताएं भी आ गई हैं, तो हमने उसको विज्ञान मान लिया है। हमारी किताबों में वही पढ़ाया जा रहा है, 2H2+O2 = 2H2O। रिवर्स होता है, 2H2O को ब्रेक करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कभी भी मिला के देखो पानी नहीं बनेगा, जो बन जाता तो पानी की इतनी समस्या नहीं होती। पानी बनाने का विज्ञान भारत का है, वही सार्वभौम है जो पानी बनाने का चक्र हमको समझाता है, यूरोप में कोई नहीं बताता इसको। अब आप यूरोप के 2H2+O2 पे लगेंगे अपने को प्रतिपादित करने, कहां आगे बढ़ने वाले हैं आप, तो खुद गिर जाएंगे वहीं पर।
इसमें समस्या है कि अगर हम उसको
प्रतिपादित, अरे ये समस्या नहीं है, ये आपका डर है, और ये डर इसलिए है कि आप निकले हैं संप्रदाय बनाने के लिए, देश की समस्या हल करने के लिए नहीं। जब कोई संप्रदाय बनाता है तो उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे बाड़े में कितनी भेड़, मेरे बाड़े में कितनी भेड़। जब आप संप्रदाय छोड़कर काम करते हैं तो ये समस्या ही नहीं होती।
अभी तो मैं आपके साथ हूं।
नहीं, मेरे साथ नहीं है, आप मेरे साथ नहीं है, आप गायत्री परिवार के साथ हैं, सुनिए, और आपके गुरु जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके गुरु आचार्य श्रीराम शर्मा ने कभी नहीं कहा कि इसको संप्रदाय बनाना, वो निकले थे कल्याण करने के लिए विश्व का, आपने बांध के रख दिया उनको एक संप्रदाय में। उन्होंने निकाली थी युग निर्माण योजना और आपने उसको भुला दिया। अब आप लगे हैं कुछ ऐसे काम में जो वो कभी नहीं करते अपने जिंदा रहते हुए। माफ कीजिएगा, ये टिप्पणी मुझे इसलिए करनी पड़ी कि मैं देख रहा हूं कि बहुत भटकाव है। युग निर्माण योजना का काम तो कहीं पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे ना युग बन रहा है ना निर्माण हो रहा है। आप कुछ यज्ञ कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आपकी चिंता ये रहती है कि ये लोग मेरे ही बाड़े में रहें, किसी दूसरे में ना चले जाएं। और ये मैं देख रहा हूं महाराज जी सभी जगह है। आसाराम बापू की चिंता है कि मेरा एक भी भक्त मुरारी बापू के यहां ना चला जाए, मुरारी बापू की चिंता है कि मेरा एक भी आदमी आसाराम बापू के यहां ना चला जाए, पांडुरंग शास्त्री की चिंता है कि एक भी कार्यकर्ता स्वाध्याय परिवार के बाहर ना चला जाए। ये सब लोग संप्रदाय बनाने में लग गए, देश बनाना बहुत पीछे छूट गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत में संप्रदाय बनाना है तो ये डर है कि लोग आपके साथ कैसे आएंगे। माफ करिए, बिना आपकी भाषा बोले हुए भी लोग इस देश में लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आपकी भाषा नहीं बोलते फिर भी उनके पास लाखों लोग हैं, तो ये डर क्यों है आपके मन में कि लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप काम करने निकल जाइए देश का, लोग अपने आप साथ में आएंगे। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए आप फंस गए उस दुष्चक्र में जो पश्चिम का दिया हुआ है और उन्हीं की प्रतिपादन में हम लगे हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये प्रतिपादन मत करिए, क्योंकि प्रतिपादन कभी भी कोई देश किसी का नहीं करता है, सब अपने को महान मान के ही काम करते हैं। ईसाइयत वाला भारत के किसी भी श्लोक को या किसी भी मंत्र को और किसी भी शास्त्र को कोट नहीं करता ये सिद्ध करने के लिए कि ईसाइयत महान है, तो आप क्यों परेशान हैं? उनके वैज्ञानिकों को कोट कर करके परेशान हैं आप। जिन्होंने जिंदगी में कभी हिंदू धर्म जाना नहीं, भारत को जाना नहीं, उन वैज्ञानिकों के नाम आपके शास्त्रों में मैं निकाल के दिखाऊं। मैक्स मूलर कितनी जगह कोट किया है आपके शास्त्रों में, मैक्स मूलर को, जो कभी भारत आया नहीं, उस मैक्स मूलर के माध्यम से आप क्या प्रतिपादित करेंगे इस देश में? जिसने कभी धर्म पढ़ा नहीं, आचरण किया नहीं, शास्त्र को जाना नहीं, वो वेद की यहां से कुछ कॉपी ले गया, उसमें कुछ छेपक लगा के उसने जोड़ दिया, वो आपके यहां पढ़ाया जाता है ऋग्वेद के रूप में जो मैक्स मूलर का लिखा हुआ है, और आप अपने को महान मानते हैं कि मैक्स मूलर का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। मैक्स मूलर के हजारों साल पहले वेद, करोड़ों साल पहले के वेद हैं, और वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है, ईश्वर की वाणी है। कुछ महान लोग होते हैं जो ईश्वर की वाणी को सुन लेते हैं, वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो जो ईश्वर की वाणी है वो मैक्स मूलर की वाणी हो गई। अब इस देश में गायत्री परिवार के जितने भी ऋग्वेद की पुस्तकें मेरे पास हैं वो सब मैक्स मूलर वाली है, सामवेद की भी है, अथर्ववेद की है, मैक्स मूलर वाली है। मैक्स मूलर को क्या मालूम भारत के बारे में? वो खुद कहता है मैं कभी भारत नहीं गया, आया नहीं, संस्कृत भी जानता था तो टूटी फूटी जानता था। अब उसने लिखा हुआ कुछ है, हम उसको प्रामाणिक मान के पढ़ा रहे हैं, हर जगह आप जो है उस पर यज्ञ करा रहे हैं, लोगों के बीच में कथन उपकथन कर रहे हैं, मुश्किल वहां हो रही है। हमें खुद नहीं मालूम है कि हम पश्चिम में कितने घुल मिल गए, भारत बनाना चाहते हैं पश्चिम के तरीके से, यही गलती नेहरू जी कर रहे थे। नेहरू जी कहते थे भारत को मन बनाना, लेकिन यूरोप के रास्ते से। वही गलती हम करने लगे, भारत महान बनेगा भारत के रास्ते से, यूरोप और अमेरिका के रास्ते से नहीं। तो भारत का रास्ता होगा, भारत के शास्त्र होंगे, भारत की विद्याएं होंगी, भारत के नियम होंगे, भारत की मान्यताएं होंगी, और उनको किसी दूसरों की मान्यताओं से प्रतिपादित करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी मान्यताएं इतनी मजबूत हैं, आप उन्हीं को कहिए, लोग उसी से जुड़ेंगे, ये मेरा कहना है। और कुछ कड़वी बात कही हो तो माफ करिएगा, क्योंकि ये बात मैं आपसे नहीं, प्रणव पंड्या जी से कह चुका हूं, आपसे नहीं, आप तो बहुत नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, माने कार्यकर्ता स्तर के। मैं प्रणव पंड्या जी को कह चुका हूं कि आप इस भारत को यूरोप के रास्ते ले जाना चाहते हैं क्या? आपके शास्त्रों में इतने विदेशियों के कथन उपकथन क्यों देते हैं? क्या भारत में कमी पड़ गई है ऋषि महर्षियों की, जिनके कथन कोट करने में आपको शर्म आती है या तकलीफ आती है? ऐसी कोई कमी नहीं है इस देश में। न्याय शास्त्र पढ़ाना हो तो इस देश के लिए बहुत नाम है। कोई जरूरी है कि प्लेटो और सुकरात का नाम लेके ही हम न्याय शास्त्र पढ़ाएं? तो भारत में है तो भारतीयता की बात, और भारतीय शास्त्रों के आधार पर, भारतीय मान्यताओं परंपराओं के आधार पर करें। और माफ करें, इस देश में संप्रदाय ना बनाए कोई भी, इस देश में देश को आगे बढ़ाने का काम करें। संप्रदाय बनता है ना तो देश छोटा हो जाता है, संप्रदाय बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, ऊपर से जो आदेश आएगा संप्रदाय वही करता है, नीचे की ग्राउंड रियलिटीज में कोई काम नहीं होता। आपके ऊपर से कोई आदेश आएगा हरिद्वार से, आप उतना ही करेंगे। अगर वो आदेश बोल देगा तो आप उसमें से पीछे हट जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि ऊपर वालों को कई चिंताएं हैं। हम राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे थे शराब के कारखाने को बंद कराने के लिए। पहले गायत्री परिवार वाले आए, फिर एक दिन आदेश आ गया कि इस लड़ाई से आप हट जाओ, क्योंकि ये नेताओं के खिलाफ हो गई है, क्योंकि कुछ नेता हरिद्वार में जाते हैं। तो हट गए सब गायत्री परिवार वाले। तो लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं थी, संप्रदाय महत्वपूर्ण हो गया। तो संप्रदायों की लड़ाई में यही होता, देश तो पीछे रह जाता है, अपना अपना संप्रदाय आगे बढ़ाने में हम लग जाते हैं। तो अगर आप संभव हो इस बात को उसी भाषा में लेते हुए, उसी तरह से युग निर्माण के लिए निकले थे आचार्य श्रीराम शर्मा, संप्रदाय बनाने के लिए नहीं निकले वो कभी भी। मेरे माता पिता दोनों उनके बहुत नजदीकी रहे हैं। आंवल खेड़ा जहां उनका जन्म स्थान है, वो मेरे पिताजी का भी बिल्कुल नजदीक का गांव है। मेरे पिताजी बोलते थे, बताते थे, वो युग निर्माण के लिए निकले थे, अब हो ये गया है कि वो संप्रदाय बन गया। और संप्रदाय बढ़ाने के हिसाब से कार्यक्रम लिए जाते हैं, देश आगे बढ़े, वो कहीं भी नहीं है। तो अगर हमें संप्रदाय बना के रख लेना है तो फिर दूसरे संप्रदायों की आप आलोचना ना करें। वो अपने अपने तरीके से अपने अपना, किसी ने राम के नाम पर संप्रदाय बना लिया, राम कथा संप्रदाय बन गई, किसी की कृष्ण कथा संप्रदाय बन गई, और जो अभी बोल रहे थे कि कोई राम के नाम पे पैसे बटोर रहा है, कोई कृष्ण के नाम पर पैसे बटोर रहा है, किसी ने महाभारत को पैसे का जरिया बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया। तो अभी तो ये धंधा पानी ही चल पड़ा, देश तो आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। 60 साल हो गए आजादी के बाद, इतने धार्मिक संगठनों के बाद भी ये देश रसातल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि संगठन संप्रदायों में बदल गए, अपने अपने संप्रदाय की चिंता है, देश की चिंता तो कहीं बहुत पीछे है। और जब संप्रदाय और देश में से चुनने का समय आता है तो लोग संप्रदाय को चुनते हैं, देश को नहीं चुनते। बहुत बार देश और संप्रदाय एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है तो संप्रदाय को चुनते हैं, ये सब जगह हो रहा है, एक जगह नहीं। तो अगर इसी गलती में हम फंसे रहेंगे तो शायद कोई समस्या हल नहीं होगी। हम अपने संप्रदाय के बाड़े को तोड़ें और जो गलती हुई है उसको ईमानदारी से स्वीकार करके ठीक कर लें, तब तो बात आगे बढ़ती है। और अगर नहीं करते हैं तो वो वहीं की वहीं फंसती हुई रह जाती है। और प्रतिपादन यूरोप से आए हुए शब्दों पर और यूरोप से आई हुई परिभाषा पर कभी ना करें, हमारे देश के शब्द और हमारे देश की परिभाषा उसके लिए गढ़ें, ये मेरी आपको विनती है।
त्यांचाही मी आभारी आहे की त्यांनी मार्मिक प्रश्न विचारला आणि ज्यांनी उत्तर दिलं त्यांचाही मी आभारी आहे, कारण त्यांनी मार्मिक पद्धतीने त्याचं उत्तर दिलेलं आहे। आपल्या सगळ्यांना विनंती अशी आहे की आपल्याला विचार व्यक्त करायचे आहे, चर्चा विचर्चा असंच स्वरूप शक्यतोपर्यंत होऊ नये याची आपण सगळेजण काळजी घेऊ, कारण एका समस्येकरता आपण इथे एकत्र आलो आहे। या एकत्र येण्यातून आणखी वेगळी समस्या निर्माण होऊ नये याची आपण व्यवहार्य थोडी काळजी घेऊया. मी आपल्या सगळ्यांपेक्षा छोटा आहे पण माझी ती जबाबदारी असल्यामुळे मी आपल्याला विनंती केली आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर आपण आमंत्रित आहे.
प्रश्न काय माझा की श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा ह्या दोन्ही भिन्न अशा मानसिक मनाची अवस्था आहे असं मला वाटतं. श्रद्धा ही अनुभवातून अनुभूतीतून निर्माण झालेली असते आणि अंधश्रद्धा ही भीतीपोटी काही चुकीच्या कल्पनेमुळे निर्माण झालेली असते. तेव्हा अंधश्रद्धा नसावी आणि श्रद्धेवरती आपलं संबंध जीवन आधारित असावं या दृष्टीने अंधश्रद्धा निर्मूलन करण्याकरता किंवा अंधश्रद्धा आपल्या मनामध्ये किंवा समाजामध्ये जी अंधश्रद्धा थोड्या प्रमाणात आहे ती घालवण्याकरता आपण प्रयत्न करायला नको का, हा माझा प्रश्न आहे.
श्रद्धामयोयम पुरुषः य एव श्रद्धस्य एव सः. भगवद्गीतेमध्ये असं विवेचन दिलेलं आहे. श्रद्धाला जर अंध मानलं तर मग हात पाय नाक बाकीचंही मानायला पाहिजे, कान हे मानायला पाहिजे. नुसतंच अंधळेपणाचा अंध असा शब्द घेऊन म्हणजे श्रद्धेला डोळे आणि बिनडोळ्याची श्रद्धा अशी तुम्ही श्रद्धेची कशी काय व्याख्या केली हे अजून माझ्या लक्षात नाही आलं. आणि जर नुसत्या डोळ्यांबद्दलच व्याख्या असेल तर मग बहिरी श्रद्धा, श्वास न घेणारी श्रद्धा, न बोलणारी श्रद्धा, न हृदय असणारी श्रद्धा, न डोकं असणारी श्रद्धा असे पण त्याचे शब्द जन्माला घालावे लागतील. ठीक आहे. आता प्रश्न असा निर्माण झाला की अंधश्रद्धा ही परिकल्पना कृपा करून लक्षात घ्या भारतीय नाही, हा शब्दच नाही आपल्याकडे. श्रद्धा एवढाच शब्द आहे, श्रद्धेचा प्रतिद्वंद्वी किंवा वृद्धार्थी शब्द अंधश्रद्धा ही कल्पना तुमची नाही, ही इंग्रजांकडनं आलेली आहे, फ्रेंचांच्या क्रांतीतली विषय आहे तो. हा तुमचा ना, मग हे तुम्ही कुठून शोधून काढला अंधश्रद्धा, हा शब्दच तुमचा नाही आहे. हा आता अंधश्रद्धा हा शब्द कसा जन्मला म्हणतात याचा जर विचार केला तर तुमच्या एक महत्वाची गोष्ट सगळ्यात पहिले लक्षात येण्यासारखी आहे की ही जी अंधश्रद्धा हा जो प्रकार आहे तो त्यांची जी बायबलची जी पद्धत आहे ती ऑर्डर वाईज आहे, म्हणजे देवांच्या आज्ञा, देवाज्ञा, या देवाज्ञांचा जो विरोधक ती अंधश्रद्धा. देवांच्या आज्ञा, जीसस, द ऑर्डर ऑफ जीसस क्राइस्ट, देवाची आज्ञा जे पाळतात ते श्रद्धावान. देवांच्या आज्ञेच्या जे बायबलच्या विरुद्ध जातात त्याला अंधश्रद्धाच नाही, त्याला जगण्याचाही हक्क नाही. हॅलो लक्षात. मुसलमानांची अशी श्रद्धा आहे की जे लोक अल्लाला मानत नाही, अल्लाह अकबर मानत नाही, मोहम्मद रसूलिल्ला मानत नाही, त्या लोकाला पृथ्वीवर जगायचा हक्क नाही. एक तर त्यांनी मुसलमान बनलं पाहिजे, या तर त्यांनी गुलाम बनलं पाहिजे, नाही तर त्याचा कत्लेआम झाला पाहिजे. कळलं. त्याच्यामुळे अंधश्रद्धा ही हा शब्दच भारतीय नाही. जसं उदाहरणार्थ तुम्हाला आठवत असेल राजीव गांधी पंतप्रधान असताना एक बिल पार्लमेंटमध्ये आलं होतं. हे बिल होतं सती प्रथा बंद करण्याचा कायदा. बरोबर आहे. 550 गाढव पार्लमेंटमध्ये बसलेले, त्याच्यामध्ये संस्कृतचे महापंडित पण होते, छोटे मोठे माणसं नव्हते, संस्कृताचे महापंडित त्यावेळेला त्याच्यात बसले होते. त्यांनी आपले पुस्तकं काढले. मुसलमान मंडळी होती, त्यांनी पण आपले पुस्तक, आम्ही ते टीव्हीवर बघत आश्चर्य करत होतो की सती प्रथा कायद्याने बंद करा असं ठरलं. पण कोणी हा प्रश्न नाही विचारला की सती ही प्रथा आहे काय. प्रथा असेल तर हिंदुस्थानाच्या प्रत्येक गावात सतीचे थडगे असायला पाहिजे. सती ही प्रथा असेल तर दशरथ राजा मेल्यावर रामाच्या तिन्ही माया सती जायला पाहिजे. सती ही प्रथा असेल तर फक्त मग नुसती ती गांधारी सती काय कोण कोण तिचं नाव माद्री सती गेली, कुंती सती का नाही गेली? अरे एकाच एकाच्या दोघा दोन बायका आहेत ना, माद्री आणि कुंती. पण त्यातली माद्री सती गेली आणि कुंती पोरं घेऊन हस्तिनापुरामध्ये गेली. सती ही जर प्रथा आहे तर मग सती अनुसयामध्ये काय अत्री ऋषी मेले का? ते बिन मरताच ती सती अनुसया कशी काय झाली? सती सती हा जर धर्म आहे सती धर्म, तर शिवलीला मृगाच्या 11व्या अध्यायामध्ये ती वेश्या सती आहे. ती तर वेश्या आहे हा महानंदा, आणि तरी ती सती आहे. सती प्रथा कशी काय आहे? 550 गाढवांनी एकाने पण हा प्रश्न नाही विचारला की हिंदुस्थानात कधी सतीची प्रथाच नव्हती. सती प्रथा नाहीच आहे, सती हे तर व्रत आहे. की घेतले व्रतन हे अमी अंध, सावरकरांचं त्याच्यावर वाक्यरचना आहे. की घेतले व्रतन हे अमी अंध तेने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्गमाने, जे दिव्य दाहक म्हणून असावयाचे बुद्ध्याची वाण धरिले करी हे सतीचे. सती प्रथा नाही आहे, सती हे व्रत आहे जो प्रत्येक हिंदू स्त्रीचा आदर्श आहे. सती होण्याकरता नवरा मरावाच लागतो असं नाही. प्रत्यक्ष महादेव काही मेल्यानंतर सतीने अग्निकुंडात उडी नाही घेतली. तसंच अंधश्रद्धा हा काही तुमचा शब्द नव्हे, कल्पना पण नाही तुमच्या खोपडीत. अंधश्रद्धा नावाची काही प्रकार आहे हे हिंदुस्थानाच्या कोणा ग्रंथामध्ये पण नाही आहे. शब्दच आहे, कारण अशी फसवा फसवी. ढोंग हा हिंदुस्थानच्या तत्वज्ञानाचा कधी विषय राहिलेला नाही. पहिलं वाक्य लक्षात ठेवा, ढोंग हा आमचा विषय नाही. ज्यांना ढोंग प्रतिपादित करायचं असतं, खोट्याला खरं सिद्ध करायचं असतं, त्यांना द्वंद्ववाचक शब्दांचा वापर करावा लागतो. कळलं? त्याच्यामुळे हे युद्ध, ही चर्चा, याच्यामधला हे जे दोन शब्द आहे, अश्रद्धा अंधश्रद्धा, हे आमच्याकरता काही आवश्यक नाही आहे. आम्हाला अंधश्रद्धा ही परिकल्पनाच माहिती. आम्ही तर जे आहोत ते श्रद्धावान आहोत, आणि अशी आमची श्रद्धा म्हणून आम्ही अशी आहोत. तुम्हाला काय करायचं करून घ्या. ते काही कुठे कोर्टात सिद्ध करायला जायची आम्हाला आवश्यकता नाही. विश्वास हा काही कायद्याचा विषय असू नाही शकत, कोर्टाचा विषय असू नाही शकत, असूच नाही शकत. किंबहुना जसं यांनी तुलसी महाराजांचं उदाहरण रामचरित मानसामधलं एक उदाहरण सांगितलं, आमच्याकडे श्रद्धेचं स्थान काय? तुलसीदासांनी आपल्या रामचरित मानसाच्या लिखाणाच्या पूर्वी सांगितलं की माणसाला आई आणि वडील दोन असतात, बरोबर? पण तुमच्या जीवात मिळाला जे आई वडील आहे त्यांचे नाव काय? शरीराच्या आई वडिलांचं नाव सांगता येईल. माझं नाव मोहन मधुकर कठाळे, माझ्या बापाचं नाव मधुकर, माझ्या आईचं नाव उषा, सांगता येईल मला या शरीराचं चमडीचं. पण मला विचारलं तुझे आई वडील कोण? कोहम कस्तम कुत आयात को मे जननी को मे तात इति परिभाव य सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम. असा जर प्रश्न विचारला की माझे आई वडील कोण, तर तुलसीदास जसं म्हणतात की श्रद्धा विश्वास रूपिण जगत पितरौ वंदे श्रद्धा विश्वास. जगताचे पितर आई आणि बाप कोण आहे? श्रद्धा आणि विश्वास. मतलबच नाही, आम्हाला आमची आई बाप सिद्ध केलं. आता जी आई बाप नाही, मग नक्कीच हा माझा बाप माझ्या आईचा नवरा आहे का? मग जो माझ्या आईचा नवरा असेल तो माझा बाप आहे का? कदाचित माझा आईचा नवरा निराळा आणि माझा बाप निराळा, ही शंका आम्हाला घ्यायची गरज नाही. जो माझ्या आईचा नवरा आहे तोच माझा बाप आहे, हे आमचं गॅरंटेड आहे. हे त्या देशामध्ये आहे नवरा निराळा आणि बाप निराळा.
योग्य उत्तर.
आता आपण थोडं वेगळ्या वर्णाने पण आपल्या आंदोलनाचा विचार करू, कारण आपला मूळ प्रश्न आहे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला विरोध करणं, त्यासाठी संघटित होणं, त्यावर उपाययोजना शोधून काढणं, याकरता आपण इथे एकत्र आलो आहे. भरपूर आपण विचारांचं आदान प्रदान केलं आहे. आता जर जसे मी प्रश्न कोणाला विचारायचे आहेत ते निमंत्रित केले, आपण अत्यंत सुरस पद्धतीने विचारले, सुरस पद्धतीने त्याचे उत्तर दिले गेले. आता मी दुसरी एक बाजू आपल्या समोर विचारायला ठेवतो की हे जे आंदोलन आहे किंवा आज ही जी आपली समस्या आहे, या समस्येवर आपण काय केलं पाहिजे, म्हणजे ज्याला आपण उपाययोजना म्हणू, अशा जर कोणाला उपाययोजना सांगायच्या असतील तर त्यांचं देखील स्वागत आहे. उपाययोजनांची इथे नोंद घेतली जाईल आणि त्याप्रमाणे पुढे आपण जेव्हा एकत्र येऊ त्याच्या संदर्भामध्ये आपण काय उपाययोजनांचं अंमलबजावणी केलेली आहे याचा सुद्धा आपल्याला सिंहावलोकन करता येईल. म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो की आपल्या डोक्यामध्ये हा जो प्रश्न आहे या प्रश्नांचं या प्रश्नावर काही उपाय सुचवायचे असतील या आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये, तर असे उपाय कोणाला सांगायचे असतील तर त्यांनी इथे येऊन कृपया उपाययोजना सुचवावी.
शंकर पांडे राणापदामध्ये राहतो, रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर आणि सध्या प्रतापनगरातील दुर्गादेवी मंदिराचा मी सचिव आहे. महाराजांनी स्पष्टीकरण दिलं परंतु माझा प्रश्न थोडा वेगळा होता. तो असा होता की अंधश्रद्धा अजूनही आपल्यामध्ये आहे. काही गोष्टी उन्हाळ्यात बली देण्याची प्रथा किंवा धनाच्या लालसेनी दुसरी गोष्ट करायचं किंवा चिडूक काही आपलं भूताक की ते होऊ नये म्हणून जे आपण करतो यामध्ये आता एक थोडं मी कास्तकार असल्यामुळे तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो की मी आम्ही तिथे वांग्याची लागवड करत असतो आणि ती लागवड करत असताना एक पावसाळ्यामध्ये वांग्याची सड होते, म्हणजे त्याला खालवी असे डाग लागतात. तर आमचे गरीब माणसं आम्हाला सांगतात की साहेब कोणीतरी काहीतरी गेलेलं आहे आणि त्याकरता आपल्याला मानसिकाकडून काहीतरी उपाययोजना करावं लागेल. हा एक अंधश्रद्धेचा भाग आहे आणि मोठ्या प्रमाणात आहे. एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला. गेल्या 10 वर्षांमध्ये मी वांग्याचं उत्पादन घेत आहे. 4 महिन्यामध्ये 1 लाख रुपयाची वांगी मी काढलेली आहे आणि त्या ठिकाणी लोकांना मी सांगितलं, समजावून सांगितलं की तुमच्या कल्पना सगळ्या चुकीच्या आहे, ही तुमची अंधश्रद्धा आहे. पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडतो, आपली लागवड करण्याचं तंत्र आपलं असं असतं की 2x2 अंतरावरती 2 फुटाच्या अंतरावरती आपण हे लावतो. पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडतो, झाडाची वाढ झालेली असते, त्याला सूर्यप्रकाश मिळत नाही, हवा मिळत नाही, त्यामुळे घरांना हे येतं. तुम्ही काही करू नका, तुमची लागवडीचं अंतर वाढवा आणि काय होतं ते बघा. हा प्रयोग आमच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी केला आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की आज 2 वर्षापासून त्या लोकांनी 3x3 आम्ही त्याची लागवड केलेली आहे. एकही वांगं कोणाचं सडत नाही आहे. म्हणजे मला हे म्हणायचं होतं की अशा अंधश्रद्धा अजूनही आपल्या समाजामध्ये आहेत, त्या निर्मूलन करण्याकरता तात्विकांनी शास्त्रीय दृष्टीने त्याचा अभ्यास करून पटवून देणं हे देखील आपलं तितकंच काम आहे. अशा अनेक प्रकारचे असे जास्त सांगणार नाही. आता उपाययोजनेच्या दृष्टीने जे मी जे बोलतो आहे ते असं म्हणताय, हे अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि हा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे आपल्या हिंदू संस्कृतीला, हिंदू धर्माला एक प्रकारचा चॅलेंज आहे, एक प्रकारचं एक आव्हान या विधेयकाच्या दृष्टीने होणार आहे. कारण की आम्ही मंदिरात जातो, मनशांती करता जातो, आमच्या मनाला समाधान मिळतं, आमच्या जीवनाला दशा आणि दशा बदलून, आमच्या जीवनाची दशा बदलून त्या ठिकाणी एक विशिष्ट दिशा मिळत असते आम्हाला. आणि हा आमचा एक श्रद्धा आणि विश्वास आहे. महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या विद्या श्रद्धा आम्ही जळतो. मला असं या ठिकाणी सुचवायचं आहे, बोलायचं जरी असते ते वेळ कमी आहे, या ठिकाणी मला असं सुचवायचं आहे की या ठिकाणी अंधश्रद्धेची अशी काही उदाहरणं आपल्या लक्षात येत असतील तर त्याचं निर्मूलन करणं हे देखील आपल्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. आपणच आपल्या लोकांना समजावून सांगितलं पाहिजे की अशा प्रकारचे प्रकार नाहीत. त्याच्यामध्ये तांत्रिक उपाय करण्यापेक्षा तत्व म्हणजे काहीतरी सायंटिफिक दृष्ट्या काहीतरी उपाय करून त्याच्यातून आपण हे करू शकतो. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक मंदिरामधून याबद्दल जागृती निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. समाजामध्ये जागृती निर्माण जोवर तो होणार नाही, तोवर आपण एकत्रित होणार नाही. तिथे किती लोकांना तिथे पाठवायचं, कशा लोकांचे लोक पाठवायचे हे महत्वाचं नसून, कारण की आता डेमोक्रॅटिक सेटअपमध्ये जो पक्ष जो विजयी होईल, जो बहुमताने विजयी होईल तोच तिथे जाणार आहे. आपण आपली अशी इतकी आपल्यामध्ये क्षमता नाही की ताकद नाही की आपण अशा प्रकारचे प्रशिक्षित लोक त्या ठिकाणी पाठवू शकू असं मला वाटत नाही. परंतु प्रत्येक मंदिरामधून, प्रत्येक संस्थेमधून, सामाजिक संस्थांमधून याबद्दल श्रद्धांबद्दल, आपल्या विश्व, आपल्या धर्माबद्दल, आपल्या हिंदू संस्कृतीबद्दल आणि आपल्या अस्मितेबद्दल, हिंदू अस्मितेबद्दल एक प्रकारची लोकांना जागृती करून द्यायला पाहिजे. आज समाज असा विखुरलेला आहे की आज फक्त आम्ही वंद्याचा माझा अनुभव सांगतो, फक्त वृद्ध लोक त्या ठिकाणी येतात. आजचे तरुण पिढीला त्याबद्दल काही कोणाला लेणं देणं नसतं. त्यामुळे तरुण पिढीमध्ये जागृती निर्माण करणं, आपला हिंदू धर्म काय आहे, आपली हिंदू संस्कृती काय आहे, आणि आपण जे वेदापासून वेदाच्या निर्मितीपासून आपण जे काही करत आलेलो आहे हे किती महत्वाचं आहे आणि त्याला कसा सायंटिफिक त्याला बेस आहे, आधार आहे, त्या आधारावरती बघतो. आणि या ठिकाणी जर अशा प्रकारचे त्यांनी अंधश्रद्धा, देवपूजा किंवा अशा प्रकारचे मंदिरातून पूजा किंवा सत्यनारायणची पूजा, धर्म पाठांत म्हणजे वाचन गिचन धर्मग्रंथाचं वाचन हे तर बंद केलं तर समाजामध्ये अराजकता निर्माण होईल. समाज संघटित ठेवण्यामध्ये, समाजामध्ये आज जी काही नैतिक मूल्य आपण ठेवलेली आहे, जपून ठेवलेली आहे, हे केवळ ह्या मंदिरामुळे, हिंदू धर्माच्या उपासनेमुळे झालेली आहे. हा प्रत्येक तरुण पिढीला देखील आपण सांगायला पाहिजे. तरुण पिढीमध्ये या प्रकारचा एक प्रकारची जागृती निर्माण केली पाहिजे आणि ती जागृती निर्माण केली तरच आपल्याला या आपल्या या भूमीला किंवा आपली ही जी आपण आता जी एक प्रकारची मुवमेंट चालू करतो आहे किंवा याला विरोध करते आहे, या वेळेला समोर असं आपल्याला पाठबळ मिळेल असं मला वाटतं. आणि या दृष्टीने मी महाराजांशी मागे बोललो होतो की आम्ही आपल्याला आपण आम्हाला उपाय सुचवा की मंदिरातून आम्ही तरुण पिढीला कसं आकृष्ट करू शकतो, तरुण पिढीला याबद्दल आपल्या धर्माच्या बद्दल संस्कृतीबद्दल कसं आपण त्यांना ज्ञान देऊ शकतो, घेऊ शकतो, एकत्र जाऊ शकतो, याबद्दल उपाययोजना करावी असं मला वाटतं.
पांडेसाहेब आपल्याला धन्यवाद. आपण अत्यंत मौलिक सूचना केलेल्या आहेत त्या इथे सगळ्या नोट करून घेतल्या जाणार आहे आणि त्याच्यावर क्रियान्वयीकरण सुद्धा केलं जाणार आहे. मी पुन्हा सूचना करण्याकरता त्यांना निमंत्रित करतो.
नमस्कार, मेरा नाम श्री तापस कुमार बोल हो रहा है. ये बिल मैंने भी पढ़ा है. जहां तक देश की शासन व्यवस्था की सवाल है और जो कुछ भी अभी तक के हमने राजीव जी से सुने हैं जाने हैं, इस देश की जो लंबी और उतार चढ़ाव वाली जो इतिहास रही है आजादी की संग्राम में, उसमें हमारी आजादी की लड़ाई की एक मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें आर्थिक न्याय चाहिए. ये दोनों हासिल करने के लिए हमने इकट्ठा होकर एक आजादी की लड़ाई लड़े थे. उसके बाद 6,40,000 प्राणों की आहुति देने के बाद इस देश को आजादी तो नहीं मिली, लेकिन ब्रिटिश की चंगुल से स्वतंत्रता मिल गई है. आजादी, हमारी आजादी आज भी कैद है इस देश के संविधान पे. भारत के संविधान इस देश की आजादी का लड़ाई का निष्कर्ष है. जिस संविधान को बनाने में लगभग 3.5 साल लग गए थे, लगभग 389 लोगों ने रात दिन मेहनत करके सभी वर्गों के विचार करके ये संविधान बनाया था और इसी संविधान के तहत देश की शासन व्यवस्था आज भी चल रही है. ये कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस संविधान का शपथ राष्ट्रपति जैसे लेते हैं, वही शपथ वो प्राइम मिनिस्टर को भी दिलाते हैं, वही शपथ ट्रांसफर होते 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 मेयर तक आती है. तो हमारी आजादी का लड़ाई के बाद जो हमें हाथ में मिला ये भारत की संविधान, इसको हम लोगों ने सही तरीके से पहचाने नहीं, जो आज भी हम लोगों से कोसों दूर है. ये जो अंधश्रद्धा बिल जो बन रही है, इस बिल को मैंने जब देखा तो इसमें सबसे पहली जो कमजोरी है कि इसमें स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द ब्लैक मैजिक गैप्स है. तो इससे यह हो रहा है कि ब्लैक मैजिक अगर उसका सही डेफिनेशन अगर आएगा तो फिर यह लड़ाई खत्म हो जाएगी कि ये हिंदुओं की ब्लैक मैजिक की बात हो रही है, मोहम्मदन की ब्लैक मैजिक की बात हो रही है या क्रिश्चियन की ब्लैक मैजिक की बात. तो पहली बात तो ये जो बिल आ रहा है ये बिल अपने आप में ही डिफेक्टिव है और इसको लेके हमारी संविधानिक जो तरीका है उस तरीके के तहत भी लड़ना चाहिए. जैसा आप लोगों का जन जागरण हो रहा है ये तो जरूरी है, अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है, लेकिन साथों साथ संविधानिक तरीका से इसे भी लड़ा जाए. हमारे आर्टिकल 13 के तहत ये दिया हुआ है कि इस देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो जनता की मूलभूत अधिकारों को हनन करें। आर्टिकल 13 के तहत अगर इसको देखा जाए तो ये ब्लैक मैजिक का डेफिनेशन नहीं होना बोलने से आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का वायलेशन अगर होता है तो वो कानून बन नहीं सकता। इस तहत सोचना है, जैसे कि उन्होंने कहा कि क्या उपाय है, तो एक उपाय ये भी है कि हमने इसको संवैधानिक तरीके से लड़ना थ्रू कलेक्टर या थ्रू जिलाधिकारी एक पिटीशन गवर्नर को भेजना है कि ये जो बिल बनने जा रही है ये बिल नहीं बनना चाहिए, कारण इसमें इतने सारे खामियां हैं जो हमारे संविधान के तहत ये कानून बन नहीं सकता। बस इतना ही मुझे सुझाव के तौर पर देना है।
आपण अत्यंत मौलिक उपाय सांगितलेला है जो रामबाण उपाय म्हणून सुद्धा आपण उपयोगात आणू शकतो। अजून कोणाच्या काही सूचना असतील तर स्वागत आहे, पण आपल्याला विनंती आहे की आपण आपली सूचना कमीत कमी शब्दात आणि कमीत कमी वेळात मांडावी।
मुकेश कुमार मालवीय, गायत्री परिवार से ही हूं, और आप बड़ों के बीच में मेरी इतनी अहमियत नहीं कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। अभी आदरणीय भाई साहब राजू साहब ने बोला, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली जो सबसे प्रिय लगी मुझे, कि मेरे गुरु को उन्होंने अभी भी अपने दिमाग पे रखा है। गायत्री परिवार वास्तव में गुरु ने बनाया था एक परिवार। हो सकता है संप्रदाय में यह हमारी मानवीय कमियां हो सकती है, ये चल रहे हैं, 10 प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, 10 प्रकार की संस्था होती है, लेकिन हर व्यक्ति को एक ही सूर्य की किरणें मिल रही है और उसी के आधार पर वह जीवन जी रहा है। और हकीकत यही है, आज हमारा संविधान क्या है, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे। स्वयं को हमको जलना पड़ेगा और हमको सुधरना पड़ेगा तो हम अपने आप दूसरों को बनाते हुए चले जाएंगे। जिंदगी का वास्तविक मतलब यही है और हमको समझना यही है कि हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं या नहीं। अभी आदरणीय बाबू जी ने जो भी कहा उस पर हमारा ध्यान लगातार चलता रहा और उनकी जो क्रांतिकारी बोली हमारे को महसूस हुई, दिल में लगा कि नहीं, हमने कुछ अपने तरफ से हमारी गुरु सत्ता की तरफ से बोलना चाहिए और वही बोलने के लिए मैं यहाँ पे आया। आज जो अनैतिकता फैली उसमें सबसे बड़ी जो आ गई हमारी कुरीतियां, जो मान्यताएं नहीं थी, अंधविश्वास को हम बोल रहे हैं और श्रद्धा को बोल रहे हैं। श्रद्धा किसने बनाई है? श्रद्धा हमने बनाई है। जैसा अभी राजू जी ने बोला, यदि ये पत्थर है, ये पत्थर में हमने श्रद्धा बनाई है कि ये भगवान है, तो ये हमारी श्रद्धा है कि ये भगवान है। और यदि हमारी श्रद्धा उसके प्रति नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, वह एक पत्थर है। तो हमारी श्रद्धा को हमको बताना है। सत्यम शिवम और सुंदरम जब ये है तो फिर हमको किसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सत्य मूल ये है, सत्यम शिवम और सुंदरम, यही हमारा विज्ञान है और यही हमारा धर्म है। और इसके आधार पर यदि हम चले जाएं तो हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को सत्य बता सकते हैं कि हमारा सत्य क्या है, अपने गुरु को बता सकते हैं। हम अपने आप को समझे, अपने को समझे तो अपने आप अपने दूसरे संप्रदाय को हम बना सकते हैं। संप्रदाय और बाकी भाषाएं तो मुझे नहीं समझ में आती, जो भी टूटे फूटे शब्दों के आधार पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ कमी होगी तो वो मेरी मानवीय कमी होगी, मेरे ज्ञान की कमी होगी। बस आज हमारी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज जो हम बढ़ते जा रहे हैं वह फंसते जा रहे हैं कुरीतियों में। आज हमारी बेटियों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, हमारे बहनों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या किसी भाई के बाजू में वो दम नहीं किया वो बहन को बचा सके? कहां गया वो भाई? उसको जगाना है, अपने अंदर के भगवान को जगाना है और यहीं से हमारी श्रद्धा जगती चली जाएगी। आज हिंद बुला रहा है, भारत मां पुकार रही है, जागो मित्रों जागो, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। आज वो रो रही है भारत माता रो रही है, हमारी संस्कृति रो रही है, लेकिन हमारे बेटे बेटियों को कुछ समझ में आ रहा है नहीं। हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने पे लगे हुए हैं। क्यों? अरे भैया, हर अपने हिसाब से अपने अपने काम कर रहे हैं। बस अपनी सीमा को समझो, अपने विचारों को समझो, अपनी श्रद्धा को निखार दो। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने एक मूर्ति को समझ लिया, यह मेरी माँ है और इसको जब तक मैं खाना नहीं खिलाऊंगा तब तक के मैं नहीं खाऊंगा, और वहीं से वो रामकृष्ण परमहंस बन गए, वो भगवान बन गए और बनते हुए गुरु बन गए और एक अपना ये बनाते चले गए। लेकिन उनने क्या समझ के बनाया था और बाद में क्या हो गया, यह तो हम और आप समझ सकते हैं, दूसरा कौन समझ सकता है। वेद मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव ने यह मिशन बनाया था, यह युग निर्माण मिशन गायत्री परिवार बनाया था। परिवार इसलिए बनाया था कि यह परिवार ऐसा बने कि सब लोग आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके, यह विशेषता थी। और यही विशेष के आधार पे हमने यह एक छोटा सा काम यहाँ पे किया। इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, चार लाइन में आपको बता रहा हूँ। और वह हमारे जो मित्र भाई और युवा समझने की कोशिश करे तो समझिए, आज हिंद पुकारता जाग नौ जवान रे, मोरचे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोरचे संभाल तू कमान रे। आज के युवा को, यदि कल की पीढ़ी को यदि सही बनाना है, और आज के जैसे राजू दीक्षित भाई साहब ने कहा कि यदि हमको कोई संविधान को बनाना है और हम यदि हम 5 साल लगाते हैं तो यही आधार से कि हम वो पांच साल में जो लड़के युवा खड़े हो रहे हैं उनको धर्म तंत्र राजतंत्र और सारे शिक्षण दे करके उनको खड़ा कर दें तो वास्तव में हमारा देश फिर से खड़ा हो सकता है। और यह बात से मैं राजू भाई साहब से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो बात बोली बहुत पते की बोली कि वास्तव में राजतंत्र से, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो था, हमारा जो देश है यह राजपुरोहितों के बल पे चलता चला आया है। मेरे छोटे से ज्ञान से मैं बता रहा हूं, ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ जितना जानता हूं तो पहले पुरोहित था और पुरोहित के आधार से जो ज्ञान दिया जाता था उसी के आधार से देश की सीमा रखी जाती थी और राज्य चलता था। लेकिन आज वो पुरोहित कहाँ मर गया बेचारा, उस पुरोहित को जगाना है तो वह हमारे जो बड़े वरिष्ठ हैं ये लोग कर सकते हैं। हमको वो दिशा दे सकते हैं, वो मार्ग दे सकते हैं जिसके आधार पे हम कुछ कर सके। आइए वही और आगे की लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। दुर्दशा ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, दुर्दशा ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट तंत्र आज राष्ट्र संपदा लुटा रहा। आज का तंत्र जो है वो भ्रष्ट है और वह संपदा लूटती चली जा रही है। मुंह सिला है न्याय का, मौन है विधान रे। आज न्याय जो था उसका मुंह सिल गया है और मौन हो गया है विधान। यदि ये जाग जाए तो क्या देखना पड़ता है, हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। बस हमको जगना है, अपनी श्रद्धा को जगाना है, हमारे विश्वास को जगाना है। और उसके आगे दो लाइन, राष्ट्र और संस्कृति पर प्रहार हो रहा। हमारे राष्ट्र पर प्रहार हो रहा है क्या, हमारी संस्कृति पर भी प्रहार हो रहा है, हमारी भारत माता के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारी गौ माता, जैसे कि अभी आदरणीय बाबूजी ने कहा था कि हमारी माँ को हम भूल गए, हमारी गौ माता को हम भूल गए, हमारी जो माता थी उस गौ माता को भूल गए। और हम क्या विदेश से आए हुए प्रजातियों को ला करके उनके दूध को धो करके हम पी रहे हैं तो कहां से हमारी बुद्धि ठीक होगी भैया। यदि बुद्धि को जगाना है तो हमारे हमारे वेदों की हमारी वास्तविकता को समझ करके हमारे को फिर से जगाना पड़ेगा। राष्ट्र और संस्कृति पर प्रहार हो रहा, बढ़ रही अनीतियां, अंधकार हो रहा, अंधकार हो रहा, दे चुनौतियां इन्हें वीर वक्ष कान रे। इनको चुनौती देना है तो भैया किसी को न किसी को तो अपने वक्ष को तानना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा मोर्चे लेने के लिए। और यही आदरणीय भाई साहब का, दीक्षित भाई साहब जी का, जैसा भी मेरे से टूटे फूटे शब्दों में हो सका है, मेरे से बोलना हुआ मैंने बोला है। और इसमें कुछ अच्छी चीजें होगी तो वह मेरे गुरु की होगी और जो भी उसमें होगी वो कमी वो मेरी मानवीय कमी होगी। और हमको यही चीज को जानना है, श्रद्धा और विश्वास हमारी निष्ठा को हमको जगाना है। जहां हमने उसको जगा दिया तो मानते चले जाइए हम नया भारत, नई संस्कृति, नया संविधान और नया राष्ट्र खड़ा कर देंगे और हमारा देश फिर से वही ऊपर की सीमा पे आकर खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।
जेवणाची व्यवस्था आहे, आपल्याला सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की कोणीही भोजन केल्याशिवाय घरी जाऊ नये। आता आपली जी शंका समाधान किंवा उपाययोजनाचं जे सत्र आहे त्याच्या अंतिम चरणामध्ये आपण आलोय। सर्वात शेवटची उपाययोजना सांगितल्यानंतर हे सत्र या ठिकाणी संपेल। त्यासाठी मी निमंत्रित करतो श्री तांदूळकर यांना।
ग्रासरूटचा कार्यकर्ता आहे, न्यूमरोलॉजीचा अभ्यास करतो आणि पत्रकारिता देखील करत असतो। एक दोन तीन फक्त सूचना द्याव्यास वाटतात। श्रद्धा अंधश्रद्धा विश्वास अंधविश्वास या सगळ्या पाठीमागचं समाजाला लॉजिक पटवून देण्याची आज गरज आहे आणि आपल्याला डोअर टू डोअर जाऊन जाणीव जागृती निर्माण करावी लागेल। कारण की असं आपण कितीही अभ्यास वर्ग आणि कितीही भाषणे ठोकले तरीही सामान्य माणसाला कळेना असं आहे। कारण सामान्य माणूस हा अंधश्रद्धेच्या पाठीमागा लागला असं आपण म्हणतो, पण तुम्ही खेड्यापाड्यात जा तर खूप सारे लोक श्रद्धेला अंधश्रद्धा आणि अंधश्रद्धेला श्रद्धा मानतात। तर त्यातला गैरसमज आणि समज दूर करायला पाहिजे। गैरसमज झाला तर तो आपण दूर करू शकतो कारण तो गैर आहे म्हणून। एकदा समज झाला की तो दूर करणं कठीण असतं, म्हणून आज ही वेळ येऊन ठेपली आहे की त्यांचे गैरसमज दूर करण्याची। म्हणून श्रद्धेने जे काही होतं ते करावं, नामस्मरण करायला काही हरकत नाही, कर्तव्य देखील केलं पाहिजे। 99% ही परिश्रम आणि 1% नशीब, पण लोक आज उलट करतात आहे। 99% नशीबावर आणि 1% परिश्रमावर अवलंबून आहेत। तर ही देखील या देखील मानसिकतेमधनं त्यांना काढण्याची गरज आज आहे आणि जाणीव जागृती निर्माण व्हावी या दृष्टीने आपण काही जर प्रयत्न ग्रासरूटवर करू शकलो असतो तर निश्चित करावं। धन्यवाद।
नाही आता 5 मिनिटांनी काम करतो, 1:30
जे करते
नाही जाऊ द्या, 5 मिनिट तयार ठेवा माणूस। आपल्याला एक विनंती अशी आहे की आपण जे इथे विचार मंथन केलं आहे या विचार मंथनाची सगळी माहिती आपण कलेक्टरला कमिशनरला आणि आपलं काय निवेदन आहे ते देणार आहे। आणि आपला जो मूळ विषय आहे त्याचा ठराव करून आपण त्यांना पाठवू। त्यासाठी आपल्याला विनंती अशी आहे की जाण्यापूर्वी प्रत्येकाने रजिस्टरवर सही करून जायचं आहे। आपलं नाव पत्ता जे लिहिलेलं असेल ते असेलच, पण एका वेगळ्या रजिस्टरच्या पानावर आपण सह्या करून द्या। आपले हे जे विचार मंथन आहे ते लिहून वर निवेदन म्हणून आम्ही त्यांना आपल्यातर्फे सगळ्यांच्यातर्फे सादर करून देऊ। आता या ठिकाणी आजपर्यंत मलाही माहिती नव्हतं की खरं राष्ट्रगीत कोणतं आहे, जनगणमन आहे की पसायदान आहे की आपलं राष्ट्रगीत हे वंदे मातरम आहे, हे माहिती नव्हतं। आज मला पहिल्यांदा कळलं की हे आपलं राष्ट्रगीत आहे, म्हणून मी या कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्याकरता महाराजांना निवेदन करतो। राष्ट्रगीत होत असताना आपण सगळ्यांनी कृपया उभं राहावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो। राष्ट्रगीत झाल्यानंतर भोजन होईल आणि जाताना सगळेजण सही करून जातील अशी विनंती करतो। आणि भोजनाच्या नंतर आपला कार्यक्रम संपला असं आपण गृहीत धरतो। धन्यवाद।
गणानां त्वा गणपतिग्हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमः, त्वमजासि गर्भधमः। ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् केहनाकं महिमानः स चन्द्रगत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरवो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठियं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताया ईस्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तादा परार्धात् प्रथव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको भीगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यान्वसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वतच्चक्षुरतमुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वसस्वाद सम्बाहुभ्याम् दमति सम्पदत्रैर्ज्या वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ पूर्णब्रह्मणे विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नः सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शान्ति वन्दे वन्दे वन्दे
आपला सगळ्यांचा आभारी आहे पुढेही असंच काही आपल्याला सहकार्य लागलं तर आम्ही मागू आणि आपण सहकार्य द्याल अशी अपेक्षा आहे धन्यवाद.